أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور دن ہمیں دیا اپنے خوبصورت کلام سننے کے لیے، اور سب بھی پیاری پیاری نیا کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس کلام سے وہ ہدایت دینا جس سے تو راضی ہو جائے، ہے نا، اور ہمارے عمل میں آ جائے. سب نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دینا، ہماری موت کا بھی ساتھی بنا دینا، اور ہماری قبر کا بھی ساتھی بنا دینا. کیونکہ اس نیا کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے وہ موتی چننے کی توفیق دے گا جس کا ہم نے کبھی خیال تصور بھی نہیں کیا. کیونکہ یہ تو گہرا سمندر ہے نا، ہر روز لگتا ہے کہ نیچے سے نئے اور خوبصورت قیمتی موتی نکل رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اچھا کیا حال سب کا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. پارہ نمبر 12 بھی اپنے اختتام کمپلیٹ ہو گیا، اور لگتا ہے جلدی سے ختم ہو جائے گا. مجھے تو اب ایسا لگنے لگا اتنی جلدی، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا تھا اور ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ چلیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پچھلا، تاکہ ہمارا کنیکٹ ہو جائے اگلی سورت، سورت یوسف. تو انشاءاللہ اساتذہ پوری کی پوری جب کرائیں گی تو وہ اس میں سارا آپ کو ایک کنیکشن مل جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود کو نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، آمین الہی آمین. اللہ ما فقہنی فی الدین. اچھا یہ سورت جو سورۃ ہود ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی مشہور بات اور بڑی خوبصورت بات جو سازہ بار بار بتا رہی تھی کہ اس سورت کو اللہ کے نبی پڑھ کے کیا کہتے تھے، کہ سورت ہود اور اس جیسی. جی بوڑھا کر دیا ہے. شیبتنی خودم و اخواتوہا، یہ اتنی، یعنی کہ اس کے معاملات اتنے غور طلب ہیں، اس طرح دھیان سے اس کو دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ. اور سب سے پہلے دیکھیں اس قرآن جو ہم نے پارہ کا آغاز کیا، بارہ کا، اس میں ہم سب کی غلط فہمی کو بڑی اچھی طرح بڑی خوبصورتی سے بتا دیا گیا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو، کس چیز کی ذمہ داری تمہاری تھی وہ میری تھی، وہ تم لوگوں نے کیوں لے لی، اور جو تمہاری ہے وہ تم لوگوں نے کیوں چھوڑ دی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری کتنی خوبصورتی سے اللہ نے بتا دیا کہ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بندے کی نہیں ہے، رب کی ہے. اور بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا ليعبدون، جی اطاعت عبادت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اس کے پیغام کو جانیں، اس کے پیغام کو مانیں، اس پر عمل کریں اور اس کو نافذ کریں، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کو پورے کرنے کا ذمہ خود لے لیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ترتیب ہی بدل دی، ہم نے ترتیب ہی بدل دی، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا، ہم نے اس میں سورۃ ہود کی 9 اور 11 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا اِنْ اَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں یا محروم کرتے ہیں وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس میں کیا ایک انسانی نفسیات بتائی گئی نا، کیا چیز جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے، کہ انسان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو کیا کرتا ہے، یا محرومی ہو جائے تو صبر نہیں کرتا، مایوس ہو جاتا ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عطاعت بخشش کرتے ہیں اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمارا شکر کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور ناشکری کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کی بارش اسے غرور، انہا لفرح فخور، غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. अच्छा एक और आयत हम देखें, हूद आयत नंबर 31 में जब हजरत नूह अपनी कौम को कहते हैं वला अकूलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह वला अलमुल गैबा वला अकूलु इन्नी मलकुम वला अकूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन यूतियहुमुल्लाहु खैरा, यानी मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं ये कहता हूँ कि गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। और इस आयत को जब आप देखते हैं तो इस आयत में आप देखें कि नूह ने क्या पैगाम दिया, तीन बातों का पता चलता है जो पैगाम दिया। वो तीन बातें कौन सी हैं, वो तीन बातें कौन सी हैं? नंबर एक, जल्दी से तीन बातें कौन सी थी? उसने कहा मुझे गैब का इल्म नहीं, मुझे कहा मैं फरिश्ता नहीं, और जिन लोगों को तुमने बज़ाहिर देखते हो खैर नहीं पहुंचेगी, मैं नहीं जानता कि उनके जीव में क्या, उनके नफ्सों में, राइट। इससे तीन बातें पता चलती। नंबर एक, अल्लाह ताला ने जितना इल्म देता है उतना ही देता है नबियों को भी। इल्म जिस किसी को भी दिया गया वो अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है, महदूद है, लिमिटेड है, किसी के पास फॉर एवर यानी कि अनलिमिटेड इल्म नहीं है, गैब का इल्म नहीं है। एक बात। दूसरी बात का क्या पता चलता है? पहले तो बताया कि जो दिया हुआ है, जो भी इसमें तीन एक रूल एक्चुअली निकलता है, उसको अगर अंडरस्टैंड कर लें तो कभी इंसान शिर्क नहीं कर सकता। अब रूल को मैं सिर्फ रूल आपके साथ कंसल्ट कर लेती हूँ ना, ये रूल क्या है। नंबर एक कि जितनी भी मखलूक के पास सफात हैं, अब इल्मी इसमें आ गया और नेम्ड एवरीथिंग, जितनी भी सफात हैं वो उसको मांगी हुई हैं, अताई हैं, उसकी जाती नहीं, ठीक है ना, जाती नहीं, उसको मिली हुई है। नंबर दो, दूसरी वो महदूद हैं, तीसरी वो फानी हैं। ये तीन चीजें आती हैं। अगर ये तीन चीजें इंसान के जहन में रखे तो शिर्क कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इन्हीं बातों में से कहीं ना कहीं शिर्क की मार खाते हैं। अच्छा, फिर सूरत हूद में चंद अंबिया का जिक्र किया गया, राइट, उससे क्या बताना मकसूद था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंबिया के वाकयात बताकर क्या बताया एक्चुअली? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या, रिपीट करूं जो पिछले मैंने रूल बताया, रूल की बात कर रही है जी। रूल ये है कि मखलूक के पास जितनी भी सफात हैं, नंबर एक कि वो मांगी हुई हैं, अताई हैं, नंबर एक मांगी हुई हैं, अताई हैं, अताफ है ना, अताफ है, इसकी जाती नहीं, ये एक बात हुई। दूसरी बात कि वो महदूद हैं, लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं। तीसरी बात, वो फानी हैं, कदीम नहीं, फानी हैं, कदीम नहीं। ये तीन बातें अगर इंसान के जेहन में हो और इसको अच्छी रूल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले वो कभी शिर्क नहीं कर सकता, ठीक। अगला था मैंने एक क्वेश्चन ये था कि चंद वाक्यात जो बताए गए हमें सूरत हूद में चंद अंबिया के, उससे उसे क्या बताना मकसूद था हमें? क्या बताना मकसूद था कि अंबिया पर कैसी कैसी मुश्किलात आईं, तो उन्होंने किस तरह सबर किया और उन्होंने किस तरह इन तकालीफ को बर्दाश्त किया, और फिर दूसरा अजाब की वजह भी बता दी कि कौमों पर अजाब ऐसे नहीं आ जाता जी, उनकी नाफरमानियों की वजह से आता है। अच्छा, हज़रत नूह का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्य जो इतना खूबसूरत बल्कि दिल को सींच जाता है, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब उनके कहने पर अजाब आता है तो अपने बेटे को डूबता देखते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? रब्बी इन्नबनी मिन अखली, या अल्लाह ये तो मेरा ही बेटा है, या अल्लाह ये तो मेरा बेटा डूब रहा है और तू तो कहता है ये मेरे बच्चों मेरे घर वालों को बचा लेगा, अपने वादे को सच्चा कर। अल्लाह सुब्हान तआला का क्या जवाब था? अल्लाह का जवाब क्या था? या काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तो तेरे घर वालों से नहीं है। इस अहम नुक्ते से क्या बात समझ आती है? एक नुक्ता सामने आता है ना, बड़ी अहम बात आती है दो बातों से जी, लेकिन इस सवाल और जवाब में क्या बात सामने आई, हमारे लिए क्या बात सामने आती है, नुक्ता कौन सा सामने आता है, सोचने की बात कौन सी है कि दीन विरसे की चीज नहीं है, इट्स नॉट विरासत, दीन विरासत नहीं है, विरसे की चीज नहीं है कि रसूल के घर में पैदा हो गए तो सारे माल जैसे भी करेंगे बस खत्म, नो। और यही हाल है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो कोई इस्लाम को जानने की जरूरत नहीं, हम मुसलमान हैं, बल्कि ये एक शौरी अमल है, इसको दिल और दिमाग से और दिल की गहराई से कबूल करना है, राइट। अगर एक रसूल अपने बेटे को नहीं बचा सका तो फिर हम और तुम क्या हैं, हम किसकी भरोसे पे गलत अमल कर रहे हैं, किसके भरोसे पे हम अल्लाह की तरफ नहीं आते, किसके भरोसे पे हम दीन को नहीं समझते और अमल के लिए छोड़ा हुआ है। हमारे लिए बहुत समझने की बात है ये। अच्छा मुझे बताएं, हजरत आद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम किसको उनकी तरफ भेजे गए थे, हजरत हूद आद की तरफ, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ भेजे गए थे, समूद की तरफ, और दोनों कौमों ने नाफरमानी की है ना, और जाबेलाई का शिकार हुई। अच्छा तीसरा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इनकी भी तो बीवी को नाफरमानी की वजह से पीछे छोड़ गया ना, इनकी तबाही अल्लाह ने कितनी एक्सप्लेन की कुरान मजीद में, और इसकी वजह क्या थी, इसकी कौम की जो बड़ी बहुत बड़ी खराबी थी वो क्या थी, होमोसेक्सुअलिटी। सोचिए, इसलिए मैं एक सोचने की बात बता रही हूँ कि अल्लाह को इस एक अमल पर कितना सख्त गुस्सा आया कि उनकी वादियों को, उनकी जो शहर बस्तियां थी वो ना सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उठाया अपने टिप पर, पर की टिप पर ऊपर आसमान पे जाकर दे मारा, इतना काफी नहीं था कि वो तो इतनी ऊपर से जमीन के अंदर पता नहीं कितने 100 मीटर अंदर चली गई, धंस गई, और उनकी किसी भी और चीज की जरूरत नहीं थी, है ना। लगता है ना इस पर और गुस्सा क्या था, फिर उन पर पत्थरों की बारिश, आग की बारिश, फिर पत्थरों के ऊपर नाम भी लिखे हुए थे, तो इसमें गुस्से की शिद्दत का अंदाजा होता है, मुझे बहुत सख्त अंदाजा हो रहा था इस कदर शिद्दत अल्लाह सुब्हानहु तआला को इस अमल पे इस कदर गुस्सा है। और इसके अलावा हमने देखा हज़रत शुएब की कौम को, हज़रत शुएब की कौम में किस चीज की कमी थी, उनको सजा किस लिए मिली थी, उसको किस लिए सजा मिली थी, नाप तोल में कमी। अच्छा देखिए, पहले अताद की कमी, फिर नाप तोल की कमी, फिर इसमें आपने देखा कि हज़रत लूत की कौम की होमोसेक्सुअलिटी। आज अल्लाह सुब्हानहु तआला ये सारी चीजें हम अपनी कौम अपने लोगों में नहीं देखते, सारी की सारी चीजें गैर कौमों को छोड़े, क्योंकि इस होमोसेक्सुअलिटी को तो हम बैक कौम में भी देखते हैं कि लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब सो शॉक्ड, जैसे भी साजा ने वो बताया भी था कि रिसाला भी देखा, रिसाले के अलावा भी वो जो बुक है, बुक के अलावा भी आप देखिए वह डे मनाया गया था ना, गे डे भी और समथिंग और दिस वाली बातें, मुझे इतना मेरा दिल मेरा कांप रही थी, मैं सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहु तआला को एक एक कौम को अल्लाह ने इस कदर बुरे तरीके से तबाह किया, गुस्सा था एक एक अमल पर। हमने सारे अमल मौजूद है, हमने सारे अमल मौजूद है, सोचिए हमारा क्या बनेगा, हम किस भरोसे में बैठे हुए, हम अपने अमाल को क्यों नहीं चेंज करते, हमें खौफ नहीं आता रब का, उसकी रीजन क्या है कि हमें खौफ नहीं आता, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि लाई में पढ़ो ही ना, कुरान ही ना पढ़ो, क्या कुरान ना पढ़ने से, ना पिछली कौम के हालात जानने से क्या हमारे छुटकारा हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, चलिए यही पे सोचने का पॉइंट है, या हम सब सोचेंगे कि क्या हमारा छुटकारा हो जाएगा, अल्लाह सुब्हानहु तआला हम पे कितना नाराज होंगे, है ना। तो इसी पे देखते हैं, जब सागर जी रेडी है तो मैं माइक छोड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आमीन। यही चीज मैं ऑनलाइन साथियों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो घर में बैठे होते हैं या जो खुद बैठ के सुनते हैं, तो उनको भी अपना माहौल खुद बनाना है। ठीक है, आप लोग आज एक चीज पे कोशिश कीजिए कि बिल्कुल बीच में बैठे, कोई चेयर कोई जगह खाली ना हो। और जिन लोगों की इस रूम में ड्यूटी थी, मुझे तो नहीं दिखा कि वो किसी दिन भी लोगों की सिटिंग बुक करवाते हैं, तो आप आज एक नया एक्सपीरियंस करके देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, ये जो मिडल पार्शन है, दोनों साइड्स को अगर छोड़ना है खाली छोड़ के, लेकिन मिडल वाले पोर्शन में रहें। और आप में से जो भी नेक्स्ट आए क्लास में, वो हमेशा यही देखे कि मेरी जगह कहाँ है, मैं वहां बैठूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब आपका लेवल ठीक होगा ना, रेंज में बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट व्यू दिखेगा स्क्रीन का भी, और आप गर्दन भी नहीं थकेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी तो ये बड़ी शायद अच्छी आदत है या खराब है, लेकिन जब तक सारी सिटिंग सीधी ना हो, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मुंह से सीधी बात ही नहीं निकलेगी। ठीक है, जजाकअल्लाह खैर। आप लोग अपनी सहूलत से बैठते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी ये थोड़ी सी बेतरतीब, जो थोड़ी सी आपको मुश्किल आती है, ये बहुत बड़े फायदे का सबब बनती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, खुद को यकीन दिलाते हुए कि हम अल्लाह की किताब में से हिदायत लेने आए हैं, और हिदायत लेने के लिए दिल के बर्तन को झुका होना चाहिए। कभी भी आप टैप में से पानी नहीं ले सकते अगर आपका हाथ नीचे ना हो, झुक के ही पीना पड़ता है। तो इल्म लेने के लिए भी हमें अपने अंदर भी और बाहर भी झुकाव लाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तुम्मिम बिल खैर। हम पिछले पारे का थोड़ा सा हिस्सा कवर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा था, हम थोड़ा सा इसके ऊपर चंद बातों का रिफ्लेक्शन लेकर कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन, जवानी और आगे जाकर हम उनके बुढ़ापे को भी देखेंगे, हमारे सामने रख दिया। ये सोच अब मुझे आपको लेनी है कि हम इसको किस तरह से लेंगे। अभी तक जितनी कहानी पढ़ी है उसमें से मॉरल्स ले लेते हैं, क्योंकि बेहतरीन तरीका कहानी पढ़ने का क्या होता है कि उसमें से मॉरल्स लिए जाएं। तो पहली बात देखिए कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ, बेतकल्फी के साथ ख्वाब को शेयर किया, तो माँ बाप और बच्चों का रिलेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए। दूसरी बात यह कि बाप जो थे वो बच्चे को दूसरे भाइयों के पेश आए खतरे से आगाह करते हुए साथ ही साथ शैतान को लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये गीबत थी? गीबत नहीं थी, बल्कि वो बता रहे थे कि अगर तुम थोड़े से अपनी नेमत को ज्यादा वाजह जाहिर करने वाले बन जाओगे तो शैतान को वार करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें मेरे आपके लिए अमल की बात ये है कि कभी भी नेमतों का बहुत डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। इसी तरह नजर भी लगती है और इसी तरह हासिद भी होते हैं और दुश्मन सामने आने लगते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि वो रोते हुए बाप के पास आए थे लेकिन झूठे थे। इससे एक बात मुझे आपको जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि हर रोने वाला मजलूम नहीं होता। बाज दफा हम घर जाते हैं और बच्चों में से छोटा ही रो रहा है तो आप बड़े बच्चे को बगैर कुछ सोचे समझे चपत लगा देते हैं। तो बाज लोग इस किस्म की हरकतें करके खुद को मजलूम साबित कर देते हैं। इसी तरह आपकी दोस्त रो रही है, अपने शौहर या अपनी सास का शिकवा कर रही है, तो आप उसको ही सच्चा ना कहें। हमेशा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हक का साथ लेने देने वाला बना, ना कि मैं दूसरों का झूठ सच की वजह से उनकी बात पे आ जाऊं। फिर आप देखिए कि इनके भाइयों की इमेच्योरिटी भी दिख रही है कि जो बात बाप ने कही थी वही करके दिखा दी। अगर चले भेड़िए की बजाय शेर कह देते कुछ बात तो बनती, लेकिन असल में ये एक जुबान का झोल भी होता है। इसमें मेरे आपके अमल की बात यह कि कभी बच्चों को प्ली नहीं देनी चाहिए। मसलन आप देखिए कि आपका बच्चा घर आया, आपने आते उसका देखा रंग लाल है, आप कहते सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, बस बच्चा इसी पे कहेगा आज सपारे की छुट्टी, आज मैंने खेलने जाना है, ये वो, क्योंकि अम्मा ने तो पहले ही कह दिया। कम बोलने वाले हमेशा बच जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। बस दफा एक बंदा भी सोच रहा होता है कि आपको जरा किस नजर से देखे और आप झट से अपना उजर पेश कर देते हैं, तो ये चीज इंसान के लिए दुरुस्त नहीं है। फिर एक और चीज इससे पता चलती है कि जो नेमत होती है ना उसी में आजमाइश आती है। हम बस वो कहते हैं हम बहुत खूबसूरत हों तो क्या होगा, फिर हुसन की नुमाइश होगी, दिल में जज्बे उभरेंगे, फिर दूसरों को दिखाएंगे, हो सकता है कितने फितने हो। حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، پورے قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. ہاں حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں سے ایک بڑا حصہ دیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہی حسن ان کے لیے آزمائش بنتا ہوا دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم مجھے نعمت دے نا، اس کو میرے حق میں نعمت بنانا، اس کو آزمائش نہ بنانا. پھر تھوڑا سا اب ہم اس قصے کو جس پہ ہم چلے پہنچے میں اس عورت کے اس تعلق کی بات کرتے ہیں. کسی سوسائٹی میں جب عورتیں اتنی دل پھینک ہو جائیں کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود گھر کے غلاموں پر بھی نظر ڈالنے لگے، تو یہ کسی سوسائٹی کے بگاڑ کا اظہار ہوتی ہے. الحمدللہ آپ دیکھیے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ لوگ آج کے دور میں اس طرح کی چیزوں کو کلچر بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ سورہ یوسف کو اتنی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. تو گویا کہ یہ کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے کہ ایک عورت اس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرے. پھر آپ دیکھیے کہ عورت کی جرات دیکھیے، دروازے بند کیے، یوسف کو مجبور کیا، یہ سب ایک دم نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیے ایک عورت پہلے اٹیمپٹ کرتی ہے، زومانی جملے بولتی ہے، پھر آپس میں محبت کے نام پر کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی عورتیں جو دل پھینک قسم کی ہوں وہ کبھی بھی کسی کی مخلص نہیں ہوتی. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک عام عورت اپنے شوہر کے سامنے اگر اس حالت میں پکڑی جائے تو اس کی میرا حال ہے اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، لیکن وہ اتنی ہوشیار تھی کہ اس نے بات بنا لی، بات بدل دی. تو یہ ایک خاص طور پہ ایک خاص کلچر کو واضح کرتی ہے کہ ان لیڈز میں جب دولت مال کثرت سے ہونے لگ جائے تو لوگ اس وقت پھر ایسے معاملات کو بعض دفعہ ریلیکس فیل کراتے ہیں کہ اٹس اوکے، یہ تو ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ ایک عورت کے معاملے پر کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں پایا. پھر اب عورتوں کے سامنے اس عورت نے پیش کیا. اس سے تھوڑا سا مجھے آپ کو بہت زیادہ سوچنے کا نقطہ مل رہا ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں بنی ٹھنی عورتیں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی بڑے بڑے اشتہاروں کی طور پہ ہوں یا ظاہری طور پہ یا بڑی بڑی سکرینوں پہ ہوں، تو ایسی جگہ مردوں کے لیے اپنی عزتوں کو بچانا بہت محال ہو جاتا ہے. آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آج کے دور میں، کسی بھی سوسائٹی میں لیں، اس سے کوئی ملک مراد نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہ کی جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی تھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دل پھینک عورت ہمارے بچوں کو بھی خراب کر سکے. آپ کہتے کیا کریں، ان کو کہاں لے جائیں، مکہ لے جائیں، مدینہ لے جائیں، کہیں بھی نہ لے جائیں، بس برہان دکھا دیں. تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، محبت ہوگی تو مان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک اور صحابی تھے مرثد بن مرثد، اور وہ مکہ کی طرف آئے تاکہ رات کے اندھیرے میں وہاں چھپے جو بچے ہوئے قیدی تھے ان کو آزاد کروائے. تو اتنے میں ان کو اناق نام کی ایک عورت نے دیکھ لیا، پہچان کے کہنے لگی آؤ ہمارے ساتھ آج کی رات بسر کرو، یعنی دعوت زنا دی. تو یہ حالانکہ اس کو جانتے تھے، دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی، ان کی وائف کہہ لیجئے کہ لیونگ ٹوگیدر ہوگا یا کیا ہوگا، صرف سمجھانے کی بات کر رہی ہوں کہ کفر میں کیا ہوتا ہے لیکن اسلام کے آتے ہی کیا چینج آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اناق، میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، تو یہاں سے چلی جا کیونکہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. اس بات کو سن کر وہ عورت چیخنے لگی، بستی کے لوگوں کو اٹھا دیا، دیکھو دیکھو یہ تمہارے قیدی چھڑا کے لے کے جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ روکے گی، ایمان اور تقویٰ. اللہ از واچنگ می. اگر آپ دیکھیے کیسی خوبصورت خوشبوؤں میں بسی ہوئی اپنے آپ کو سجائی سنواری عورتیں جب باہر فتنے پیدا کریں گی تو گھر بھی ٹوٹیں گے. اس سے بھی ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ جب ایک عورت کی نظریں باہر کے مردوں پہ لگ جائیں گی تو اس کو اپنا مرد کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. حدیث میں آتا ہے ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، جو مائلات ہوں گی، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، یعنی سروں پہ بڑے بڑے ہمپس بنائے ہوں گے. تو ایسی عورتوں کے آنے کی بات اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی کر دی تھی. اسلام جو پردے اور لباس اور حجاب کی بات کرتا ہے اور مکس گیدرنگز کو روکتا ہے اور سیگریگیشن کی دعوت دیتا ہے، اس میں یہ سب فتنوں کا تدارک ہے. آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کشش ہوتی ہے، جیسے پوزیٹیو اور نیگیٹو ہے نا، اینڈ نارتھ اینڈ ساؤتھ، آپ دونوں میگنیٹ ساتھ رکھیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف آئیں گے. پوزیٹیو پوزیٹیو سے ریپیل ہوتا ہے فطرتن. آج دیکھیے پرورٹیڈ سوسائٹیز ہیں کہ پوزیٹیو پوزیٹیو گیزم اور ہوموسیکشولیٹی کی सूरत में एक दूसरे को माइल करते हुए दिखते हैं। इसी तरह औरतों मर्दों को साथ बिठा के लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस्लाम इन फितनों को रोकना चाहता है। आप इस्लाम के मिजाज को अगर समझ गए तो इंशाल्लाह आपको इस सूरत में एक निज़ाम दिख रहा है कि मर्दों को औरतों से अलग रखना, लड़कों को लड़कियों से अलग रखना, ये ही इन फितनों से बचने का हल है। बचपन से बारने आगे कह लीजिए या डे केयर से एक बच्चा बच्ची साथ बैठते हैं, लड़का लड़की साथ बैठते हैं, आज आप देखिए जितनी भी मोहब्बतें होती हैं अमूमन किस से होती हैं, साथ पढ़ने वाले से, साथ काम कर रहे थे तो क्यों हुई, क्योंकि अगर पानी साथ हुआ धुआं तो निकलेगा। तो आप मैं अपने घर से शुरू करके अपनी आवाज को बुलंद करके जिन सोसाइटीज में हम रहते हैं वहां ये आवाजें उठाएं कि बच्चों के अलग स्कूल कीजिए, लड़कियों को अलग बिठाइए, लड़कों को अलग बिठाइए। आज अमेरिका में ये आवाज शुरू हो गई है, आपको पता है, वो इस्लाम के लिए नहीं कर रहे, अपने स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अब उन स्कूलों में लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब पूरी तवज्जो एक दूसरे के साथ होती है और ये पढ़ने में फोकस नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपके मेरे लिए इस खुशी का भी जरिया है कि अल्लाह ने हमें इतना प्यारा दीन दिया जो हम सबसे बेहतर है। अब आप ये औरतों के जो लक्षण थे जो आपने देखा कि उस औरत ने कितने खूबसूरत तरीके से उसको सजाया, आज भी कहीं किटी पार्टीज के नाम पे किसी जगह एक दूसरे के साथ छेड़खानी के नाम पे औरतों मर्दों को साथ बिठा दिया जाता है। और अफसोस की बात है कि बाज दफा पूरे रमजान के महीने में इबादत करने के बाद ईद की पार्टियों का माहौल कुछ इस किस्म का होता है कि जिसमें एक इंसान अपनी सारी इबादत को जाया होता हुआ महसूस होता है। तो इस सोच के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से कैद को कबूल कर लिया लेकिन इस आजादी को कबूल नहीं किया। आज कुछ लोगों के जहनों में वेस्ट में आने का एक बहुत शौक इस वजह से भी होता है कि वहां आजादी बहुत है, ना माँ पास है, ना बाप है, ना बीवी, ना शौहर, और हम इस तरह की मस्तियां करते रहेंगे। लेकिन जरा आइए यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देखें और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे मर्दों के, हमारे बेटों के दिल, दिमाग, भाइयों के दिल इस तरह के कर दे कि वाकई उनको भी ये चीजें बुरी लगने लगे। आयत नंबर 32 से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आपका रब जुड़ जाए। قالت فذلك الذي لمتنني فيه। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की। यहाँ से अमल की बात भी नोट कीजिए कि जब कभी आप पे अल्लाह ना करे कोई इल्जाम लग जाए जिसमें आप सच पे हों, हक पे हों, तो फिर आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से जरूर वाज़े करना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि अब मैं बोली तो मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं किया, बल्कि यूसुफ बोले, क्या कहने लगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, एक मिनट जी, आयत 32, قالت, सॉरी यूस जी, वो औरत और उनका किस्सा, قالت فذلك الذي لمتنني فيه, ये जो जुमले बोले इसको निकाल दीजिए। ये जुमला किसका है? अब उस औरत की जरा होशियारी को देखिएगा, कितनी तेजी से बोली। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। यानी तुम तो इतनी सारी थी और एक झलक देखी और अपनी उंगलियां काट ली, जरा सोचो मैं तो अकेली इसके साथ रहती हूँ, मेरे दिल का क्या हाल होगा। कितनी वल्गर टॉक है, कितनी चीप और हद से भरी हुई बात है। तो आप देखिए, गुनाह करके ना शर्माना, इस तरह की बातें इसी के मुंह से निकल सकती हैं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी, इकरार है जुर्म है। शौहर के सामने क्या कहा, इसने मुझे बरगलाया, पकड़ो इसको, कैद में डाल दो। सहेलियों में आकर इंसान अमूमन खुलने लगता है। किसी का सच सुनना हो ना तो उसकी दोस्त के पास बैठी भी उसकी बातें सुन लीजिए। दूसरों के सामने तो हम बहुत प्रोटोकॉल में होते हैं, लेकिन रियलिटी कब पता चलती है? जब करीबी लोगों में होते हैं। मगर ये बच निकला, देखिए कितनी बोल्ड है, कहने लगी, बच गया, मेरे हाथ नहीं लगा। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। औरतों ने भी उसको खूब सुनाई। इमाम इब्न कय्यम 10 जुमले निकालते हैं उनकी दोस्तों की बातों से कि 10 तरह से उस औरत को उन्होंने बदनाम किया, बुरा किया, कहा। लेकिन अब देखिए कि औरत बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरा देखिएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला, फरमाया, किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, असिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलै, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर न किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। एक एक लफ्ज जो है तकवा में डूबा हुआ लफ्ज है। कैद कौन पसंद करेगा? वो पसंद करेगा जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी। और आप देखिए ऐसे वक्त में दुआ मांगना उसको याद आता है जो आम दिनों में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़े बैठा होता है, कहने लगे मुझे इधर से अलग कर दे, मैं इनके बीच में रहना नहीं चाहता। आज भी आप देखिए वो मर्द जो अपने ईमान को दीन को बचाना चाहे वो फिर बिला वजह बाहर निकलना ही पसंद नहीं करेगा। फन खेल तमाशों मौज मस्ती के नाम पे क्या फायदा, बाहर गए तो किसी पे नजर पड़ गई, किसी का कोई गुनाह देख लिया, किसी तरह दिल में कोई ख्याल आ गया, तो बेहतर है कि मैं अपने आप को घर में रखूं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, फस्तजाबा, इसके रब ने उसकी दुआ को कबूल किया, फस्तजाब लहू रब्बुहू, इसके रब ने इसकी दुआ सुन ली और इन औरतों की चालें इसे दूर कर दी, बेशक वही है जो सब की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। थोड़ा सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पे चंद जुमले सुनिएगा। पहले किससे कटे? वालदैन से कटे। माँ बाप कौन थे? दीनी माहौल में थे। फिर मिस्र में आ गए, दुनिया की तालीम हासिल की, अल्लाह ने अरूज दिया, अब वहां से भी कट रहे हैं। असल में अल्लाह ताला सबसे काट कर इनको अपने काम का बना रहे थे। याद रखिए तन्हाई रूह की गजा है। आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं ना कि आप कौन है, तो खुद से पूछिए मेरा तन्हाई में दिल लगता है, मुझे अकेले में मजा आता है या लोगों में? आपके अंदर से पुकार आएगी अगर आप हर वक्त फन फ्रॉलिक मौज मस्ती दावत खाने पीने, आप मेरे घर कल मैं आपके घर, तो ये आपके अंदर के खोखलेपन की अलामत है। आपके पास कुछ है ही नहीं है सोचने को, आपका ताल्लुक बिल्ला कमजोर है। और अगर आपको मजा आता है सब काम करना, अच्छा जल्दी से बच्चे स्कूल जाएं, अच्छा भैया सब काम पे जाएं, अच्छा मैं भी जा रही हूँ, ये अच्छा मैं अकेले बैठ के पढ़ती हूँ, अच्छा स्कूल गई अब स्कूल से आ रही हूँ बैठ रही हूँ, तो आप देखिएगा कि ये अच्छी अलामत होती है। नबी सल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करना शुरू हो गए थे। हम जब बहुत ज्यादा लोगों के हजूम में रहते हैं ना तो हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता। अकेले में एक एक बंदे की असल खुलती है, आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके रवैयों को देखते हैं, तो लिहाजा ऐसे लोग जो हर वक्त दोस्तों के झुरमट में रहते हैं ना, बहुत खतरे में, कभी सारी जिंदगी उनके पाँव नहीं जमेंगे। आप किसी भी ऐसे बच्चे को या लड़के को देखिए जिसका दिल दोस्तों में रहता है, रात 12-12 बजे तक वो घर से बाहर है, अगर शादी भी हो गई तो बेगम बेचारी इंतजार कर करके सो गई, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। तो इंसान को किसी, वो कहते हैं ना कि इस दिल को कभी तन्हा भी छोड़ दो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर आप देखिए कैसे दोस्त होते हैं कि वैसे ही इंसान का साथ छोड़ ही देते हैं जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है। लोगों की भीड़ में हमें अपना इखलास भी नहीं नजर आता, क्योंकि किसी ने आपकी तारीफ करनी है, किसी ने चापलूसी करनी है। आप तन्हा बैठकर अपने दिल से पूछिए कि अल्लाह मैं किस मुकाम पे हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। और आप देखिए कि बुरे हालात में वो लोग वैसे ही छट जाते हैं जो अच्छे दिनों में आपके साथ बहुत तारीफें और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ को सब सहारों से बेनियाज कर दिया, और जब ये सहारे टूटे तो आप देखिएगा यहां से अब असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल रही है। बड़ी मजे की बात है, अल्लाह ताला जब जहां किसी को कोई नेमत देना चाहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में दी, हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुला के दी, और यूसुफ को जेल की तन्हाइयों में नबी बना दिया। आज हमारे जहन में जेल कैदियों के बारे में क्या आता है? क्रिमिनल्स, हाय जेल में रहे फुला, जेल में रह के आया, लेकिन अल्लाह चाहे तो वहां नबूवत है। लोगों के बच्चे और बेटे शोहर जेलों में जाके और ज्यादा बुरे बन जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। आप देखिए कि यूसुफ की खूबी कि उनको जेल में अल्लाह ने दीन की दौलत दी, वहां जाके सीखा, इल्म सीखा, और फरिश्ते को जेल में आने में कोई मुश्किल नहीं लगती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया उसके बाद नबूवत मिली, तो बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठे हुए लोग भी मायूस ना हों। अल्लाह की किताब हम सबको उम्मीद दिलाती है कि अल्लाह ताला ज्यादा बड़े गुनाह बाद सफा इसलिए भी करा लेता है कि उसके बाद ज्यादा बड़ी नेकियां करवानी होती हैं। और वाकई जैसे उस जलजलों के बाद चश्मे फूटते हैं ना, कई जगह आप देखिए जमीन सब सुखरियाली हो जाती है, क्योंकि उस पर जलजले से जो मट्टी ऊपर से पानी तूफानों सैलाबों के बाद जो मट्टी आती है वो बड़ी जरखेज होती है। जलजलों के बाद बार दफा जमीन से माइंस निकल आते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो जलजले आते हैं ना, इसके बाद हमारी अंदर की खैर भी उभरती है। यूसुफ अगर माँ बाप के घर में रहते बड़े सिक्योर्ड होते, बास बच्चियां माँ बाप के घर में बिल्कुल ऐसी बावली सी बनी फिरती हैं, लेकिन शादी के बाद के हालात उनको बाज आयरन वुमेन बना देते हैं। तो ये जो नाजुक अंदाम सी लड़की एक औरत में ढलती है ना, उसके बीच में भी आजमाइशें होती हैं। तो इन आजमाइशों को कभी बुरा ना जाने, कभी इस किस्म के हालात जिंदगी में आते दिखे जाते दिखे तो फौरन अपने आप को सोच लीजिए कि मेरा रब मेरे से क्या काम लेना चाहता है। बस एक बार एक दफा आपने अपने अंदर का टैलेंट पा लिया और फिर अल्लाह से मदद मांग ली कि मेरे रब मुझे जाया ना करना, अल्लाह ताला आपको वाकई फिर जाया नहीं करेंगे। और आप देखिए एक और बात भी नोट कीजिएगा कि आज यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार को सामने रखें और लोगों से कहें कि देखो यूसुफ अलैहि सलाम ने इस माहौल में अपने आप को कैसे बचाया, क्या किया, तो लोग कहते थे हमारे बेटे तो बड़े शरीफ हैं, हमारे शौहर तो नेक ही बड़े हैं। आज ये भी एक बड़ा गुमान है हमें, हम कहते पर्दे की क्या जरूरत है, हमारे मर्द नेक ही बड़े हैं और हम खुद बड़ी नेक हैं, हमें दूसरे देखते नहीं, और वो सारी औरतें तो उनकी भाभियां और बहनें हैं, और ये हमारे सब भाई हैं और हमारे शौहरों के दोस्त भी हमारे भाई हैं, ये सिर्फ धोखे हैं। आज भी जो खराबियां गंदगी अंदर आने जाने वालों में दिखती हैं, ये आम लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, सिर्फ ऊपर एक वेनीर है, एक कवर, एक कोटिंग है, अंदर से गंदगी के भभोके उठ रहे हैं आज की सोसाइटी से। अल्लाह ताला मुझे आपको बेहतरीन तरीके से इन चीजों को लेने और मानने वाला बना दे। और नेकी और तकवा कभी भी नहीं छुपता, याद रखिए। आप देखिएगा यूसुफ अलैहि सलाम कैद में जा गए, हालात खराब हो गए, आप कह लीजिए लोगों ने उनकी कदर ना की, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको अब क्या टाइटल दिलवाएगा। सुम्मा बदालहुम मिन बाद मा राउल आयात लयस्जुनन्नहू हत्ता हीन। फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसको कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाकदामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियां देख चुके थे। यानी बेगुनाह यूसुफ जेल में डाल दिए गए। आज भी अगर कोई बेगुनाही के बावजूद जेल में डाल दिया जाए किसी भी, तो गम ना करे, उस खैर को देखे जो अल्लाह ताला उसको देना चाहते हैं। अब जेल के हालात, पहले बाप थे, फिर बाप के बाद जेल, कुआं, कुएं से निकले अजीज मिस्र का घर, अब अजीज मिस्र के घर से निकल कर फिर जेल। ये है सी सौ, हालात की ऊपर नीचे होना। तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन्नास। लेकिन जेल में क्या हुआ, वह दखल माहु सिजन फतयान। कैद खाने में दो गुलाम और भी इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज इनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हम इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। इसको हाईलाइट कीजिएगा, इन्ना लनराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको मुहसिन बनाते हैं। अब आप देखिए ये क्या बात हो गई। बज़ाहिर देखा जाए तो यूसुफ अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वहां भी इनकी तारीफें हो रही हैं। अगर यूसुफ से हसद करने वाला कोई होता तो कहता, क्या मुसीबत है, जेल में जाकर भी इसकी तारीफें हो रही हैं। इसी तरह बाज दफा हम अपने घरों में एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो भाभियां एक घर में है, देवरानी जेठानी है, समटाइम दो दोस्तें भी आपस में तकाबुल और हसद में आ जाती हैं। तो नोट कीजिएगा कि सच कभी नहीं छुपता। गुलाब को अगर आप बाथरूम में रख दें तो भी गुलाब रहेगा, और अगर आप उसको ड्राइंग रूम में रख दें तो भी वो गुलाब ही रहेगा। यूसुफ अलैहि सलाम की आदत क्या थी, लोगों पर एहसान करने की, इंसानियत के नफे के थे। उन्होंने जेल में भी जाकर अपना किरदार दिखा दिया, वहां जाकर भी उनको ये टाइटल मिला। आज लोग जितना अपनी बच्चियों को जाहरी तौर पे सजाने संवारने की दावतें देते, उनको खूब कोर्सेज करवाते, शादी हो रही है आप चाइनीज खाने सीख लो, आप मेकअप करना सीख लो, आप घर को सजाना सीख लो, अगर उसको मुहसिना बनना सिखा दे तो घरों के नक्शे बदल दें। आज की बच्चियों को खिदमत करना नहीं सिखाया जाता, एहसान नहीं सिखाया जाता, अपना हक लो, जा रही हो जरा नखरे दिखाना, जरा लाड दिखाना। अब बूढ़ी सास बैठी काम कर रही है और जवान बहू जो है वो बिस्तर पे बैठी है, मोहसिना कैसे बनेगी। एक भाभी नंद का दिल कैसे ले सकती है, क्या है अगर वो स्कूल जा रही है, काम कर रही है, आप उनका नाश्ता बना दें, खाना बना दें। देवर का भाई कैसे बनाएंगे, आप उसके कपड़े इस्त्री करके रख दें। याद रखिए कि जब आप दूसरों की खिदमत करने लगेंगे ना तो लोगों का दिल जीत लेंगे। और खास तौर पे अगर किसी को तबलीग का शौक है ना कि मैं इस्लाम का एक भरपूर नमूना बन के लोगों को दिखना चाहती हूँ, तो एहसान कीजिए, अपने हमसायों का काम कीजिए, आप उनकी बर्फ उठाइए, उनका ट्रैश उठा दीजिए, उनके बच्चों को खेल मुफ्त में आप उनको बेबी सिट कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ इब्राहिम इस्माइल सॉरी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अभी यहाँ एक मुबल्लिग बनने वाले हैं, लेकिन मुबल्लिग बनने से पहले मोहसिन बनना पड़ता है। हम चार लफ्ज पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं तकरीर करनी आ गई है, हम चार लफ्ज पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमें पढ़ाना आ गया, मोहसिन नहीं बनते। जब तक आप और मैं मुहसिन नहीं बनेंगे ना, हमारी तबलीग में भी असर नहीं होगा। तो अपनी जिंदगी को दूसरों के फायदे के लिए लगाइए। जब तक लोगों को आप पर एतमाद नहीं होगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे और अल्लाह के बंदों को फायदा देंगे, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके दिलों में खैर और आफियत डाल देगा। और आज हम देखें, हम दूसरों को कुछ कहते नहीं, दरवाजा जाके खटका के कहते हैं नमाज पढ़ो, वो झट से हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों किया। अगर आज हम मुसलमान मुहसिन होते, हकीकत में इस सोसाइटी में मुहसिन बन के फिरते, 17 मई को ये पूरे शहर को साफ करते हैं ना, उससे पहले आप भी कीजिए। आप जाके के हमारा रमजान आ रहा है, आए हम आपकी सड़कें साफ कर दें, आए हम आपके पुलिस स्टेशन साफ कर दें, आए हम जरा आपकी थोड़ी खिदमत तो कर दें। करके देखिए, ये लोग आपसे खुद पूछेंगे। अगली सूरत आ रही है हक और बातिल के फर्क की, लेकिन यहाँ आपकी अमली जिंदगी का एक इम्तिहान है कि पहले अपने आप को दूसरों के फायदे का बनाओ, फिर दीन की बात करो, खैर, अब यूसुफ का जवाब सुनिए। काला ला यातिकुमा तामुन तुर्ज़कानी ही ला यातिकुमा ताम, सॉरी, काला मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? यानी उसने कहा मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। कहा ठीक है, जरूर करूंगा। कैसे? काला ला यातिकुमा तामुन, नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना, यानी इससे पहले कि तुम पर जो खाना आता है वो आए, मैं तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये भी बड़ा खूबसूरत नुकता है। खाने से पहले इंतजार कर रहे थे, बैठे बैठे अच्छा वक्त था, फारिग थे, फिर ताबीर बताऊंगा। ये इल्मुन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझको अता किए। देखिए, अपने नाम पे नहीं ठप्पा लगाया, कॉपीराइट्स नहीं रखे इस इल्म के, अल्लाह की तरफ कर दिया। सच्चा मुबल्लिग अपने इल्म को सबसे बड़े आलिम अल्लाह की तरफ डाल देता है। फौका कुल इल्म नलीम। याद रखिए, बड़े बड़े उस्तादों के बड़े पढ़ाए हुए शागिर्द नकम्मे और बेकार बन जाते हैं अगर अल्लाह उनकी बात में खैर ना डाल दे। इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला फायदा दिलवाना चाहे तो किसी इंसान को किसी दूसरे से दिलवा दे, तो कभी भी आपको अगर कोई इल्म है, आपकी तजवीद अच्छी हो गई, आपको ग्रामर अच्छी आ रही, तो ये जुमला बोला करें कि मेरे अल्लाह के सिखाए हुए उलूम में से मेरी इसमें कोई कुदरत नहीं। हम क्या कहते हैं, मेहनत नहीं की, पढ़ने नहीं जाते थे, 5 साल लगाए हैं, आलिम का कोर्स किया, फलां किया, नहीं कुछ भी कर लो, वल्लाह ही पढ़े लिखे देखे हैं मैंने बैठे हुए घरों में, कुछ नहीं उनसे लोग फायदा उठा पाते, हालात का शिकार हो जाते हैं, फायदा नहीं उठा पाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म का खजाना अल्लाह के हाथ में है। वाकया ये है, अब यूसुफ की एक एक बात में मेरे आपके लिए खैर है। देखिएगा, कब खैर, हिकमत, इल्म, दौलत मिलती है। इल्म तो बहुत लोगों के पास है। आपको क्या पता कि आज जितने लोग मशहूर हैं उनमें से वो तो आटे का नमक है। असल में तो आटा भर के लोग आज इल्म वाले मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन उनके इल्म से फायदा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उनसे कुर्बानियां नहीं ली गई होती, उनसे हिजरतें नहीं करवाई गई होती, और उन्होंने वो अमली दीन के तकाजे नहीं निभाए होते। इल्म लेकर घर बैठ जाइए, फिर देखिए आपके इल्म को कैसे जंग लगता है। जैसे आप देखिए, एक मशीन है, आप उसको काम करना करवाते रहे, वो ठीक रहती है। आपकी फ्रिज, आप 1 महीना भी कहीं जाते हैं, कभी फ्रिज बंद नहीं करके जाएंगे, और जिसने की उसको पता है वो आएगा, उसकी फ्रिज खराब हो चुकी होगी, जंग लग चुका होगा, स्मेल आ जाएगी। कोई काम करता हुआ जिस तरह किसी मशीन को छोड़ते हैं ना, वो नकारा हो जाती है, जंग ही बहुत लग जाता है। इसी तरह आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें, आप डॉक्टर बन जाए, चले दुनिया की मिसाल ले लें, 10 साल आपने पढ़ा, शादी हो गई, हालात नहीं साजगार हुए, आपने जॉब नहीं की, आज 10 साल बाद ख्याल आता है कि जरा जॉब करूं, वो किताबें खोले, यकीन ही नहीं आएगा इतनी मोटी पढ़ी कैसे थी, एक एक लफ्ज भूलने लगेगा, फिर रिफ्रेशिंग कोर्स करने पड़ेंगे, फिर दो दो चार चार साल पढ़ना पड़ता है। तो सीखे हुए इल्म से कभी फायदा नहीं होता जब तक उसको इन प्रैक्टिस ना रखें। डॉक्टर वही है जो डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस करे, अपना हॉस्पिटल बना में जाए या किसी क्लिनिक में हो। इसी तरह सीखे हुए इल्म से फायदा लेने का तरीका क्या? अब एक एक लफ्ज में सीखी, इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको गौर करा सकूं, बस इशारों को काफी समझिए। वाकया ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका अख्तियार किया। ये हाईलाइट कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है ना, तो छोड़िए फिर खानदान के तौर तरीके, फिर छोड़िए उनके रस्म रिवाज। हम अगर खान को इल्म भी ले लें और खानदान के नाम पे मजबूरियां भी रखें और उनकी गलत चीजों में भी शामिल है और उनकी मर्जी पे हर गलत करें, कभी आपके इल्म से फायदा नहीं लोग उठाएंगे। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। ये दूसरी वजह, जब तक आपका मेरा अकीदा पुख्ता नहीं होगा इस चीज पे, तो मेरा दिल मौत की तरफ जमा हुआ है। राह हक की मुश्किलात हों, तवासी बिल हक की मुश्किलात हों, सिर्फ वही लोग जमते हैं आखिर तक जिनका अकीदा ठीक होता है। मतलब मैं और आप इस काम पे बैठे हैं, हमने 30 पारों की नियत की है, आज 12वां पारा 13वां पारा चल पड़ा, हम में से वो 30वें पारे तक जाएगा जो इस काम को एक मिशन समझेगा, जो इसको अपनी और दूसरों की हिदायत का जरिया समझेगा। वरना आज आए कल नहीं आएंगे, आज लेट आए कल जल्दी आ गए, आज वक्त मिला आगे कल नहीं आए, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, स्नैकिंग इज फाइन। लेकिन यह है कि जब तक आपको इस बात का यकीन नहीं होता ना कि इस काम के शुरू आखिर से लेकर पूरे करने की अहमियत क्या है, मुझे इसे अल्लाह की मर्जी मालूम करनी है, आप कभी भी पूरा वक्त नहीं आ सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बांट होती है। तो हजरत यूसुफ कहते हैं मैंने शिर्क छोड़ा, कहां से उठे थे? कभी आप इनका बैकग्राउंड तो पढ़े, जो फखर कर रहे हैं आज उन्हीं के तो भाई थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा मुझे बरादरी की परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने रब को नाराज नहीं करूंगा। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसने अपने सिवा किसी का हमें बंदा नहीं बनाया। जरा सोचिए, सजदा कर सके ना तो इस बात पे सजदा कर लीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा रब और मैं तेरी बंदी हूँ। है उससे प्यारा कोई रब? दुनिया के बन के देखिए, हर कदम पे आपका दिल तोड़ते हैं। एक दिन आपको खुश करेंगे, दो दफा आपको नाराज करेंगे, एक तारीफ के जुमले बोलेंगे, 10 आपके ऊपर तनकीद के जुमले बोलेंगे। ये रब है जो मेरी सारी गलतियों, मेरी नाफरमानियों, मेरी कमजोरियों और मेरी सुस्तियों के बावजूद फिर मुझे इज्जत के साथ जहां ला के बिठा देता है। उससे प्यारा कोई नहीं है। शुक्र किया करें, रब तू मेरा रब और मैं तेरी बंदी। दिल से कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ये है कमी। आज हमें अगर इस बात का यकीन आ जाए ना किसकी किताब सामने है, आज पता चल जाए किसके आगे सजदा करने जा रही हूँ, तो वल्लाह ही ये सुस्तियां भी गई, ये नींद भी गई, ये माल दौलत क्या बड़ी चीज है, ये घर और बातें क्या चीज है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा बड़ा पुख्ता था, इसलिए देखिए फिर जमे ही रहे। हम होते तो वो याद कीजिए, क्रिस क्रॉस कितने यू टर्न आए यूसुफ की जिंदगी में और कितने राउंड अबाउट आए। वो रेड ब्लू लेन पे चलते चलते रेड पे चढ़ चुके होते, उनको पता ही ना चलता। कौन सा ड्राइवर अपना रास्ता नहीं छोड़ता जिसकी आंखें खुली होती हैं। आप देखिए जब दो रास्ते होते हैं ना, इधर से आप आ रहे हैं तो एक सेकंड के लिए गलती लगती है, इधर की बजाय इधर जा सकते हैं आप, और लगती है तो 50-60 मील आगे जाके फिर पलटना पड़ता। हिदायत के सफर पे चलते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल एटीट्यूड की जरूरत है। यही बातें हमें सिखाई जा रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना मुसीबतें दीन से रोक सकी, ना खुशियां रोक सकी, ना जेल की तन्हाइयों में वो ऐसे हुए, ना कुएं में जाके रोए तो हाय मैं मर गई, मेरे साथ कर क्या दिया। हम होते दुखड़े सुना रहे होते, हाय भाई मर गए, देखो खानदान ने क्या कर दिया, लूट गए, कभी खुश नहीं हुए, बदनाम कर दिया, बर्बाद हो गए, ये हुए। और कभी अजीज मिसर के घर के ऐश कोशी देखते तो कहते क्या मजे का बिस्तर था, नींद ही नहीं खुली, फजर कैसे पड़ता। देखिए यूसुफ की जिंदगी ऐसे चल रही है सीधी, हालांकि जिंदगी के हालात अप्स एंड डाउन। और हमारी जिंदगी में अल्लाह रहम करे खुशी आ जाए, दिल धड़क जाता है, बस गई ये खुशी, पाँव में पड़ जाएगी, हम इस खुशी के तकाजे ही नहीं निभा पाते, हमें रास ही नहीं आती खुशी। वो कहते हैं थोड़ा कैले पर छोटा होता है ना, वो छोटा बर्तन ज्यादा खटकता है, छोटी चीज में बड़ी चीज डाल जाए तो ज्यादा छलकती है। बास दफा हमारा हाल खुशियों में ये होने लग जाता है, हम अल्लाह ताला को फिर नजर ही नहीं मिलाते। मिलेंगे शादी के बाद, मिलेंगे इस खुशी के बाद, अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दिला दी, हम कहते तू कौन हम कौन, अब इस बच्चे को तो पाल पोस ले। याद रखिए ना मैं आप अपना घर बसा सकते हैं, ना हम अपने बच्चे पाल सकते हैं, ना अपने शौहरों को खुश कर सकते हैं। ये है इस जुमले का मतलब कि वो अल्लाह है जो ये सारे काम कराता है। ये मेरा यकीन मुझे अल्लाह के रास्ते पे हर दम खड़ा रखेगा, ना गम ना खुशी। सारा खानदान एक जगह जाए, मैं अकेली हूं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा काम है, मेरी मजबूरी है। हमारा हाल ये मासी नहीं आई छुट्टी, आंधी चल गई छुट्टी, नाक बहगी बच्चे की छुट्टी, आज नहीं आ सकती छुट्टी, आज लेट हो गई छुट्टी, आज ये हो गया छुट्टी छुट्टी। अब ये छुट्टी को आप इस छुट्टी से ना कहे जिसको हम वेकेशन कहते हैं, दीन से छुट्टी, नमाजों से छुट्टी, रोजों से छुट्टी। हर वक्त हम ऐसे लगे होते हैं जैसे पता नहीं हमें हो क्या गया। मुझे तो समझ नहीं आता कि आज हम मुसलमानों को हो क्या गया, समझ नहीं आता वल्लाही। लेकिन बहरहाल हजरत यूसुफ का किरदार हमारे लिए बहुत खूबसूरत है। साथ ही अब तबलीग, देखिए ये है दीन की। पहले अपनी मिसाल, हाँ मैंने छोड़ा काफी बुरे दीन को, मैंने बुरी रस्में छोड़ी, लेकिन फिर मेरे रब ने मुझे दिया भी तो देखो कितना कुछ। अब उनको कह रहे हैं ऐ जिंदा के साथी हो, तुम खुद ही सोचो। ये है तबलीग का नुक्ता। मैंने इस पे पूरे पूरे लेक्चर दिए हुए, यूसुफ का तरीका तबलीग और नबी सल्लम का, उसको टैली करके दोनों को घंटों बात हुई है नायतों पे, अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा बात हुई है। लेकिन आप इन इशारों को समझिए कि अपनी तबलीग को मुअसर हम बनाएं। हम दूसरों को ही बुरा कहते रहेंगे, शायद कसूर हमारा अपना ही हो। हम कहते मानता ही कोई नहीं, सुनता ही कोई नहीं, बात शुरू करे झगड़ा हो जाता है, मियाँ पाँव पटक के कोई मम्मी में चले जाते हैं, बच्चे दरवाजा पटक के बंद करते हैं, मेरी तो कोई सुनता नहीं, दोस्तें तो मेरे से अब शक्ल ही नहीं मिलाती, मेरा तो फोन ही नहीं उठाती। कभी आप और मैं जरा बैठ के अपने तरीका तबलीग पे भी तो गौर करें कि हम किस तरह से बात करते हैं। तो अब दोस्तों को कहते हैं कि साथियों देखो जेलर जेलर है, जेल में, सॉरी जेलर्स नहीं है, कैदी हैं। और कैदियों को क्या कहते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। ये कौन कहेगा जिसके अंदर बड़ाई का एहसास नहीं होगा? वरना क्या कहते हैं? मैं तो बेगुनाह आया हूँ ना, ये काफिर, ये देखो जेल वाले, पता नहीं कत्ल करके आए हैं, पता नहीं क्या। और ये जो दोनों जो कैदी थे ना, ये कत्ल के मुकदमे में आए हुए थे। लेकिन मोहब्बत कीजिए लोगों से, आप क्यों लोगों से नफरतें पालते हैं? आपने जन्नत में अकेले जाके कर भी क्या लेना है? मजा आएगा आपको लोगों के बगैर? नहीं, लोगों को साथ रख के चले। फिर देखिए आपके दिल में कितनी मोहब्बत पैदा होती है, आपकी जुबान में कितनी मिठास होती है। और हम जब मिंबरों पे खड़े होकर दूसरों को जहन्नमी और काफिर होने का फतवा देते हैं। मुझे 2 दिन पहले एक स्लाइड किसी ने, ऐसी मिल जाती है, ऐसी चीजें नजर पड़ती है, ऑफकोर्स पड़ती है, यकीन करें एक शख्स का नाम लिखा हुआ है, मैं लू तो आप उधर ही सोचने लग जाएंगे, और नाम लेके किसी ने लिखा कि वो जहन्नमी है, चाहे वो जितने मर्जी अस्पताल बनवा ले। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मेरा तो दिल धड़क के रह गया। मैं जानती भी नहीं इतना दूर करीब से ऐसे शख्स को, लेकिन जुरत कितनी बड़ी है कि आप उसका नाम लेके कह रहे हैं। कुरान पूरे में अबू जहल जहन्नमी का नाम नहीं है, अबू जहल इन हेल, अबी राहब इन हेल है कोई नाम? अराई तल्लजी, देखा तुमने उसको, देखा उसको, अल्लाह ने इशारे भी दिए तो इनडायरेक्ट दिए, लेकिन आज हमारा तकबर कितना है। मैं कहती हूँ अल्लाह हमें दीन के तकबर से बचाए, अल्लाह हमें इल्म के तकबर से बचाए। हम थोड़ा सा अमल करके हम ऐसे टेढ़े चढ़े तो होने लगते, दूसरों को जीना ही मुतमहाल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमा दे। आप उनको क्या कहते हैं कि तुम सोचो, दूसरे को सोचने का मौका दीजिए, बोलते ही ना रहे, चंद सेकंड का पॉज दीजिए, सोचिए। चलिए मैं भी आपको देती हूँ, सोचे 3 सेकंड, और हमें अल्लाह ताला हमारी गलतियों की इस्लाह की तौफीक दे। क्या बहुत से मुतफरिक रब बेहतर है, या एक वो अल्लाह जो सब पर गालिब है? इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो, वो इसके सिवा कुछ नहीं, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। करनी वाला, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, गौसे आजम, ये नाम है ये खानदानों ने रखे हैं। हालांकि ये सब नाम अल्लाह के है, अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद भी नहीं रखी। और बात क्या कि निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं। इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो, यही ठीक सीधा तरीका जिंदगी है। मगर अक्सर लोग नहीं जानते, यानी जिसकी तौहीद पुख्ता हो गई बस उसके लिए खैर के दरवाजे खुल गए, यही सीधा रास्ता है। ए कैद के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जाए, अब देखिए ताबीर भी बता दी, और तबलीग कितनी की, इतनी सी, 4-6 लाइनें हैं। हम होते 2 घंटे का दर्स देते, 3 घंटे का दर्स देते, फिर कहते बैठो आओ अब सुनो, थके तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो। नहीं, देखिए कुरान सीखने आने वालों को 6 घंटे भी बिठा ले, लेकिन राह चलतों को, मस्जिदों में जाते आते, शादियों में आते हुए, उनको सिर्फ 1-2 मिनट का मैसेज दें, दैट्स इट। लंबी तकरीर से आपके बच्चे चिढ़ जाएंगे, आपके शोहर आपकी लंबी बात नहीं सुनते, दूसरा कोई कहाँ सुनेगा। तो यहाँ मुख्तसर सी तारीफ की, अब फौरन उनके काम के बन गए। आप भी यही करें, लोगों को आपसे जो चाहिए आप उनको दीजिए, बीच बीच में छोटी छोटी बातें करते रहिए। ताबीर क्या थी? तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह कि तुम में से एक तो अपने बादशाह यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी सच्ची तबीर थी, और अल्लाह ने वाकई इनको ये इल्म दिया था। ये अल्लाह तआला की शान है, जिसको जो इल्म देना चाहे। अब आप कहते हैं अच्छा जी आप भी को ख्वाबों की तबीर बता दें, अच्छा कुछ करें, तो प्लीज ख्वाबों की तबीर ना पूछा करें। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी, ख्वाब बयान कर दिया जाए तो वो हो जाता है। हदीस में आता है कि ख्वाब जब तक बयान ना करे वो परिंदे के परों में जकड़ा रहता है, जो ही आप उसको दूसरे को सुनाते हैं वो खुल जाता है और वो हो जाएगा। तो बुरे ख्वाब, खतरे वाले ख्वाब, खतरनाक ख्वाब बिल्कुल किसी को ना बताएं। आपको पता भी नहीं ये कितना गहरा इल्म है। मेरे जैसे काम इल्म ने अगर आपकी ताबीर कह दी ना, हाँ तुम मर जाओगे, तो मर जाएंगे आप। अब तुम्हारी टांग टूट जाएगी, टूट जाएगी, वल्लाही मैं सच कह रही हूँ। जो ख्वाब की ताबीर बोल बताने वाला बताएगा, चाहे जज्बाती होके कह दे या गुस्से में या तिचिड़ से या हसद में, वो हो जाएगा। इसलिए अपने ख्वाबों को अपने अंदर रखें। अल्लाह से दुआ कर ले, तो नफिल पढ़ ले, सदका दे दीजिए, साइड बदल लीजिए, लेकिन दूसरों से अपने ख्वाबों का जिक्र ना करें। अच्छा है तो क्यों बड़े बनते हैं आप, और बुरा है तो अल्लाह से दुआ कीजिए इसके शर को टाल दे। खैर, वकाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिमिन्हुमा, फिर इनमें से जिसके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। तदबीर इस्तेमाल की, लेकिन देखिए तकदीर गालिब आ रही है, मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाल दिया कि अपने रब यानी शाह मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया, और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। कर लीजिए कोशिश, आप देख रहे हैं कि सूरह यूसुफ में तकदीर और तदबीर का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है। याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर की, लेकिन तकदीर गालिब आ गई। भाइयों ने तदबीर की कि यूसुफ रास्ते से हट जाए, यूसुफ वहां से निकल के माशाल्लाह कहां पहुंच रहे हैं। दुश्मनों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अजीज़े मिस्र की बीवी ने ख्वाहिश की कि इनको जरा रास्ते से हटा के जेल में डाल दिया जाए, वहां से नबूवत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ यूसुफ कह रहे हैं कि जरा जाके बादशाह से कहना कि वहां एक कैदी है बेचारा, बेगुनाह बैठा है, उसके मुकदमे को चेक कराए। शैतान ने बुला दिया, और आज शैतान हमें भी बुलाता है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के दिल में निस्यान डालता है। हम अच्छे अच्छे इरादे करते हैं, नियतें करते हैं, नहीं क्योंकि फिर भुला देता है। तो जब भूल से कोई काम रह जाए तो जब याद आए तो वो काम कर लिया जाए। खैर वो शख्स चला गया, वाकई वही ऐसे ही हुआ, उनमें से एक रहा हो गया, दूसरा कत्ल कर दिया गया। काफी अरसा गुजर गया। उस मुल्क का जो बादशाह था ना, उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया। अब उसका जिक्र है। वकाल अल मलिक, एक रोज बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इन 2 कैदियों में से जो एक शख्स बच गया था, उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब ये बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, जरा मुझे कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। यानी बादशाह ने ख्वाब देखा तो इसको अपना ख्वाब याद आ गया, ख्वाब की बात हुई तो यूसुफ याद आ गए। अब नोट कीजिए, इतने साल के बाद निकले वो शख्स जिसको यूसुफ ने कुछ काम भी कहा हुआ था। क्या काम था कि जरा बादशाह से मेरा जिक्र कीजिए। अब आके देखिए, पहुंचा यूसुफ के पास। यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सॉरी नहीं, और सॉरी मैं भूल गया, आपने कोई काम कहा था, एक्सक्यूज मी, नथिंग। डायरेक्ट अपने बात पे आ गया। इसने जाकर कहा, यूसुफ है सरापे रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद के मैं इन लोगों के पास वापिस जाऊं और शायद के वो जान लें। यूसुफ ने कहा, क्या कहा होगा, यूसुफ की शान तो नहीं है, लेकिन हम होते कहते, आ गया मेरा ख्याल, पड़ गई जरूरत, मैंने छोटा सा काम कहा था, उसके बाद फोन भी नहीं उठाते, शक्ल नहीं दिखाई, आपके दोस्तों, आप जैसी दोस्तों से तो दोस्त दुश्मन अच्छे। कितनी लंबी जुबान से हम गिले शिकवे कर, बाद में कहते, नहीं बस मैंने दिल हल्का किया, यानी मैंने आपका दिल बोझल कर दिया, अपना हल्का कर दिया। बहुत सारे लोग इसी तरह करते, वो कहते ना कि आप जैसे दोस्तों के होते हमें दुश्मनों की अब क्या जरूरत है। तो बाद दफा हमारा अपनी दोस्तों के साथ ये हाल होता है। यूसुफ ने एक लफ्ज नहीं कहा, ये है मुहसिन होना। वल्लाही लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दें, किसी को कोई काम दिया तो अब उससे ये ना उम्मीद रखें कि वो आके आपके काम करके ही जाए। दीन के मामला तो और है, आप अपनी जात से किसी पर कभी कोई उम्मीद ना लगाएं। कोई काम कर दे तो उसके एहसान मंद हो जाइए, और अगर आप खुद कर सकते तो उसका आपको खुद कर ले, इसी में इज्जत है। यूसुफ ने मोहसिन होने का सबूत दिया कैसे, फौरन ताबीर बता दी। ताबीर भी नहीं बताई बल्कि साथ उसकी तदबीर भी बताते हैं कि अब करना क्या है। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान में जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आएगा निकाल लो, और बाकी को इसकी बालियों में ही छोड़ दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, इस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे, अगर कुछ बचेगा तो बस वही जिसको तुमने महफूज किया हो। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारान रहमत होगी, यानी लोगों की मदद की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ताबीर बताई। हमारा तो मिजाज ही नहीं सीधा होता, हम कहते हैं सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, बस बस हो गई बात, नहीं। इससे पता चलता है कि एक मुहसिन और एक दाई और एक लोगों की खिदमत करने का दावा करने वाला शख्स लिया तरह नहीं रहता। सलाम भी करेगा तो इतने नखरे के साथ कि अगला बंदा शर्मिंदा ही हो जाए। तो रिलैक्स्ड अप्रोचेबल रहिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, ये ना हो कि लोग बेचारे आपसे बात करने के लिए तरसते रहे और आपके नहीं। हमारा तो प्रोटोकॉल ही बहुत है। आज के दौर में इस प्रोटोकॉल ने भी दीन को बहुत नुकसान दिया है, बैरियर्स आ गए, रुकावटें बन गई दीनदारों और दुनिया वालों में, और वो फिर कहते हैं कि अब हम कैसे इन तक पहुंचे, इन तक तो पहुंचने के रास्ते ही बड़े मुश्किल है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीधे साधे तरीके से उनकी मदद कर दी। खैर अब वो शख्स फौरन गया। अच्छा हम होते कहते हैं, मैं क्यों तुम्हें बताऊं ताबीर, मुझे लेकर चलो बादशाह के पास, मैं जाकर खुद बताऊंगा ताकि इस इल्म का तमगा मेरे ही गले में डले। ये जो आज कॉपीराइट्स ने हमें दबाव बर्बाद कर दिया ना, मेरी बात तुमने कह दी, अच्छा जी तुमने सारे टाइटल ले लिए मेरी बात। आप देखिए कितनी बुरी खयानत है दीन के नाम पे। आज ये जो सेल्फ कॉन्शियस होना है ना, ये दीनदारों को बहुत नुकसान दे गया। मेरी कही भी बात, मेरा नाम लिखो, मेरी बात है, इसको दूसरे को क्यों कह दिया। यूसुफ कहते हैं अगर उसको कि भाई मुझे लेके चलो बादशाह के सामने, जरा मैं बड़ा बन के दिखाता हूँ। क्या बड़ा बनना है भाई, बात ले लो, नाम भी बताओ, जाके आगे दूसरों को बतानी शुरू कर दो। हमें अपना नाम नहीं चाहिए, हमें अपना टाइटल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे नाम के साथ ही दूसरों को पेश करें, बस बात अच्छी ले लीजिए और जाके इसको मनोमन पेश कर दीजिए। तो ये भी एक खूबसूरत अमल की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी को बता दी कि तुम जाके बताओ, खिदमत कीजिए, अपनी जात से बेनियाज होकर सिर्फ लोगों की खिदमत करें। सब नाम टाइटल चीजें उतार के एक साइड पे कर दीजिए, नाम वहां बताइए जहां फायदा हो। अगर किसी को नाम बताने में मुश्किल लगती है ना तो आप नाम ना बताएं। मसाब देखिए कि लफ्ज नूरुल कुरान है, एक प्लेटफॉर्म है ना, बस एक पहचान है। और इसकी पहली दफा जरूरत कब पड़ी थी, जब हमने वेबसाइट बनानी थी कि करें क्या, कोई नाम तो वेबसाइट को देंगे। कोर्स शुरू किया हुआ था पहले से नूरुल कुरान के नाम पे, क्लासेस तो हमारी यकीन करें सबसे पहली अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की देन थी और हमारा इसमें कोई फख्र नहीं। कबूल ना करे अल्लाह तो मुंह पे मार दे हमारे। प्याल टॉक पे पहली उर्दू क्लास जो थी वो अल्लाह ने हम लोगों के थ्रू करवा ली, साथी थे उन्होंने कहा बताया, तो मेरी एक स्टूडेंट, हमारे एक स्टूडेंट थी, मेरी तो मैं लफ्ज कभी बोलती नहीं इसको निकाल दें, यानी एक स्टूडेंट थी जो सुबह पढ़ने आती थी, फजर के बाद एक क्लास में लेती थी हॉस्टल में, वहां वो बच्चियां आती थी सुबह सुबह पढ़ के स्कूल चली जाती थी, इस तरह की वो हालात है। वो एक दिन मेरे पास आके कहने लगी कि मैंने क्लास है, मैं जो आपसे पढ़ती हूँ ना, ये रात को मैं अपनी दोस्तों को एक इंटरनेट से पढ़ाती हूँ और उसको इंग्लिश में बताती हूँ। ना लव स्पेल टॉक पता था, ना नेट पता था, ना वेबसाइट पता थी, आज से 15-16 साल पुरानी बात है। अच्छा जी क्या कहती, आप भी जरा को शुरू करें भाई। वो क्या होता है, उसी ने कर करा के ना, मेरे पास तब लैपटॉप होता था कुछ नहीं, डेस्कटॉप पे डाल दिया और उधर से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहला रूम हमने कुरान क्लास उर्दू के नाम पे शुरू किया, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, एक कोर्स हो गया, कुछ नहीं पता, कख नहीं, 3-4-5 साल तक चलता रहा। आखिर एक कोर्स नया जब शुरू किया तो उसका नाम साथियों ने नूरुल कुरान चूज किया। आज आप उसकी कहानी सुन ले, बहुत लोगों को तो जसूस भी होता है कि नूरुल कुरान क्या, ये नाम क्यों आपने बनाया, आप किसी और के नाम से क्यों नहीं जुड़े, मुझसे ये भी लोग पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ आप जरा पूछ के तो देखिए किसके कौन किस नाम से जुड़ा हुआ है। खैर किस्सा मुख्तसर यह है कि जब नूरुल कुरान कोर्स का नाम रखा, अब क्या हुआ, मेरी अपनी उस्ताद ने मुझे मशवरा दिया कि जब आपके कोर्स का नाम है तो आप अपने इदारे का नाम भी ये रख लीजिए। वो दिन और आज का दिन ये नूरुल कुरान का नाम है। आज भी मैं आज जिस जगह आप बैठे हुए, आप फ्लायर बाहर जाके देखिएगा, इस पर लफ्ज नूरुल कुरान नहीं लिखा हुआ कि इस शहर इस बस्ती जहां से आप पैदल आ रहे हैं, अगर इधर वालों को लफ्ज नूर कुरान बुलाता है तो बताएं, और अगर लफ्ज नूर कुरान रोकता है ना तो इसको फेंक दे, लफ्ज नूर को उतार दे, कुरान को कहीं ऊपर लफ्ज रख दीजिए, मत बताएं लोगों को हमारे स्कूल का नाम, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, हमको अपने नाम के झंडे गाड़ लेंगे और कितनों में और किन में गाड़ रहे हैं, हमें क्या पता किसका अल्लाह के यहां मुकाम है। काम कीजिए, खिदमत करें, अल्लाह आपको इज्जत दे देगा। किसी को ना बताएं, आप कहते हैं उसके साथ जुड़े हुए, हम उसके साथ ही हैं, हम तो उनसे जुड़े, तो किन से जुड़े हैं, आप अल्लाह से तो जुड़िए। बस लोग तारुफ कराते हैं अपने, भाई आप क्या करते हैं, हम क्लास, हम तो उनसे जुड़े हुए, अल्लाह ना करे आप में से कोई किसी को कोई इस नाम से जुड़े। काम से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, कुरान का नूर खुद जिंदगी में आएगा। तो आप देखिए कि हजरत यूसुफ कितने ज्यादा बेनियाज हैं इस बात से। आज इस चीज ने भी ग्रुप विद इन ग्रुप कर दिए, पहले हम उम्मत थे, फिर हम 4 गिरोहों में बटे, सुन्नी जो 4 आयमा कराम से जुड़े, फिर 4 आयमा कराम के फॉलोअर्स के फिर आगे किस में, बस आप देखिए कि हनफी इमाम अबू हनीफा को मानने वाले खुद को हनफी कहते हैं। आप जाके पढ़ के देखिए, सिलसिला खोल के देखिए, अकायद में ये चीज पढ़ाई जाती है। आज हनफी कहने वालों के आगे फिर कितनी किस्में हैं, कोई नक्शबंदी है, कोई चश्मबंदी है, और कोई इसी तरह देवबंदी है, कोई कुछ है, फिर देवबंदी है तो उनकी फिर आगे किस्में है, कोई तबलीगी जमात है, कोई अहले सुन्नत वाल जमात है, कोई कुछ है। ये क्या हो गया उम्मत को, किन बातों में पड़ गयो कब्र में, इनमें से एक बात काम नहीं आनी। और वल्ला ही सारी जिंदगी यहाँ आप लोगों लगा के फिरे ना हमारे स्कूल के नाम का, और अगर आपने इन तालीमात को नहीं लिया जो मैं आपको दे रही हूँ, तो कोई उम्मीद ना रखे कि ये नाम मुझे आपको बचाएगा, मुझे भी नहीं बचाएगा ये नाम, मैंने तो कभी लिया भी नहीं शऊर से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो सारे नाम प्यारे लगते हैं। हर वो बंदा प्यारा लगता है जो लोगों को रब को कुरान की तरफ बुलाता है, हर वो बंदा प्यारा लगता है जो इस्लाम की तरफ नमाज की तरफ बुलाता है। किन फिरकों में पढ़कर आज आप अपने आप को रोके में, इन्हीं हॉलों में बाहर खड़े होने की जगह ना हो अगर यहाँ कॉन्सर्ट हो रहे हो, या मेला लग के देखिए, या ठेला लग के देखिए, लेकिन बस दफा हम दीन के नाम पे रोक लिए जाते हैं, उनका नाम नहीं लेना, वो ना हो। तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की इस बात पे बात तो लंबी हो गई, लेकिन इसकी जरूरत है। आप तो बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अभी तक 12 सवारों में आपको क्या सोच मिली है, हरकत हरकत डायनेमिक, कुछ करके जाओ, कुछ करके दुनिया से जाना, दूसरों की खिदमत करो। यूसुफ जेल की तन्हाइयों में पड़े, आप कह लीजिए कि यूसुफ के खिलाफ बैनर छप रहे हैं, मिसाल है दुनिया में, कैदी जेल में ये बदनाम करें, अल्लाह देखिए वहां से बादशाह को कह रहा है कि जाओ इसको बुलाकर वो ऊपर तख्त पे बिठाओ। आप और मैं आज उम्मत मुस्लिमा होने के नाते जरा कोई खूबी तो पैदा करें, ये बड़ी बड़ी ताकतें लाकर आपको अपने फॉरम्स में बिठाएंगी। करतूत तो हमारे अंदर है नहीं, काम तो हमारे है नहीं, ये लफ्ज निकाल दें, काम तो हमारे अच्छे नहीं है, फिर रोते हैं फलां हमारा खिलाफ, फलां दुश्मन हमारे खिलाफ, फलां मुर्दाबाद, फलां मुर्दाबाद, भाई उनको मार के तुमने क्या करना है, पहले तुम तो जियो, इस जिंदा किताब को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। ये बहुत बड़ा हजरत यूसुफ की जिंदगी का एक कहना चाहिए कि वो कहता कि टर्न द लीफ, एक पेज और पलटी है। अब जेल से देखिए जरा, यूसुफ के नाम एक मैसेज जा रहा है क्या? बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ। वल्लाह ये सारी बातें मैंने इसे एक जुमले पे कर दी। आज भी अगर मुसलमानों में खूबियां आएंगी तो दुनिया के बादशाह कहेंगे लाओ इन मुसलमानों को, ये बड़े मेहनती हैं, ये सच्चे हैं, ये हार्ड वर्किंग है, और ये झूठ नहीं बोलते, ये पंक्चुअल है, ये वक्त के पाबंद है। खूबी है कोई नहीं, बातें दूसरों को हम करके अच्छे सच्चे बन जाते हैं और अपने जैसों में खुश होके कहते हैं देखा हमने कितनी अच्छी बातें कर दी। नहीं, अच्छा वो है जिसको दूसरा अच्छा कहे। यूसुफ को जेल की तन्हाइयों से निकाल कर बादशाह ने मैसेज दिया। अब जरा आप सोचिए यूसुफ क्या करेंगे, वो जिसको हम कहते हैं ना उछलते उछलते बाहर निकले होंगे, देखा ना, और एक खत लिखा होगा जिसे मिस्र को उसकी बीवी को सुना दो निकल आया हूं बाहर। नहीं, गैरत देखिए जरा। मगर जब शाही फरिश्ता यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा अपने रब के पास वापस जाओ, यानी मैंने नहीं निकलना अभी, मैं क्यों निकलूं। ये है असल में अल्लाह ये अना दे दे दीनदारों का। आज आज हम झुके फिरते हैं, कहते हैं इनकी जूतियां सीधी कर दो, बस इनके साथ साथ रहो ताकि हमें ओहदे मिलते रहे, हम बड़े हो जाएंगे, हमें मीडिया पे कवरेज मिल जाएगी और हमारे से लोग खुश रहेंगे, बस लोग खुश रहे। यूसुफ ने कहा मैं नहीं निकलूंगा जेल से, क्यों नहीं निकलूंगा। इससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला हुआ, अब जरा एक एक लफ्ज को तोलिएगा, इन औरतों का क्या मामला हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ये क्यों नहीं कहूं औरतों का क्या हुआ जिन्होंने मेरे ऊपर डोरे डाले थे। किनाया, इशारत है, दुश्मन का भी जिक्र कर रहे हैं तो अच्छे रंग में कर रहे हैं। हाँ वो बिचारियां उनके हाथ कट गए थे, जरा चेक करो जख्म ठीक हो गया है, कोई पट्टी की जरूरत तो नहीं है, कोई सेप्टिक तो नहीं हो गया। ये नहीं कहा वो किधर गई करप्ट औरतें, किधर गई फैशनेबल। आज देखिए कभी दीनदारों को जरा तबलीग करते हुए नाम तो लेते सुना करें। एक सिस्टर ने मुझे कहा कि किसी जगह दर्स में गई और अपनी दोस्त को साथ ले गई, कहती मेरी दोस्त कभी नहीं जाती थी और हम कहीं बाहर से ही आए थे और वो मेरे साथ चली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे उनको भी और मुझे भी। मैं उनकी बात सुना रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, जब कभी अल्लाह ने आपको मौका दिया कभी लोगों को इनको इनसिक्योर ना करें। कहती मेरी वो दोस्त जो आई थी उसने छोटी छोटी स्लीव पहनी हुई थी और बाल उसके कटे हुए थे और वो बाहर से आई थी, तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं आ जाओ चलो थोड़ी देर बैठ तो फिर चलते हैं। कहती जू ही वो आई और वो जो दर्स दे रही थी उनकी नजर उस पर पड़ी, उसके बाद पूरा दर्स बाद में उन्होंने बंदरियां और कबूतरियां और पर कटियां और ऐसी बातों पर किया। वल्ला ही अल्लाह माफ करे, हंसी नहीं हंसी नहीं, ये चीजें हैं जो दूसरों को इनसिक्योर करती हैं। भाई जैसे भी आ जाओ, अंदर आने का कोई पर्दा नहीं है, यहां दुपट्टा भी उतार के बैठ जाओ कोई आपको नहीं कहेगा कि दुपट्टा रखो, मेरा आपका हक नहीं है, हम चौकीदार हैं। कोई बंदा आपके साथ रहता है आप सारा दिन उसकी चौकीदारी करते रहे, कौन है नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, गए कि नहीं, भाई क्या लगे, प्यार से बुला लीजिए पूछ लीजिए, कोई आता है 100 दफा नहीं आपकी बला से, के सारों का आपको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो बस हम अपने साथ रहने वालों को सजा देते हैं अपने साथ रहने की, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने औरतों को एक किस्म की साइड दी, बस इशारतन कह दिया कि भाई मैं ऐसे इल्जाम के साथ बाहर नहीं आऊंगा। इन्ना रब्बी बिकैदी हिन्ना अलीम, मेरा रब तो इनकी मकारी से वाकिफ ही है। क्यों नहीं निकले, क्योंकि कल यूसुफ ने उस मुल्क में दीन का काम करना था। अगर यूसुफ उस कैद के या उस इल्जाम के साथ बाहर निकाले जाते, लोगों ने कहना था वो तबलीग कर रहा है जिसके ऊपर इल्जाम था, वो देखो वो जो मक्कार था वो था। ये है असल में गैरियत, ये गैरत आती है ना तो फिर दीनदार अपने अपने दामन को ऐसे बचाता है जैसे कोई सफेद कपड़ों को दाग से बचाता है। कहने लगे मैं ऐसे नहीं आऊंगा बाहर, पहले मुकदमा खुलवाओ, मेरी बेगुनाही साबित होगी तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। अब बादशाह तो उसको क्या मुश्किल थी, उसने फौरन पुरानी फाइलें खुलवाई, अब मुकदमा खुल गया सामने। अब जरा सुनिएगा जुमला जिसके लिए यूसुफ को इतने साल सब्र करना पड़ा, क्योंकि यूसुफ सच्चे थे। औरत भरी महफिल में अब इतराफ कर रही है जिसका इतराफ कल उसने अपनी दोस्तों में किया था। क्या इस पर बादशाह ने इन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने एक जुबान होकर कहा खाश अल्लाह, ये खाश अल्लाह ऐसे जैसे आज हमारी जुबान में सुबहान अल्लाह कहते हैं, हमने तो इसमें बदी का शायबा तक न पाया। ये है जिसको कहते हैं कि तब तक आप सच्चे नहीं है जब तक आपका दुश्मन आपकी गवाही ना दे, आपके अखलाक की गवाही आपके दुश्मन दे दे, हासिद दे। कहने लगे हमने तो यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। अजीज की बीवी बोल उठी अल आन हससल हक को, अब हक खुल गया, वो मैं ही थी, अनरावत हूँ अन नफ्स ही, जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच है। देखिए सारी जिंदगी लोग रोते रहते हैं, मेरी बेगुनाही, अल्लाह की कसम, साथ आंसू भी आ रहे हैं, साथ नजला भी हो रहा है, जुकाम भी है, टिश्यू नेपकिन भीग रहे हैं और रो रही हैं। अल्लाह की कसम मैं सच्ची थी, मेरी सास को कोई समझा दे, मैं झूठी नहीं थी, मेरी नंद को कोई बता दे। फिर मियाँ को रो रो के अपना सच सिखाते हैं, सुनाते हैं, दोस्तों में आकर सच्चाई करते हैं। खामोश होकर जेल में बैठ जाइए, आप सच्चे हैं। वो औरत खुद बरमला आकर सबके बीच में ऐलान करती है कि मेरा कसूर था। उस दिन इकरार करती तो शौहर के सामने करती, उस पार्टी वाले दिन कर रही थी तो अपनी दिल फेंक दोस्तों के सामने किया, आज फोरम पे आ गया। अगर उस दौर में अखबार छपती तो ये मुकदमा तो यकीनन मीडिया में आया होता कि देखो इतना बड़ा केस इतने साल बाद खुला। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फौरी फौरी फैसले चाहते हैं। आज सुबह झगड़ा हुआ, रात तक मियाँ के सामने हम पक्के सच्चे बन के बन जाए। वो कह के सोएंगे नहीं, बेगम आप जैसी बेगम तो दुनिया में कोई नहीं थी, मेरी माँ ही जालिम है। नहीं, सब्र कीजिए, यही सास कल आपके शौहर के सामने आपकी तारीफ करेगी, शर्त एक है कि आप सच्ची हैं। यही बच्चे कल आपकी मोहब्बत का दम भरेंगे अगर वाकई आप इनके लिए संजीदा हैं। आज तो हम अपने बच्चों की शिकायतें अपने मियाओं को लगाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो थोड़ा सा इंतजार काफी है, सच भी है तो कोई सच को आंच नहीं। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं हम लोग, समझ कोई नहीं आती, आज समझ आ गया। हाँ, अगर आपने भी ज्यादतियां की हुई हैं तो फिर आपकी भी खुलेंगी, और ताली एक हाथ से नहीं बचती। अपने दामन को हत्तुल वसा पाक रखिए, फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी ये गरज थी, इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज से जान लेके मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की। यानी ये सारा मामला क्यों खुलवा रहा हूँ, इन औरतों को बदनाम नहीं करना, बल्कि मैं अजीज मिस्र को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी बीवी के बारे में गलत बात सोच नहीं सकता। और अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और ये कि जो खयानत करते हैं अल्लाह इनकी चालों को कामयाबी की राह पर नहीं लाता, इनकी कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। तो यहाँ पे आप देखिए कि ड्रॉप सीन होता है। अभी भी अगला जुमला साथ है, इसलिए 13वां पारा हम साथ ही इसके लेंगे। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स ला अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बेगुनाही साबित नहीं करता, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। कितना खूबसूरत जुमला। तो कोई अपने आप को पाक ना कहे, पाक वही है जिसको अल्लाह पाक कर दे। नफ्स हमेशा हमें बड़ा बनना सिखाता है, तुम बड़े बनो, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये खूबसूरत बातें कर करा के हम सबको भी इस चीज़ की दावत देते हैं कि हम अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन शरूरी नफ्सी, कि अल्लाह मेरे नफ्स के शर से बचा। देखिए हर बंदे के अंदर बुराई की इंक्लाइनेशन होती है, तो उससे बचने का रास्ता क्या है, दुआएं मांगते रहिए। जब आपको लगे कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, कोई खराबी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो फौरन अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे अंदर खैर डाल दे। हो सकती है माहौल का असर है, बुरी तरबियत का भी असर हो सकता है, सुस्ती भी है, हमारे अंदर बचपन से कई खराब आदतें हो सकती हैं। बस अल्लाह से मांगते रहिए कि मेरे मालिक तो मेरे लिए बेहतरी फरमा। नबी सल्लम के एक हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया कि उससे बुरा मेहमान और कौन होगा कि जिसकी तुम जितनी इज्जत करो, खातर करो, वो उतना ही तुम्हें जलील करे। लोगों ने कहा बहुत बुरा मेहमान है वो। आप सोचिए ना, घर वाला थक रहा है, हार रहा है, आपकी इज्जत खातर करते और आप उसके बारे में बुराइयां करें। तो आपने फरमाया तुम्हें पता है ये कौन है मेहमान, ये तुम्हारा नफ्स है। इसके इसको जितना पेम्पर करते हो ना, उतना सर चढ़ता है। तो मैं यहाँ बस एक हल्की सी बात करके आगे चलती हूँ, बल्कि याद आ गया तो बता दूँ। सूरह यूसुफ मैंने एक जगह लाहौर में आज से 2 साल पहले तकरीबन 4 नशिस्तों में पढ़ाई थी। तब हमारा थीम था बच्चों की तरबियत, तो मुझे इस आयत पे वो बातें याद आ रही हैं, इसलिए आपसे जिक्र कर दिया। अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसको सुन लीजिएगा। पूरी सूरत को हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। उसमें इस आयत पे ये बात थी कि प्लीज अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी ना करें, जो कहते हैं वो मत माने, उनको पूछ पूछ के उनकी जिंदगी के फैसले मामले ना करें। आज इतनी सी बच्ची कपड़े आपकी पसंद के नहीं पहनती, कल आपकी पसंद का शौहर कैसे लेगी। या जो बच्चे सर मुंह मुंह सर कर हो जाते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है। तरीके से रखिए, क्योंकि जैसे नफ्स का हाल है वैसे औलाद का भी हाल होता है। तो बहरहाल इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि अपने आप को भी जरा संभाल के रखें। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह हजरत आयशा को अल्लाह के नबी ने एक दिन में 2 दफा खाते देखा। तो आपने कहा कि आयशा, क्या तेरा ये इरादा है कि तेरा एक ही शुगल रह जाए कि तू खाती रह रही है। हजरत आयशा कहती है कि जब जो चाहे वो खा लो। ये वही बात है जो हम करते हैं। वो कह रही है बेचारी कि जो दिल चाहा वो खा लिया, ये इसराफ है। हमारी तो इफ्तारी की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी होती है, एक मुन्ने के लिए ये, और गुड्डू के लिए ये, और पप्पू के लिए ये, और पप्पू के अब्बा के लिए ये, और अम्मा का क्या है, बस वो तो सिर्फ वो बिरयानी बना के खा लेगी। नहीं, ये रमजान सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। अपने बच्चों को सिखाइए एक हिस्सा खाली रखें, फिर बात बनेगी, वरना ये रोजे आएंगे और चले जाएंगे, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से अपने नफ्स पे काबू पाने वाला बना दे। कहानी कंटिन्यू होती है, और इस्लाम में कहानी सुनाने का आपको तरीका भी समझ आ गया। सात मॉरल, सात कहानी, बीच में बात, फिर कहानी, फिर बात, फिर कहानी, यही खूबसूरत तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। वकाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा इनको मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर लूं। कितना रोमांटिक जुमला। बादशाह हजरत यूसुफ बेगुनाह साबित हो गए, कैद से निकाला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तो यूसुफ के सब्र पे हैरत है, मैं अगर यूसुफ की जगह होता तो मैं उन एलचियों के आते ही फौरन जेल से बाहर खड़ा हो जाता। यानी ये आपकी कस्से नफसी है, लेकिन असल में अपनी गार्ड दे रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यूसुफ बेगुना है तो बादशाह कहता लेकर आओ उनको। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह की मजबूरी बन चुके हैं, क्यों, मुहसिन भी थे, और उनको उन्होंने ख्वाब की ऐसी खूबसूरत ताबीर बताई थी जो यूसुफ जैसा कोई बंदा यूसुफ के अलावा और कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो कहा आओ मैं इनको खास कर लूं, अपना क्लोज बना लूं, इनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लूं, वजीर बना लूं। ये है असल में ओहदे मांगने का तरीका। खूबियां पैदा करें, लोग खुद आपके पास आएंगे कि प्लीज हमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। खैर, पहले तो सिर्फ इतना कहा था खालिस इसको अपने पास रखूंगा, लेकिन फलम मकल्लमहु, फिर जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की, कलाम किया, तो वो तो मशहूर ही हो गया। यूसुफ की के अमल तो उसने भी सुने हुए थे, जब आमने सामने यूसुफ बैठे, यूसुफ से बातचीत की, तो उसका तो व्यू और ही बेहतरीन हो गया। कहने लगा इन नकल यौम लदीना मकीन अमीन, अब तो आप हमारे यहाँ कदरों मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। क्या पता चला मोमिन की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। बात सुनी हुई थी तो सुनी हुई थी, जब खुद वास्ता पड़ा, सामने बैठे, बात की, मिले, मुलाकात हुई, चंद वो थोड़ा वक्त साथ गुजारा, कहा वाकई इससे ऐसा तो बंदे ही कोई नहीं हो सकता। ये किरदार आज उम्मत मुस्लिमा पैदा करे। हमारा हाल है कि हम कहते हैं जरा बच के रहना, यहां से कोई मुसलमान गुजरा है, देखो जेल तुम्हारी जेब ना काट चुका हो। कलाम में बड़ा असर होता है, अपने अंदर खूबी पैदा करें हम सब, अगर हमने दुनिया को इस्लाम से जोड़ना है। खैर, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था मुल्क में बहुत बड़ा एक फितना आने वाला है, कहत आएगा, तो अब खुद जिम्मेदाराना तौर पे खुद को किस चीज के लिए पेश करते हैं, जिस वक्त पे जो वजीर है वो इस्तीफे दे देते हैं कि अब कहत आ गया तो हमारे खजाने तो नहीं भर सकते। यूसुफ कह रहे हैं लाओ भाई मुझे दे दो ये जिम्मेदारी। कैसे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखने वाला हूँ। ये हैं दो खूबियां, जो आ गई तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अलीम कौन, इल्म से क्या, यानी जो काम मैं ले रहा हूँ उसकी मेरे मुझे सेंस है। इसे एक अमल की बात भी है कि जिस जो काम लिया जाए उसको करना भी आता हो। खाम खा वो जिम्मेदारियां अपने सर पे नहीं डाल लेनी चाहिए जो मुश्किल हो। देखिए एक शख्स है उसको ड्राइविंग नहीं आती, हो सकता थोड़ी बहुत सीख के घर के पोर्च में चला ले, जूं ही भाई रोड पे आएगा हाथ मुंह पड़ जाएंगे, और अगर रोड की बजाय निकल के वो आ गया हाईवे पे फिर क्या होगा। एक साथी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में थोड़ा सा किसी के कहने पे पढ़ाना बताना शुरू कर दिया, अब क्या हो रहा है कि अब मैं जब जाती हूँ तो लोग मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और बहुत इस तरह के, तो मैं घबरा जाती हूँ। तो मैंने उनको भी ये मिसाल दी थी कि आपका अपना इल्म अभी पुख्ता नहीं है, आप अभी मजीद इल्म हासिल करें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ पढ़ाएं। क्यों, आपकी मिसाल वो है कि आपने शुरू तो कर दिया, जोश में आके पढ़ाना था, चार लोगों ने तारीफ की तो अंदर इतना बड़ा हमारा खुन्नस भर जाता है कि हम तो बहुत ही अच्छे हो गए, हमें तो हमारे जैसी बात तुम्हारे साथों को भी नहीं करनी आती। खैर हो गया बात, अब आप आगे चलेंगी, इतने फतने आएंगे आप तो रोएंगी। एक कहने लगी बड़े जोश से गई थी पढ़ाने, बाद में रो के आई हूँ, लोगों ने ऐसे फितने उठाए, ऐसे सवाल उठाए कि मैं परेशान हो गई, अब क्या करूं। तो सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, पहले पढ़िए। देखिए तीन चीजें हैं, अगर आप स्लोगन पे जाएं पहले खुद लें। इस वक्त जो मैं आप ले रहे हैं ना, ये लेने का वक्त है, सीखे इसको जज्ब करें, अपने अंदर लाएं। आप पहले अपने अंदर तो लाएं इस दीन को, और किसी की बात सुन के आप कॉपी करके उसको नोट लेके दूसरे को सुनाते हैं, ये तो ऐसे खाना खाए और उल्टी कर दी। क्या फर्क होता है एक वॉमिट में और एक खाना डाइजेस्ट होने में। उस्ताद से इल्म लेके उसको हजम करें, जज्ब करें, आपका दिल दिमाग अंदर रच जाए, हड्डियों में चला जाए वो इल्म, आपका बिल्कुल वही मिजाज बन जाए जो ईमान आपके इस चीज के लिए मतलूब था। फिर आप भी डिलीवर करेंगे तो आपकी बात में भी असर होगा। हम ऊपर से कोटिंग वाला दीन लेते हैं, हम कहते नहीं हमें आता है, कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन आगे से कभी रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, सीखते जाएं सिखाते जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर दिया, और इसके बाद जो जुमला, इसको तो बड़ा बड़ा करके लिख लें, हाईलाइट कर लें, वकजालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्थ, इसी तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार कर दी। ये कजालिका के पीछे 40 साल है, सब्र है, कहीं इल्जाम है, कभी जेल है, कभी औरतों के फितने हैं, लेकिन अल्लाह ऐसे ही तैयार करता है। आगे हम सूरह ताह में मूसा का भी पढ़ेंगे, फतन्ना का फतूना, अल्लाह अपने कामों से पहले बंदों को परखता है, इधर से उधर से बुरे हालात में, क्यों, ताकि कल मुश्किल वक्त में भाग ना जाए। देखिए यूसुफ को, सॉरी, हजरत बिलाल को क्यों इतनी मार पड़ती थी उमैया से, ताकि बिलाल पुख्ता हो जाए, ताकि वाहद अहद कहकर उनको कहने में कोई उनसे उनको रोक ना सके। यही बात अल्लाह ने बता दी कि यूसुफ की जिंदगी के ये उतार चढ़ाव असल में इसलिए थे कि अब यूसुफ को वहां हुकूमत देनी थी, और कैसे उस मुल्क में खुले चलते फिरते भागते दौड़ते थे, या तबक्वो मिन्हा हैसु यशा, वो मुख्तार थे कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए, कोई वीजे की पाबंदी नहीं यूसुफ को मिस्र में आने के लिए, कोई पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराना पड़ता, और अगर खुद से उठ के कनान से एक सीधा साधा देहाती कभी आ जाता मिस्र में, तो ये बादशाह दरवाजा भी ना खोलता। जब अल्लाह ने अपने काम लेने होते हैं ना, अल्लाह ऐसे लेता, सब पाबंदियों से आजाद, लोग तरस रहे हैं, अल्लाह आपको वहां से खैर दिलवा रहा है, क्यों, क्योंकि अल्लाह अपने काम कराता है। नसीब भी रहमती नामन नशा, हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। तो क्योंकि यूसुफ पे, हम पे क्यों नहीं होती, इसलिए कि वला नदी अजरल मुहसिनीन, नेक लोगों का अजर हमारे हमारा नहीं जाता। 3 सेकंड गौर कीजिए, मोहसिन बन जाइए, पूरी सूरत आपको मुझे मोहसिन बनने का सबक देती है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं इस्लाम के काम करने से। ये भी घर के माहौल में जो तलखी है ना, और रुकावटें हैं, पाबंदियां हैं, अभी पूरा नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा तो चख लिए लेकिन पूरा नहीं चखा, और क्या सिर्फ आखिरत में मिलेगा, नहीं, खैरुल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, क्या सिर्फ दुनिया में मिलेगा, नहीं, बल्कि आखिरत में भी, और आखिरत का अजर इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। दो सिफात हैं, दुआ कर लेते हैं अपने लिए कि अल्लाह सच्चा ईमान दे दे, और मैंने देखा असल दौलत ईमान की है, ये ईमान झलकता है हर चीज में। आप लफ्ज देखते हैं, आप इल्म पीछे, इल्म के पीछे भागते हैं, आप लोगों की बातें देखते हैं, आप लोगों का भाग भाग के अल्लाह के रस्तों में काम करना देखते हैं, हाय इतनी मेहनत करती हैं बाजी, हाय इतना काम करती हैं बाजी, हाय इतनी मेहनत कर रहे, इतने खाना पकाती हैं आंटी जी, क्यों पकाती हैं, ईमान है। अगर आपके अंदर सुस्ती है ना, तो अपने ईमान का थर्मामीटर, अपना ईमान चेक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। 4 फर्ज नहीं पढ़े जाते और कोई बंदा वो सुन्नत और नफलों पे भी लगा, ईमान है पीछे। आपको घर में नमाज पढ़नी मुश्किल है, एक मर्द मस्जिद में जा रहा है, ईमान है पीछे। आप गर्मी में नहीं फजर पे जा रहे, वो -20 में जाता है, ईमान का फर्क है। ईमान एक फोर्स है, जैसे बैटरी में सेल डलता है ना, फिर घड़ी भी चलती है, माइक भी चलते हैं, बिजली चल लगाते हैं तो लैपटॉप चलने लग जाते हैं। मुझे आपको जो चीज ले ले के भगाएगी कल क्या अल्लाह के रस्तों में, वो ईमान है। और आज हम इस ईमान को पैदा किए बगैर काम शुरू तो करते हैं, और थोड़ा सा चल के रुक जाते हैं, कहते हैं हालात नासाजगार नहीं रहे, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। कोशिश तो की थी, शुरू तो किया था कोर्स, लेकिन चल नहीं सके, आगे जाएंगे। तो आज इस वक्त अपने लिए ईमान मांग लीजिए, वो ईमान जो आपको मुझे अल्लाह के रास्तों में भगाने के लिए तैयार करते हैं। अब एक और दौर, अब बिल्कुल मुझे तो बस रोना ही आता है इनकी कहानियां पढ़ पढ़ के, कि वो यूसुफ के भाई जिन्होंने यूसुफ को जेल कुएं में डाल दिया, कितने थे नाहन उस्बा, हम बड़े हैं, ये यूसुफ बेकार बच्चा, बिन माँ का बच्चा, पता नहीं क्या हो गया, हमारे अब्बा को इसी से प्यार करते रहते हैं। अब जरा सुनिए, जज्बों के साथ सुनिए इन आयतों को, कि कल तक वो भाई जो इतने मगरूर थे, आज यूसुफ के सामने किस रूप में आ रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ कहत फैल गया, कहानी थोड़ी सी इसमें एक वो कहना चाहिए कि स्लंप है, तो उसको फिल कर देती हूँ कि वाकई ऐसे ही हुआ, जो ख्वाब बादशाह ने देखा था वो सच हुआ, पूरी दुनिया में और इर्द गिर्द में जो भी मिस्र के इलाके थे वहां कहत हुआ, मिस्र में भी हुआ। यूसुफ अलैहि सलाम ने इतने अच्छे तरीके से प्लानिंग की कि थोड़ा सा हिस्सा खाते, लोगों के लिए अवेलेबल करते, बाकी ऐसे ही खुशियों में बंद कर देते, अब क्या जब कहत आया तो सब इर्द गिर्द के लोगों में कहता बात फैल गई कि मिस्र में अभी भी अनाज है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी देते हैं। तो लोग दूसरों के पास से आने लगे। आप सोचिए ना, मिस्र मुल्क बन गया, बड़ा एक सुपर पावर बन गई है, और दूसरे लोग उनसे माल लेने आ रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कानून बना दिया कि जो भी आएगा उसको पर हेड के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि सबको दिया जाए। अच्छा, ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं, मोनोपोलीज क्या करते हैं, और सैंक्शंस लगा दो, एक की चीज चार पे बेचो महंगी। यही तो होती है फ्रातेजार, और जो दौलत को जमा कर लेते हैं। यूसुफ ने फौरन फ्री कर दिया, कहने लगे इन गरीब मुल्कों का हाल क्या है, ये बेचारे कहाँ से खाएंगे। तो अब ये बात होते होते कनान में पहुंच गई। कनान में उनके भाई खानदान वाले थे, उनको पता चला कि मिस्र में कोई बादशाह है, वो बड़ा रहम दिल है, तो वो लोगों को अनाज देते। अब सारी कहानी आ गई, इसी सोच के साथ सुनिएगा। यूसुफ के भाई मिस्र आए और इनके हाँ हाजिर हुए, इसने इनको पहचान लिया मगर वो इससे नाचना थे। यूसुफ ने कैसे पहचान लिया, इब तक फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, वो लोगों को पहचान लेता है। गैब नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अंदर की आंख खोलता है। याद रखिए, तकवा अंदर की आंख है। मैंने जुमला बहुत दफा बोला हुआ है, तीसरी आंख है तकवा। ये दो तो मेरी आपकी देख रहे हैं ना, हम एक दूसरे की, इससे हम दुनिया की चीजों को देखते हैं, तकवा के साथ आप लोगों की असल देखते हैं। और वैसे भी वो इतने थे, अब यूसुफ को बेवकूफ तो नहीं थे, वो क्यों ना पहचान सके, नाच ना क्यों थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो भाई जिसको हमने कुएं में डाला, जिसको हम चाह रहे थे कि हमारे रास्ते का कांटा हट जाए, बादशाह बन के हमें दिखेगा। वल्लाह ही जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं। आपके मुखालिफ, आपकी दुश्मनी करने वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते कि आपका रब आपको क्या दे सकता है। शर्त एक है कि मुहसिन बन जाए, और वो वाकई नहीं पहचान सके, क्योंकि यूसुफ ग्रोन अप हो चुके थे, बड़े थे, और वैसे भी देखिए हाल हुलिये से, कपड़े लत्ते से छकलें बदल जाती हैं। उन्होंने तो एक बच्चे को कमीज उतार कर कुएं में फेंका था, नंगा देखा होगा, और इधर वो शाही ताज पहने, और जो भी उस दौर का प्रोटोकॉल था वो कैसे पहचानते। खैर, फिर जब इसने उनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त उन्होंने कहा अपने सौतेले भाई को हमारे पास ले आना। अब यूसुफ का दिल था कि मैं इधर इतनी आराम में हूं, तो मेरा बेचारा भाई बिन्यामीन उसका नाम था, वो क्यों गुर्बत में पले, तो कहा उसको लेकर आना। देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम इसे न लाओगे तो मेरे पास कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद इसको भेजने पर राजी हो जाए, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के इवज में जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान में रख दो। क्यों दे रहे थे, मोहसिन जो थे कि आप जो थोड़ा बहुत एक पैसा रखा भी हुआ था उसके माल का, तो कहा वापस कर दे, एक तो एहसान कर दो, और दूसरा ये था कि शायद ये पैसे देकर वापस करने आ जाए। यानी यूसुफ हर तौर पर ये चाहते थे कि ये भाई अब दोबारा वापिस जरूर आए। ये भी एक हिकमत थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर जब वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे, ये इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे तो अजब नहीं कि फिर पलटे। जब अपने बाप के पास गए तो कहा अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया। देखिए नेगेटिव सोच वाले पहले बुरी बात करेंगे फिर अच्छी करेंगे, ये नहीं कह रहे कि आज गल्ला मिल गया। कुछ लोगों की सोच ही उल्टी होती है। देखिए आप वही जो मिसाल आपने ली ना कि आधा ग्लास पानी हो तो आपको कोई दिखाए क्या है, कुछ लोग कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है और कुछ कहेंगे आधा खाली है। हालांकि जो अक्लमंद है वो क्या कहेंगे, शुक्र है कि आधा खाली है ताकि मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। बिल्कुल यही बात है, ये नेगेटिव आते ही बुरी बात की। जैसे कुछ बीवियां भी अल्लाह उनको हिदायत दे और मुझे भी दे, आते ही शोहर को पहले बुरी बात सुनाएंगी फिर अच्छी बात करेंगी। किसी की तारीफ भी करनी है ना तो वो बाद में छुपा के हल्की सी आवाज से, और तनकीद और गुस्सा तो पहले, शिकायतें तो ऊंची ऊंची। तो इन्होंने आके पहले बुरी बात की, अच्छी बात अभी बाद में करेंगे। क्या कहा, फरसिल माना खाना, बस आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इस मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका हूं। ये है ट्रस्ट खो देना। इतने साल गुजर गए थे, बाप को याद था, कहा अच्छा अब एक और भाई लेके जाना चाह रहे हो, पहले के साथ क्या किया था। अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा इनका माल भी इनको वापस कर दिया गया, यानी यूसुफ की तदबीर कामयाब हो गई। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमको वापस दे दिया गया। अब बस अब हम जाएंगे और अपने अहले याल के लिए रसद लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे, और एक ऊंट भरकर सामान और ज्यादा ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। हदीस में आता है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। एक दफा चोट खाए हुए थे ना, तब तो दोबारा वो तजुर्बा नहीं करना चाहते थे। हाँ, मगर एक शर्त पे भेज सकता हूँ, वो क्या, जब तक तुम अल्लाह के नाम से मुझको कोई पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस ले आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ। एक नबी का बिलीफ है, कोशिश पूरी करो, इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ, बाकी फिर उसके बाद जो अल्लाह चाहे होगा तो वही। खैर, जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो मेरे इस कॉल पर अल्लाह ने के बाना है। उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुसल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो वो इसी पर करे। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाजों से दाखिल हुए तो इसकी ये तदबीर किसी काम ना सकी। तो इसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम ना सकी। लेकिन यहाँ एक दरवाजे से दाखिल ना होने की वजह क्या थी? एक तो ये था कि नजरें बद ना लगे। यूसुफ के भाई थे, खूबसूरत तो होंगे, और माशाल्लाह इतने चौड़े चकले देहात के पले हुए जवान इकट्ठे आए तो नजर तो लगती है। तो यहाँ से थोड़ा सा नजरें बद पे भी इशारा मिलता है। चीजों को बहुत ज्यादा खोल के नहीं रखना चाहिए, नेमतों को देखें, और अगर किसी की कोई चीज अच्छी लगे तो क्या कहें, माशाल्लाह बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, फिर नजर नहीं लगती। और हम किसी की अच्छी चीज देख के क्या कहते हैं, वाह हाय, हाँ ऐसे जुमले ना बोले, इससे अगले की भी नेमत को डर होता है नुकसान का। किसी का बच्चा देखा कहिए माशाल्लाह, हम क्या आगे से बोलने लगते हैं तारीफें अम्मा पे अब्बा पे, खूबसूरत हो तो कहते हैं ननिहाल पे गया, और जरा काला हो तो कहते दादी लगता है, अब क्या हुआ है? तो ये आपका मेरा अपना अंदाजा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माशाल्लाह कहें। अल्लाह के नबी ने तो दुआएं भी सिखाई हैं बच्चे को देखने की भी, कोई अच्छी चीज देखे तो माशाल्लाह कहिए और बरकत की दुआ दीजिए। खैर, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिश तो की लेकिन वो काम ना सकी। हाँ, बस यूसुफ के दिल में जो एक खटक थी इसे दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी तालीम से साहिब इल्म थे, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को नहीं जानते। यानी याकूब अलैहिस्सलाम का ये अमल वाकई एक नबी बाप ही कर सकते हैं, आम लोग तो इस तरह का काम नहीं कर सकते। चलिए, अब दूसरी बार भाई पहुंचते हैं यूसुफ के पास। अब गिनते जाइए इनके ट्रिप्स। पहली दफा आए, यूसुफ ने अनाज दिया, कहा भाई को लेकर आना, अब भाई को लेकर आ रहे हैं। ये लोग यूसुफ के हजूर पहुंचे तो इसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और इसको बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खो गया था, अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते हैं। कैसा जज्बाती वक्त होगा जब दो भाई इतने सालों बाद मिले, और भाई भी ऐसे कि जो दोनों सगे थे। लेकिन यूसुफ ने उनको क्या कहा, जुमला नोट कर लीजिए, फला तब तैस, गम ना करो। हम होते हम कहते सुना और क्या कहती है बहू, और सुनाओ इनके मिजाज ठीक है? इतने सालों बाद माँ बेटी मिले, बाप भाई मिले, बहन बहन मिले तो क्या बातें करते हैं। पहले तो इतने साल बाद बुराइयां करते थे जब पाकिस्तान जाते थे हर गर्मियों की गर्मियां, लेकिन अब तो माशाल्लाह स्काइप व्हाट्सएप सारी इतने रोज की रोज हो जाती हैं। जाके करेंगे क्या भाई, अम्मा रोज की इबत तो मैं कर ही लेती हूँ, मुझे क्यों पाकिस्तान बुला रही है ऐसा मामला। यहां से एक बात नोट कीजिए, कभी अपनों के साथ भी इस तरह की बातें शेयर ना करें जिसमें किसी की बुराई हो। माँ क्या करेगी आपकी बात सुनकर? आप अपनी माँ को कहते हैं, अम्मा मैं बड़ी दुखी हूं इस घर में, क्या करेगी माँ? आ सकती है आपके पास, और आएगी तो आपको साथ ले जाएगी तो मसला बिगड़ेगा कि नहीं? बाप को कहते हैं, मैं क्या बताऊं मियाँ ने कैसे रखा हुआ, क्या करेगा? अब्बा जी ने ऐसा गुस्सा दिखाना है कि आपको उठा के ले जाना है कि रखो अपने घर, अपने आप को, मैं अपनी बेटी लेके जा रहा हूँ, फिर आप रोएंगी। आप अपने भाइयों से अपने शौहर की बुराई करती हैं, कभी आपके भाई आपके शौहर की इज्जत करेंगे? तो अकलमंद बच्चियां वो होती हैं जो कभी अपने घर अपने ससुराल की बुराई अपने महके से नहीं करती, कभी नहीं करें। एक से कीजिए ना, काफी नहीं है? जो दिल भी बदल सकता है, जो हालात भी बदल सकता है, वो अल्लाह की जात है। जितनी गिबतें करनी है अल्लाह से कर लें, गिले शिकवे इल्जाम, यकीन करें लोग मट्टी के माधु हैं। आप अपने घर में कुछ मट्टी के खिलौने रख के देख लें, बातें करें उनसे, फिर बाद में देखेंगे वहीं बैठे होंगे, कुछ फायदा नहीं होता। लोगों को उनकी जगह पे रखें। हम लोगों को इतना बड़ा बना लेते हैं देव, पर कहते हैं हमारी बात ही नहीं करते, फिर हम नाराज होते हैं। भाई आप क्यों नाराज हैं, उस गरीब के बस में था ही नहीं। तो हमेशा अल्लाह के साथ ताल्लुक रखें, किसी के दुख सुख के नाम पर भी बातें करें। हम ये तो कभी नहीं कहते आओ गीतें करें, हम क्या कहते हैं दुख सुख, सच ही तो कह रही हूँ, झूठ तो नहीं कह रही। सच भी नहीं बोलना, बस अल्लाह को पसंद ही नहीं ऐसे लोग जो दूसरों की बुराइयां करें। हाँ अगर सच है, हक लेना है, तरीके से बात करनी है, ऐसी जगह बात कीजिए जहां से बात का फायदा हो सके। खैर फलम्मा जख्खज़हुम, अब दूसरी दफा भाई रुख्सत हो रहे हैं। जब यूसुफ ने इन भाइयों का सामान लदवाया, जब यूसुफ इन भाइयों का सामान लदवाने लगे तो इन्होंने अपने भाई के सामान में एक प्याला रख दिया, प्यार से रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा कि बादशाह का प्याला हमको नहीं मिलता, बादशाह का प्याला हमको नहीं मिलता। यानी यूसुफ ने दिया था तो अपने साथियों को नहीं बताया, तो उनको लगा कि वो प्याला चोरी हो गया, हालांकि चोरी नहीं हुआ था। खैर अब क्या हुआ, अब जाहिर हालात कुछ और दिख रहे हैं, असल में कुछ और है। खैर उन्होंने उन्होंने सॉरी नफ्ती दुसुआल मलिक, कहने लगे कि बादशाह का प्याला हमको नहीं मिलता। और वो जो वहां काम करने वाले थे ना, वर्कर्स कह लीजिए, वर्करों ने इस बात को पुकारा, जो शख्स लाकर दे उसके लिए एक शुतरबार यानी एक ऊंट के बराबर का गल्ला मिलेगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम तुम लोग खूब जानते हो कि हम लोग इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, इसकी सजा जिसके सामान में से वो चीज निकले वो आपकी सजा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी थैलियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की थैली से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह ने यूसुफ की ताईद की अपनी तदबीर से। यहाँ इस मामले में जो आपके जहन में अब गुत्थियां चल रही हैं उसका जवाब है, क्या हुआ, किसने किसका प्याला चोरी किया, यूसुफ ने रखा, फिर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ को एक तरीका सिखाया। इसकी डिटेल सुनना चाहें तो जाके डिटेल में सुन लीजिए, यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि बहुत दफा सरकमस्टांसेस जो शो हो रहे होते हैं ना वो नहीं होते, हालात बाजार जो दिखते हैं ना वो नहीं होते। बेसिकली अल्लाह ताला ने बिन्यामीन के उस मुल्क में रहने का एक बहाना बना दिया। और यहाँ इस्लामिक लॉज और नॉन मुस्लिम लॉज का भी टकराव है। यूसुफ ने हजरत इब्राहिम के दीन की शरीयत को नाफिज करना चाहा मिस्र में, आज हम गैरों के मुल्क में आकर अपने कानून भी मनवाने तो कहाँ, अपने मुल्कों में नहीं मनवाते। ये एक साइड का नुकता, जिनको समझ आ गया उनको आ गया, लेकिन बहरहाल बिन जामीन को आप यूसुफ के पास रहना पड़ा। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, यानी मिस्र इजिप्शियन लॉ में ये नहीं था कि चोर की सजा ये है कि उसको 1 साल तक वहां रहना पड़े, लेकिन दीन इब्राहिमी में ऐसा था। इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, नरफो दराजात मन नशा, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा भी है। इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत आयत है, सोच देने वाली। वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। इल्म की कोई हद नहीं होती, कभी किसी के इल्म को आखिरी हद ना समझें, वरना आप भी एक कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि एक कुएं के शिकारी हो, एक कुएं में ही घूमने वाले होंगे। इल्म के बहुत बड़े रंग हैं। दुनिया में अल्लाह ने बहुत लोगों को इल्म दिया, और सबसे बड़ी ज़ात तो अलीम की है जो अल्लाह ताला है। قالوا يسرق فقط سرقا خلقه من قبل, इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका। ये है सौतेलापन, दिल में बुगज था ना। यूसुफ के सामने बैठकर कह रहे हैं हाँ इसके भाई ने भी चोरी, भाई इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा जी जाहिल लोगों की बात होती है, जरा किसी की कोई खराबी देखी, किसी से काम खराब हो, कहने इसकी माँ भी ऐसी थी, इसका बाप भी ऐसा था, तो ये जहालत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गए। हम होते तो क्या करते, फौरन अपनी असल दिखाते, इधर आओ मुझे चोर कह रहे हो, क्या चोरी किया तुम्हारा मैंने। लेकिन यूसुफ का सब्र, हिल्म, मोहसिन होना उनको रोक रहा हर जगह। पी गए, कह तो जो कहना, हम कहते मेरे तो सर से पांव में आग लग गई, फिर आप खुद ही एक अंगारा बन गए। क्या हुआ अगर किसी ने आपको चोर कह दिया, कह दो, लोग आपको कहते हैं आप धोखेबाज हैं, कह दीजिए, लोग आपको मुनाफिक कहते हैं कह दीजिए, लोग आपको मुनाफिक कहते हैं कह दीजिए, फिर क्या हुआ? जरा चेक कर ले जाए आप हैं कि नहीं, अपने दामन में झांकिए, बस खत्म। और ये कब लोगों की बातों में गुस्से में आता है, जब लोगों को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो ये सूरत आपके दिल से लोगों के बुत भी तोड़ रही है कि लोगों की बातों को इतनी अहमियत ना दे। और एक खुश रहने का राज आपको बताऊं, बहुत लोगों को बताया और माशाल्लाह वो जिसको कहने जी कि मुजरब नुस्खा, हर बंदे की बात को उतनी अहमियत दे जितना वो आपके लिए अहम है। बस हर बंदे की बात सोच के आप सुनने लग गए, डिप्रेशन में चले गए, दुख में चले गए, तकलीफ में आ गए, तो क्या होगा? शौहर की बात की जो अहमियत है, क्या देवर की बात की भी वो अहमियत है? नहीं हो सकती। आपकी मां आपसे नाराज है, तो अगर आपकी कोई दूर की रिश्तेदार भी उसी तरह नाराज हो गई तो क्या एक अहमियत है? नहीं है। तो आप लोगों की बातों को यहां से उठा के ना वहां फेंक दिया करें कि सॉरी मैं इस वक्त तो ये नहीं सोच सकती, बाद में सोचूंगी, अभी मैं बहुत मसरूफ हूं। खुश रहेंगे? हमें एक बात सुन के सारा दिन जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। कहते मैं नमाज भी कोई नहीं पढ़ी आज, जाते हुए डांट के क्यों गए थे? मैं आपके सिरे चढ़ के आग में जाऊंगी। तो जाइए, वो तो कुछ नहीं आपको बचा सकेंगे। तो खुदा के लिए लोगों के शहर से निकलिए, उस रब से नजरें जोड़ लगाइए, उस रब पे नजरें लगाइए जिसके हाथ में सब कुछ है। यूसुफ ने हकीकत ना खोली, बस जेरे लब इतना कहकर रह गए, जेरे लब अंतुम शर्रु मकान, कितने बुरे लोग हो तुम, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इसकी हकीकत अल्लाह ताला खूब जानता है। अच्छा, अभी भाइयों ने क्या कहा? यूसुफ को दरपरदा चोर कह दिया, और अब मुंह से क्या बोल रहे हैं? कालू या अय्युहल अजीज, मुंह से क्या कह रहे हैं? ए सरदार, जी इक्तदार। आज भी इंसान ऐसे झूठ बोलते हैं, दिलों में आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, कोई इज्जत नहीं करते आपकी, और आपके मुंह के ऊपर आकर इज्जत की बातें, प्यार की बातें, और न जाने क्या कुछ। तो ये भी मुनाफ़िक़त है। क्या कहा? इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इसकी जगह आप हम में से किसी एक को रख लीजिए। भेड़िए को क्यों नहीं कहा कि हम में से किसी एक को खा ले? उस वक्त तो यूसुफ को छोड़ के आ गए, कहता बाप बूढ़े नहीं थे। लेकिन अब ये नहीं छोड़ना चाहते ना बिन्यामीन को, तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भाई जो वो साथ जाए। हम आपको बड़ा ही नेक नफीस इंसान पाते हैं। कौन कह रहा? जिनके दिलों में दुश्मनी थी। किसको कह रहे हैं? जिसको कुएं में डाला। तो याद रखिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपके दुश्मन आपको एक दिन अच्छा जरूर कहेंगे। यूसुफ ने कहा, पनाह बा खुदा, दूसरे किसी ऐसे शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है? इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे। यानी यूसुफ ने उनकी इस ऑप्शन को कबूल ना किया। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे अल्लाह के नाम पर कैदो पैमान ले चुके हैं। देखिए, ये भाई मुसलमान थे लेकिन बिगड़ गए थे, फिर बाद में अल्लाह ने इस्लाह भी कर दी। और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें, या फिर अल्लाह ही हमारे हक में कोई फैसला फरमा दे। वो सबसे ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो, अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है। बहुत दिख रहा लफ्जों में, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम है हम बस वही बयान कर रहे हैं। और गैब का हाल, सॉरी, और गैब की निगेबानी तो हम ना कर सकते थे। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, इस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। हर बात से लग रहा है ना कि सच्चे हैं, वाकई सच्चे हैं। पहले क्यों नहीं इतने उजर दिए? तब तो सारा दिन इंतजार करते रहे, रात हुई तो रात को रोते हुए अब्बा जी के पास गए कि आपके बेटे को तो भेड़िया खा गया। दिन में भी ना गए क्योंकि फेस एक्सप्रेशन ना खुल जाए, अंधेरा बहुत सारी चीजों को छुपाता है। तब झूठे थे, आज सच्चे हैं। तो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर भी मैं सबर करूंगा और बहू भी सबर करूंगा। क्या बईद के अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए? वो सब कुछ जानता है और इसके सब काम हिकमत पर मबनी है। सुभानअल्लाह, कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई अभी भी याद है। गया बिन्यामीन और जिक्र यूसुफ का आ गया। अब सबको लाएगा, किसको? यूसुफ को भी लाएगा, बिन्यामीन को भी लाएगा, और एक बड़ा जो खुद वहां रह गया रह गया। हदीस में आता है कि जब तक किसी की कोई चीज खोई रहती है उसको उस वक्त तक उसका अजर मिलता रहता है। अगर कभी कोई चीज चोरी हुई हो ना तो इन्ना लीला पढ़े, अल्लाह अजिरनी फी मुसीबती वाखलुफली खैर मिन्हा पढ़े। अल्लाह चाहेगा तो चीज भी मिल जाएगी, ना भी मिली तो अजर मिलेगा। तो दिल चाहेगा ना कि चीजें चोरी हों और हम सब्र करें। आप सोचिए कि याकूब का अजर कितने सालों का था? 40 साल तक एक बेटा खोया रहा, सब्र सब्र, फिर दूसरा चला गया, फिर तीसरा, अल्लाह हुक्म। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी खूबसूरत सब्र दे। और दुआ क्या करते हैं, लोगों को नहीं सुनाते बल्कि क्या कहा, मैं तो सब्र ही करूंगा और इस बहुत अच्छा सब्र करूंगा, उम्मीद है। और हदीस में आता है कि मुश्किल हालात में मोमिन हमेशा पुर उम्मीद होता है। इंतजार उल फर्जी मिन खैर अल इबादा औ कमा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। हदीस का खुलासा है, बुरे दिनों में अच्छे वक्त का इंतजार बेहतरीन इबादत है। बीमार है, क्या हाल है, बस ठीक हो जाऊंगी, पहले से बेहतर हूँ, बस अब ठीक हो रही हूँ। भाई आपके हालात कैसे, नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बस अब मेरे मियाँ को जॉब मिल जाएगी। कारोबार कैसा है, नहीं अब ठीक होने वाला है। ये एटीट्यूड आपको इबादत की हालत में कर देता है। वाकई अब नोट करें, जिस वक्त हम शिकवे गिले नाराजगियां कर रहे होते हैं ना, वो वक्त हमारा अल्लाह को खुश करने का होता है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला इरादों को तोड़ता है। उन्होंने क्या इरादे किए, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। हजरत अली कहते हैं, मैंने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। तो अल्लाह ताला हमें ये सारा सब्र भी दे दे। ये तो थी वो जाहिर की बात कि अल्लाह उनको ले आएगा। हाँ हो सकता है कि वो सबको ले आए, लेकिन बात क्या है, अंदर दिल पे तो चोट पड़ी ना। देखिए पहली दफा का जख्म इतना नहीं दुखता, लेकिन जख्म वाले हाथ पे फिर हथौड़ा पड़ दे ना, फिर बड़ी चीख निकलती है। कभी बादाम तोड़ के देख ले, पहली चोट सह गए लेकिन अब दुखे दिल पे फिर चोट पड़ी तो अब देखिए क्या खूबसूरत दुआ मांगते हैं। वतवल्ला अन्हुम, मुंह फेर लिया उनसे, अब पीछे हो जाओ, छोड़ो मुझे शक्ल ना दिखाओ। तन्हाई में मोमिन अल्लाह की तरफ जाता है, काफिर लीकर शॉप की तरफ जाता है ना, तो मोमिन जिक्र शॉप की तरफ जाता है। जिंदगियों के दुख और सदमे भी अगर आपको अल्लाह की किताब की तरफ नहीं ला रहे तो फिर किस चीज का इंतजार है। अकेले में आगे सबको पीछे कर दिया और क्या किया, कहा हाय यूसुफ या आसफ अला यूसुफ। कोई मौत होती है ना तो पिछले मरे हुए भी सारे याद आ जाते हैं। मैं ये ताले घर में अब देखे लोग सारे मुर्दों को याद कर रहे थे, जिसको गड़े मुर्दे उखाड़ना, कमजोरी है हमारी इंसानों की, वो यहां लगता है हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटे जा रहे थे और इनकी आंखें सफेद पड़ गई थी। नबी और आंखें सफेद होगी रो रो के, जी इंसान थे लेकिन सब्र करना और बात है। अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हुआ, इब्राहिम उसका नाम था, तो आपने उसकी उसको देखा, तो आप रो रहे थे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, कहा आंखें भीग जाती हैं, आंखें तो दिल का बोझ कम करती हैं। और आपने क्या कहा, क्या इब्राहिम तेरी जुदाई पे हम बड़े उदास हैं, हमारी आंख रो रही है, लेकिन हम जुबान से यही कहेंगे कि हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं, रदी तो बिल्लाह रब्बन। और ये सच्चे अकीदे के बगैर नहीं आता, ये सब्र नहीं आ सकता दुखों तकलीफों पे। बेटों ने कहा खुदारा आप तो बस यूसुफ को याद किए जाएंगे। अभी भी हसद है यूसुफ में, यूसुफ का हसद अभी भी मौजूद है। क्या सोचा था, यूसुफ को दूर कर देंगे तो बेबाप की मोहब्बत मिल जाएगी, मिली नहीं मिलती। दूसरों की मोहब्बतें छीनने वालों को कभी मोहब्बत नहीं मिलती। और बल्कि यूसुफ तब आंखों में भी आ गए हैं, दिल में तो पहले थे, नौबत से आ गई है किसके हम में, आप अपने आप को घुला लेंगे या अपनी जान को हलाक कर लेंगे। काइन नमाश को बस्ती व हुस्नी अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह के सामने रखूंगा और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। ये है मोमिन का ताल्लुक बिल्ला, मैं अपने रब को जानती हूँ, आप थोड़ी जानेंगी। जिससे भी प्यार होता है ना, आप कहते हैं मैं जानती हूँ इनकी तबीयत कैसी है, मेरे शौहर है ना मुझे पता है ये क्या सोचते हैं, ये मेरा बच्चा है मुझे पता क्या। अल्लाह से प्यार करने वालों को अल्लाह की मर्जी समझ आने लगती है। मेरे बच्चों जाकर यूसुफ और इसके भाई की कुछ टोह लगा लो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा अकीदा है। बसी बस है, बस कहते हैं वो गम जिसको छुपाना चाहे छुपे ना। कभी ऐसा दुख लग जाता है कि आप चाहें भी तो आपकी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। ऐसी चोट दिल पे पड़ती है, रंग लाल हो जाता है। लोग कहते हैं कोई बात है, आप मुझसे छुपा रही हैं, मुझे बताएं क्या। वही अंदाज है इधर भी, अल्लाह ने यूसुफ पे सब्र दिया, अब इस बेटे के की चोट पे ऐसे लग रहा है कि वो गम छुप नहीं रहा। लेकिन फिर भी कहा जाओ तदबीर करो, रहमत से ना उम्मीद नहीं होना और बड़ी से बड़ी तकलीफ आपको भी अल्लाह से मायूस ना करें। अब खैर तीसरी दफा भाई फिर जाते हैं यूसुफ के पास। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, सरदार बा इक्तदार, हम और हमारे अहले याल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी ले आए, यानी कहत है कि बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करें, हकीर सी पूंजी ले आए, आप हमें भरपूर गल्ला नायत फरमाएं और हमको खैरात ही दे दें, अल्लाह के नाम पे कुछ दें। वो जुमले याद है आपको, नहनु उस्बा वाले, कल तक तकबर कितना था, बड़े कितने थे, आज खैरात मांगने पे आ गए, और अल्लाह खैरात करने वालों को जजा देता है। अब ये बात कैसे यूसुफ जैसा नरम दिल शख्स बर्दाश्त करता कि मेरे भाई भीख मांगने पे आ गए। ये सुनकर यूसुफ से ना रहा गया, उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? हाँ, मगर जबकि तुम नादान थे। वो चौंक कर बोले, हैं तुम यूसुफ हो, क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। قد من الله علينا, बस बेशक एहसान किया अल्लाह ने हम पर, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, हाँ जो कि तकवा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर जाया नहीं होता। ड्रॉप सी, यूसुफ ने अपनी असल खोल दी। उन्होंने कहा, बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। इस हिस्से को हाईलाइट कीजिएगा, लकद आसरक अल्लाह अलैना, वाकई भाई मान गए कि यूसुफ ही सच्चे थे, अल्लाह ने यूसुफ को इतनी इज्जत दे दी तो हम कहाँ भी सच्चे होंगे। ये है वो सबर का फल जिसको कहते हैं मीठा, आता बड़ी देर से लेकिन होता बड़ा मीठा है। आम भी क्या मीठे होंगे जिस सबर की मिठास होती है। देखिए, मन वाला कभी नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा करने वालों का भी बुरा हो, लेकिन सुकून तो मिलता है जब एक शख्स को अपनी कुर्बानियों का सिला मिलता है और दुश्मनों के मुंह से तारीफ मिलती है। ये इंसान की कमजोरी है। लेकिन यूसुफ ने देखिए उनको शर्मिंदा नहीं किया, कहा नहीं नहीं तुम जाहिल थे ना, कोई बात नहीं, ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। यूसुफ का जवाब सुनिए, जवाब दी, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर अहम फरमाने वाला है। यही जुमले अल्लाह के नबी ने बोले थे फतेह मक्का के मौके पे, और यही आप भी बोला करें जब कभी आपकी भी बेगुनाही साबित हो जाए किसी आपके रिश्तेदार के आगे, फिर वाम साहब के लाख के लगाते हैं, देखा ना मैं कितनी अच्छी थी, फिर अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, नहीं लगा दरक अल्लाह, ये अल्लाह करता है, शर्त एक है कि आप अल्लाह पे राजी तो हो। देखिए, बुरे से बुरे हालात में भी आप खुश रहें, राजी रहें, अपने गम को छुपाएं, शिकवे ना करें, तो फिर देखिए अल्लाह आपकी कैसी मदद करता है। अब खुद ही तरीका सिखाते हैं, जाओ ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे बाप के मुंह पर डाल दो, उनकी बेनाई पलट आएगी, और फिर अपने सब अहलो याल को मेरे पास ले आओ। अब बाप को मिलना चाहते हैं। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, अब ये घर के लोग कौन थे? वही बेटे जो मिस्र गए, उनकी बीवियां और उनके बच्चे। नोट कीजिएगा, जैसे बेटे अपने माँ बाप के सामने बोलते हैं ना, इसी तरह फिर उनकी बीवियां भी एक वक्त आता बोलने लग जाती हैं, और फिर पोते पोतियां भी। तो हमेशा सोच के बोलिए, क्यों? इसलिए कि आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं आप क्या कर रहे हैं। एक बच्चा था तो उसने देखा कि उसका बाप है और घर में दादा भी है, छोटा सा कमरा, तो उस बच्चे में दादा को उस कमरे में रखा जाता है, फिर वहां एक पतला पुराना सा कंबल था जो दादा ओढ़ते थे। कुछ अरसा बाद दादा बीमार रहे तो फिर वो फौत होने लगे। जब दादा फौत हुआ तो बच्चा उस कमरे में गया तो उस कंबल को उठा के लपेट के अपने कमरे में ले आया। तो बाप ने पूछा कि इस कंबल का तुम क्या करोगे? कहने लगा, मैं इसको अब अपनी अलमारी में संभाल दूंगा। कहा, क्या करोगे इस पुराने कंबल का, गंदे का? कहने लगा, अब्बा जब आप भी दादा जैसे हो जाएंगे तो मैं आपको इस कमरे में डालकर फिर ये कंबल भी तो दूंगा ना। याद रखिए, अच्छी बातें भी पलट के आती हैं और बुरी भी आती हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से ना बोले, क्योंकि हो सकता है कल आपके बच्चे भी फिर आपसे ऐसे ही बोलने लगे। घर के लोग बोले, खुदा की कसम, आप तो अपनी उसी पुरानी आप तो अपने पुराने खप्त में पड़े हुए हैं, बड़ों की इज्जत क्या करें। आप देखिए कि बड़ों की इज्जत जिसने नहीं की उसकी भी इज्जत नहीं होगी। माँ बाप के साथ बदतमीजी करके, चीख चिल्ला के, आगे बोलकर आपको इज्जत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, दौलत मिल सकती है, जन्नत नहीं मिलेगी। तो बाज दफा हम बहुत बड़े बन जाते हैं, इसलिए यहाँ बैठे बैठे दुआ करें हम सब कि अगर अभी कभी हमने अपने माँ बाप के आगे या बड़ों के आगे बदतमीजी की है तो अल्लाह हमें माफ कर दे। और माँ बाप ही की जगह पे कौन आता है? ससुराल भी आते हैं। आपके माँ बाप हो या आपके कौन शौहर के माँ बाप, कोई फर्क है? आप जो है वो आपके शौहर की वजह से ही है ना, तो लिहाजा कभी किसी बड़े बड़े से ना आए। और इसी में उस्ताद भी आते हैं। किसी ने कहा मेरे तीन बाप हैं, एक बाप, एक ससुर और एक मेरा उस्ताद। माँ बाप जमीन पे लेकर आते हैं आसमानों से, और उस्ताद जमीन से ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन आज के दौर में इसकी क्या बात करनी, लोग तो नाम लेते हैं, बुली करते हैं, इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के शायद अपने उस्तादों की के मुंह बनाते होंगे। तो आज बेअदब बेनसीब बा अदब बा नसीब की बात सामने आती है। अपने बच्चों को उनके उस्तादों का अदब सिखाइए। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ का कमीज याकूब के मुंह पर डाल दिया, और यकायक इनकी बेनाई वापस आ गई। तब इसने कहा मैं तुमसे कहता ना था, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। इसने कहा मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहम वाला। ये है अच्छे बाप का किरदार। कितना कुछ बेटों ने किया है लेकिन बाप ने उनको काटा नहीं है। ये जब हम कहते हैं ना मैं तुम्हें आग करता हूँ, जायदाद से अलग करता हूँ, और चीखते हैं और फिल्मों वाले डायलॉग बोलते हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हद से बिगड़ी हुई औलाद को भी कभी अपने से ना काटें, फिर तो पत्ता ही कट गया। हद से बिगड़ा हुआ इंसान कोई भी, आपके साथ ही, आपके साथ रहने वाले कोई बंदा हद से बिगड़ जाए आप साथ ना छोड़ें उसका। हम तो एक बात पे साथ छोड़ के पांव पटकते हैं ना, दोस्तों के साथ कभी ना छोड़ें। देखिए जिस दरख्त के नीचे एक दफा साए में बैठे हो ना, कभी उस दरख्त को ना भूलें। हम तो बात बात पे किस किस का साथ छोड़ते हैं, दोस्तियां भी बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, उस्ताद भी छोड़ते हैं, इदारे भी छोड़ते हैं, मस्जिदें भी छोड़ते हैं, जमातें भी छोड़ते हैं। नहीं, ये इंसान का ज़र्फ़ नहीं होता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ करने के बावजूद औलाद को क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए माफ़ी मांगूंगा। ये किया करें, अगर आपकी औलाद आपको दुखाती है ना, उसके लिए माफ़ी मांगे। और कब मांगे? सौफा, सहरियों के वक्त, तहज्जुद के वक्त में औलाद के लिए दुआ मांगे। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो इसने अपने वालदैन को अपने साथ बिठाया। ये नहीं कहा कि मैं तो बादशाह बन गया, आप जरा नीचे छोटी कुर्सी पे बैठे। साथ बिठाया, उनको इज्जत दी और क्या किया। और अब देखिएगा वो ख्वाब भी पूरा होने लगा। वकाला, और कहा, सब कुंबे वालों से कहा चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। यानी सबको वापस इधर ही बुला लिया मिस्र में। ये था वो सवाल का जवाब जो यहूद ने अल्लाह के नबी के जरिए से पूछवाया था कि ये मिस्र में कैसे आ गए थे बनी इसराइली, वो तो शाम में रहते थे। तो ये हजरत यूसुफ का एहसान था कि 70-80 के करीब अपने खानदान के लोग सबको बुला के वहीं रखवा दिया। शहर में दाखिल होने के बाद इसने अपने वालदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। ये कौन सा सजदा था? सजदे ताजीमी पिछली शरीयतों में जायज था, जैसे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, आज जायज नहीं है। आज कोई किसी इंसान के आगे अगर झुकेगा भी ना, रुकू में जाते हुए, या उसके पाओं को पकड़ेगा या सजदा करेगा, तो ये शिर्क होगा। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा अब्बा जान, ये ताबीर है उस ख्वाब की जो मैंने इससे पहले देखा था। अब हाँ पूरा हुआ। पहली कहानी आयत नंबर देखिए 90 के करीब पहुंचे हुए, शायद उससे भी आगे। आयत के नंबर के 90 100 100 आयतों के बाद ख्वाब की ताबीर आई है। हम कहते हैं रात को ख्वाब देखा सुबह पूरा हो जाए, का ये है मेरा ख्वाब जो मैंने देखा था, मेरे रब ने इसको हकीकत बना दिया। वकद अहसन भी अखरजनी, इसका एहसान है कि इसने मुझे जेल से निकाल दिया और तुम सबको जंगल से ले आया। देखिए भाई इनको शर्मिंदगी से बचा रहे, ये नहीं कह रहे कुएं का जिक्र ही कोई नहीं, कह रहे अल्लाह ने मुझे जेल से निकाल दिया। मोमिन हमेशा पॉजिटिव होता है, अच्छी बातें सोचें अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा चुका था, क्या पता चला कि भाई तो बुरे नहीं है, ये शैतान ने उनको बुरा बना दिया था। अल्लाह हो कर कौन इस जर्फ पे कुर्बान ना हो जाए। वाकया ये कि मेरा रब गैर मखसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। आप और अपने अंदर इसको ढूंढें, गैर मखसूस तरीकों से अल्लाह ताला आपको बेहतरियों में ला रहा है। आपको पता है ये जो आपको अल्लाह ने कुरान के लिए बिठा दिया है ना, ये गैर महसूस तरीके से अल्लाह आपको अपना कुर्ब दे रहा है। कुछ लोग तो देखिएगा यहाँ से ऐसे चमक के निकलेंगे कि वो खुद भी अपने आप को आईने में पहचान नहीं सकेंगे। जिंदगी का सिलसिला शुरू हो गया, फिर ये कोई डी क्यू थोड़ा रह गया, ये तो पूरी जिंदगी पे छाएगा। अल कुरान हयाती, और अल्लाह आपको मुझे कभी आज के बाद इस कुरान से दूर ना करें। बेशक वो अलीम और हकीम है। ऐ मेरे रब, तूने मुझको हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजाम कार मुझे सालेहीन के साथ मिला। सब कुछ मिल गया, देखिए जुदाई पूरी हुई, घर वाले मिल गए, अब याद आ गई वापसी। अब का अल्लाह तू मेरा दोस्त बन जा। यहाँ पे यूसुफ का किस्सा पूरा, और अब मोहम्मद सल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं, ज़ालिक मिन अंबाइल गैब नौही इलैक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम आपको वही कर रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त मौजूद भी ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तफाक करके साजिश की थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं। अल्लाह के नबी को बड़ी उम्मीद लग गई थी कि सूरत यूसुफ या हजरत यूसुफ का किस्सा सुनकर तो मक्का वाले आ ही जाएंगे आपके पास, नहीं आए। तासुब था दिल में, अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी। उसी का जिक्र है कि आप गम ना करें, हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं लेते, कोई फीस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ये मक्का वालों को क्या हो गया है? असल बात है कि इनको आना ही नहीं है। बड़ी से बड़ी घरेलू कहानियां सुना दो, ये नहीं आएंगे। इन हुआ इल्ला जिक्रुल आलमीन, ये एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। क्या कुरान जिक्रा है ये। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। तवज्जो की अपने दरख्तों पे। एक महीना पहले ये बंजर सूखी टहनियां थी, आज पत्तों से भरी पड़ी हैं। कभी गौर कीजिएगा इन पे। इसी तरह अल्लाह सूखी शाखों को हरा कर सकता है। मायूस ना हो, व्यवस्था रह, चदर से उम्मीद है बहार रख। आज उम्मत होने के नाते हमें भी उम्मीद रखनी है, जुड़े रहें, इत्तहाद रखें, इंशाल्लाह इस दीन के पौधे पे बहार आएगी। इनमें से अक्सर लोग अल्लाह को मानते हैं, कैसे? मगर इस तरह से कि वो साथ दूसरों को शरीक भी ठहराते हैं। शायद 15-20 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ये आयत पढ़ी थी तो मेरी आंखें खुल गई थी। ये आयत बताती है कि बहुत सारे लोग खुद को ईमान वाला कहने के बावजूद मुशरिक होते हैं। तो अपने ढके छुपे शिर को हम सब ने ढूंढना, अल्लाह ताला में हिदायत दे। अफामिन अंतातियहुम खाशियतु मिन अज़ाबिल्लाह, क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अजाब की कोई बला इनको दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क्यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आएगी? ये किसको डराया जा रहा है? मक्का वालों को। अल्लाह के नबी की जुबान से किस्सा यूसुफ सुन भी लिया फिर नहीं माने, उनकी तरफ इशारा है। तुम इनसे साफ कह दो, क्या कह दो? कुल हाजिही सबीली अदू इलल्लाह, ये मेरा रास्ता है, मैं तो अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी बुरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ये कॉन्फिडेंस हमें भी दे दे, सिर्फ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे वो सब भी इंसान थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि इन कौमों का अंजाम इनको नजर ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर इन लोगों के लिए है और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? हर एक अपने आप से पूछे, हत्ता यहाँ तक के क्या हुआ? पहले पैगंबरों के साथ यही होता रहा कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर न दिया, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया था, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंची। कितना सब्र था पैगंबरों का, हम तो आज बहुत थोड़े दिले हैं, फौरन मायूस हो जाते हैं। फिर जब ऐसा मौका आ जाता तो हमारा फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जाता। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये सच है। बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई इन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। सूरत यूसुफ पूरी हो गई, ये पता ही नहीं चला कि यूसुफ की जुलेखा से शादी हुई कि नहीं। ये तो पूरी सूरत में कहीं आया ही नहीं कि दुल्हन के चेहरे पर सूरत यूसुफ पढ़ के फूको, और ये तो आया ही नहीं कि प्रेग्नेंट औरत सूरत यूसुफ पढ़े ताकि बच्चा खूबसूरत हो। हमारे कल्चर में तो यही तीन चीजें मारूफ हैं। पूरी सूरत में जिस हुसन का जिक्र है वो बातनी हुसन है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे लगा दे। तिलावत थोड़ी सी सुनते हैं और साथ ही फिर इंशाल्लाह सूरत रात का इंट्रो लेंगे। अपनी फीलिंग्स लिखा करें और अगले दिन दिया करें। मैं पहली भी रखी हुई है, इनको बाहर के बोर्ड में लगा दीजिएगा ताकि बाकी साथी भी पढ़ सकें। اصل مزہ اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور ہم روئیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. سورت رات کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں. مکی سورت ہے, 43 یعنی 43 آیتیں. تین بنیادی ٹاپک ہیں سورت کے. رات بیسیکلی تھنڈر اسٹورم کو کہتے ہیں, جو بادل گرج ہے نا, اور فرشتے کا نام بھی رات ہے. پہلا ٹاپک آیت نمبر 1 سے 18, بہت اسٹرانگ صورت ہے, یعنی اتنی اسٹرانگ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج صرف ہم یہ بھی کریں گے تو کافی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمارے وقت میں برکت دے. عروج اور زوال کی کہانی ہے. آیت نمبر 1 سے 18 تک قرآن پاک کی دعوت ہے, توحید اور آخرت حق ہے, اس مضمون کو بیان کیا گیا. آیت نمبر 19 سے 29 میں اہل توحید عقل مند اور اہل شرک بے وقوف ہیں, یہ مضمون اس میں بیان ہوگا. اور آیت نمبر 30 سے 43 میں اہل ایمان کا انجام اچھا ہوگا. پوری سورت کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور و فکر کروایا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے دین پہ عمل کریں گے وہ عقل مند ہیں, اور جو توحید کا اور اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں. حق اور باطل کی کشمکش ہے, دونوں کا کردار چونکہ فرق ہے تو دونوں کا انجام بھی فرق ہوگا. آپ کی صورت میں بہت اسٹرانگ آیتیں ملیں گی کہ کس طرح دنیا میں حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے. کچھ لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن اصل میں وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اس مقصد کو, اللہ تعالیٰ کے اس پلان کو پورا کرنے والے ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تھا. آئیے دیکھتے ہیں, دل پہ لینے والی صورت ہے, بہت ہلکی پھلکی بھی ہے, لیکن اس کو پڑھنے کے دوران بہت دل میں ارادے بھی آتے ہیں. آپ کو یہی کہوں گی کہ جو بھی بات سن لیں گے, سننے کے دوران اگر دل میں کوئی نیت آئی تو اس کو لکھ لیں, تاکہ بعد میں اگر آپ بھول جائیں تو آپ خود بھی یاد رکھ سکیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیتیں ہیں. کون سی کتاب؟ قرآن. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو کچھ آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ عین حق ہے, مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کے نبی کو کتنا صدمہ تھا اس بات کا, اتنا پیارا حق لوگ نہیں مانتے. آپ سچ بتائیے, جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ یاد آتے ہیں اپنے, جو بغیر کسی مجبوری کے نہیں سنتے؟ تڑپتا دل, بس اس تڑپ سے آپ اللہ کے نبی کی تڑپ کو تو محسوس کریں. کیوں آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں, جو مجھے پتا, اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم بستروں کو چھوڑ دو. تو سچا دین جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کو تڑپنے والا بنا دیتا ہے. کس رب کا یہ کلام ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. کبھی آسمان کے پلر دیکھے, والس دیکھی؟ بغیر ہی آمد ان ترونا, تو جیسے یہ آسمان بغیر سہاروں کے قائم ہے نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو تھامے ہوئے ہیں. پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا, اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند کر دیا. دعا کریں ہم بھی پابند ہو جائیں. سورج چاند ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے کائنات میں ڈسپلن ہے اور کیسے وقت کا خیال ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. کل یجری لاجل مسمى, اس سارے نظام کی ہر ایک چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے, اور اللہ ہی اس کے سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یہ کیسے؟ देखिए हर दिन में से रात आती है, रात में से दिन आता है, इसी तरह एक दिन होगा हम अपने रब के सामने खड़े होंगे। कभी किसी चीज का इंतजार हो तो आ ही जाती है ना बिलाखिर। 6 माह बाद भी अगर कोई शादी आनी थी आ जाएगी। ईद, बचपन में हमें ईद का बड़ा शौक होता था, पहले रोजे से ईद गिनते थे, एक रोजा दूसरा, फिर मुझे अच्छी तरह याद है ईद वाले दिन हम सोचते थे हाय ईद आ गई, हाय आधा दिन गुजर गया, हाय जल्दी से जा रहा है। तो जब इंतजार लगता है तो आ जाता है ना। तो जरा एक लम्हे के लिए खुद को यकीन दिलाएं कि एक दिन क्यामत आ जाएगी। चले क्यामत के मरहले तो खतरनाक है, लेकिन रब से मुलाकात होगी। सोच के दिल खुश हो जाए आपका मेरा कि मैं अपने रब से मिलूंगी। अल्लाह ताला इतने बीच में मरहले आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि मैंने आपसे मिलना है, मैं आपसे उदास हूं, मैं आपको मिस करती हूँ, है ये हमारी फीलिंग। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है और इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए और दरिया बहा दिए, इसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए, और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सूरत आपको गौर व फिक्र करना सिखा रही है, किस तरह अल्लाह ताला की इस कायनात पे गौर करें। व फिल अर्दि क़िताउन मुतजाविरातुन, और देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक से मिले जुले वाके होते हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां भी हैं, खजूर के दरख्त भी हैं, जिनमें एक एक तने वाले और कुछ दो तनों वाले हैं। सब कोई एक ही पानी से राब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बनाते हैं, किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। यहाँ जमीन की बात है, एंजॉय किया आपने, एक ही जमीन होती है, पानी एक ही है, लेकिन फल मुख्तलिफ उगते हैं। इसी तरह याद रखिए कि दिल भी ऐसे ही होते हैं। इस वक्त भी वही इलाही का पानी हम सबके दिलों पे पड़ रहा है। हम भी तो एक मुट्ठी भर खाक है ना। आपको तो जिस्म में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब मट्टी में होते हैं, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है और बाकी चीजें भी है। अब आप और मैं सब एक ही कुरान सुन रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आप में से मुख्तलिफ लोगों के दिलों पर इसका असर मुख्तलिफ हो रहा होगा। कुछ के अंदर बाकी बहुत जवार भाटे उठ रहे होंगे और किसी को के होगा कि सो के ठीक है, समझ नहीं आ रहा। किसी को नींद आ रही होगी, किसी की रातों की नींद उड़ रही होगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे फर्टाइल लैंड बना दे, जरखेज जमीन बना दे। किसी का मजा इतना मजे का होगा कि वो बाद में दूसरों को भी सराब करेगा और कुछ थोड़े दिन बाद खुद भी भूल जाएगा। यही सबक है इसमें मेरे आपके लिए। वही ताज फाजबुन कौलुहुम, बस है नबी, बस अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल तो लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले, इन पर अल्लाह की अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि आपका रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला। दोनों खूबियां पूरे जोश पे, उरूज पे हैं। आप भी अपने लिए इस पे कमल की बात लिखें, मैंने भी लोगों की गलतियों से ओवरलुक करना। देखिए माँ कितना भी रूठी हो ना, बच्चा सामने आ जाए तो माँ का दिल नरम हो जाता ना, तो वो तो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। कभी लोगों से नफरत ना करें। अच्छा चलिए यहाँ बैठे बैठे एक मुश्किल काम भी कर लें, किसी को माफ करें। सोचिए कोई किसी की बात दिल में थी, किसी ने आपके खिलाफ बात की, किसी ने कभी ताना दिया, आप दिल में लेके बैठे हुए हैं, किसी ने आपको नुकसान दिया जान का माल का, बैठ के कही अल्लाह तू भी तो फिर चश्मपोशी करता, मैं भी करती हूँ, फिर भूल जाए, फिर इधर ही फेंक दें, साथ ना लेकर जाएं कि फिर कभी जरूरत पड़ी तो पैक कर लेंगे। लोगों को माफ करने से आपका कम अज कम 10 किलो वजन कम होगा। मशीन ना भी बताए लेकिन आपका दिल आपको बताएगा। तो गंदगी का बोझ उठा उठा कर ना फिरें। कितने सेकंड, 3 सेकंड में तो नहीं सारे माफ होंगे, कितना वक्त चाहिए? जब कोई मरेगा ना फिर हम कहेंगे हाय मेरा भाई मुझसे इतने साल से नाराज था, हाय मेरी बहन मुझसे इतने साल से जुदा थी। फिर हम क्या फायदा, फिर क्या फायदा? आज माफ कर दीजिए, अल्लाह से अजर मिलेगा। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है। देखिए फीमेल का है, औरत नहीं का, यानी चींटी, बकरी, भैंस, हर फीमेल के पेट में क्या है अल्लाह को उसका पता, जो कुछ इसमें बनता है वो इसको भी जानता है, और जो कुछ इसमें कमी बेशी होती है इससे भी वो बाखबर रहता है। आपको पता है ये किस चीज के इशारे हैं? डिलीवरी बेन्स के। स्पिरुल जन्ना जिन्होंने सुना उनको याद आ रही होंगी बातें। किसके पेट में बच्चा है कि बच्ची है, लड़का है कि लड़की है, भैंस है कि भैंसा है, और लड़का है कि लड़की है, अल्लाह को पता है। कब दर्दें लगनी है, कब बच्चा पैदा होना है, अल्लाह कहता है मुझे पता है। डॉक्टर भी बेचारे मुंह देखते रहते हैं, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता, इतना बाखबर है आपका मेरा रब। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मुकर्रर मिकदार है, उसके यहाँ एक मुकर्रर एक सॉरी हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। तुम टोकरी ले लेके हॉस्पिटल जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, अभी वक्त नहीं आया। डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी वक्त नहीं आया। इतना कुदरत रखने वाला मालिक है, क्योंकि अभी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो दिन नहीं आया। इतनी बड़ी जात का कलाम इस वक्त मेरा पढ़ रहे। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है हर हाल में बाला और बरतर है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, सब उसके लिए यकसां है। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। और असल आयत अब आ गई, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हकीकत यह कि अल्लाह ने आज तक उस कौम के हाल को नहीं बदला जब तक वो खुद अपने अपनी हालत को ना बदल दें। फिर जब अल्लाह ताला किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले, तो वो किसी के टाले से नहीं टल सकती, न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही जिया चिपकाता है जिनको देखकर तुमको अंदेशे लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज इसकी हम के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए इसकी तारीफ बयान करते हैं। वह युरसिलुस सवाइक, और वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है, और बसा अवकात इन्हें जिन पर चाहता है ऐन इस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाकई इसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। जाहिर आयतें कायनात के फिनोमिनन को शो कर रही हैं जब गरज चमक होती है, लेकिन असल में इसमें कौमों के अरूज और जवाल की कहानी है। मौत की बात, फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए दो तरह के फरिश्ते रखे हुए हैं। एक वो है जो उसकी जिस्मानी हिफाजत करते हैं। आप देखिए कि हमारी आंखें खुली रहती हैं ना, कभी आंखों में कोई जरासीम गए? जो लोग ग्लासेस लगाते हैं ना, आप देखिए थोड़े दिन में उनकी ग्लासेस टूटी होती हैं। कितनों की आंखें फूटी भी देखी। कौन हमारी आंखों की हिफाजत करता है? फरिश्ते। 10 फरिश्ते एक इंसान की हिफाजत में हैं, आगे पीछे कान, ये नथनों के पास 2 फरिश्ते रखे हुए हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जरासीम ना चले जाएं, होंठों के आगे, जुबान के आगे। इसी तरह दूसरी किस्म के जो फरिश्ते हैं ना, वो हमारे आमाल की हिफाजत करते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। असल बात तो ये है इस आयत में कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। उदास कर दिया इस आयत में, दिल बोझल हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं उम्मत मुस्लिमा की हालत नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे जब तक ये अपनी हालत नहीं बदले। मैसेज है इस आयत का कि वो मुसलमानों अपने आप को तब्दील करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत हो तो तुम खुद को बदलो। एक वो वक्त था कि जब हम दुनिया के, आप कह लीजिए कि इस दुनिया के स्टेज पर सूरज बन के चमकते थे, पूरी दुनिया में हमारी से थी। उस वक्त मुसलमान कैसे थे, क्या उस वक्त हमारी इज्जत थी? आपको पता है कि वेस्टर्न लेडीज वेल पहनकर निकलती थी। किससे सीखा? आज हम ढीले हो गए, हर मामले में ढीले, नरम, वक्त की पाबंदी नहीं, कामों में एक्सीलेंस ही नहीं। शादी कार्ड से पढ़कर टाइम जो वक्त पे चला गया वो शर्मिंदा होगा। अकलमंद तो वो है जो 2 घंटे ऐड करके जाए ताकि उसको पूरा प्रोटोकॉल मिले। हमें क्या हो गया? और आज कोई डिसिप्लिन करवाए तो हम नाराज, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं दीन के नाम पे भी मजबूरियां, दीन के नाम पे भी हम बच्चे लेके नहीं बैठे हैं, हम वक्त पे आए, देर से नहीं आए, वो ना करें। एवरेज तो हम बने ना, अब एवरेज बनने वालों की तो क्या बात है। कभी आज हम अपनी गुफ्तगुओं के मौजूद सोचें, क्या हो गया कि बिगड़ी हुई कौमें बन गई और बनी हुई कौमें बिगड़ गई? काम का शौक कम, छुट्टियों का शौक ज्यादा, आने का शौक नहीं, जाने का शौक ज्यादा। हर मामले में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ढीली है, और सबसे बड़ी बात पता क्या, कि इसका एहसास नहीं। वो कहते हैं ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हमें तो खुद नहीं पता कि हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है, कल हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, हमारी क्या इज्जत थी, क्या रोब था, लोग हमसे मरूब थे और आज हम रोब में आ गए। वो अजमत की दास्तान है, कभी आप स्पेन की हिस्ट्री तो पढ़ें, कभी टर्की का माजी तो पढ़कर देखिए, कहाँ मुसलमान फ्रांस के दरवाजे पे पहुंचे हुए थे। इस्लाम वहां दाखिल हो जाता अगर मुसलमानों में फिरका वारियत ना होती। इस जुमले को जाकर पढ़ लीजिए हिस्ट्री में, फ्रांस क्यों, स्पेन क्यों टूटा, फिरका वारियत, हुब्बे दुनिया हुब्बे जा। आज हमारा हाल ये कि अपने मुल्कों में भी आजाद नहीं, अपने मुल्कों में उनके कानून मानते हैं। कल तक हम रोल मॉडल थे, आज हम उनको रोल मॉडल बनाते हैं। वही लोग जो हमें ठुकरे लगाते हैं ना, हम उन्हीं के रंग ढंग को अपना कर कहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। ये सब कैसे बदलेगा? तब्दीली आएगी इल्म के साथ, इल्म दोस्त बनी है। आप देखिए हमारे घरों में किताबें आती भी हैं ना, तो फैशन मैगजीन, अखबारें, जहाँ नाम ले लिया और निकाल दीजिए तो बेहतर है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। फिक्शन, सस्पेंस, बच्चे के हाथ, बच्चा माँ के हाथ में किताब देखेगा ना तो किताब खोलेगा, और अगर माँ के हाथ में उसको फैशन की किताब दिखी तो वो भी फैशन में जाएगा। आज भी मैं और आप इस बदलते हुए हालात को बदल सकते हैं अगर हम अपने आप को दीन से जोड़ लें। आप देखिए कि जो कौमें कमजोर हैं उनके अंदर क्या इल्म को आम करते हैं, आप देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या मैं और आप वो नहीं पैदा कर सकते। आज हमें अपने अंदर ये जोश लाने की जरूरत है। खूब दिल खोल कर तालीम पर खर्च कीजिए, बड़े बड़े काम करिए। आज एक शादी पर लाखों लगता है, हजारों में एक एक मेकअप होता है, लाखों में एक एक जोड़ा बनता है, सिर्फ में हॉल की सेटिंग 3-4 लाख में होती है। एवरेज दर्जे की जो शादी है आज वो 50-60 लाख पे चली गई, और अबव एवरेज तो अब करोड़ों पे पहुंच गई है। क्या हमें ये सब सूट करता है? पूरी दुनिया में काम करने वाला पड़ा हुआ है और हम सो रहे हैं, हम कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता, कमाना बहुत है, अभी क्या करें वो करें। तो ये आयत मुझे आपको अपनी हालत संवारने वाली बनती है। और आप देखिए कि गैरों की भी अगर हमने बात ली ना, तो कौन सी ली जो बुरी थी, उनमें कितनी खूबियां हैं। कभी जरा से तकाबुल तो करके देखिए कि तरक्की याफ्ता कौमें आज कैसी हैं। वक्त की पाबंद, मेहनती हैं, प्लानिंग करते हैं, इल्म दोस्त हैं, सफाई पसंद हैं। फिर आप देखिए कि इंसान की कदर करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर है उनके अंदर। फिर इसी तरह से आप देखिए उनकी जिंदगी में एक मकसद है, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। फिर आप देखिए आला जर्फ होते हैं, चले ऊपर से ही कहें लेकिन थैंक यू तो कहते हैं ना, आई एम सॉरी तो कहते हैं ना। सोशल वर्क उनमें कितना है, रिसर्च कितनी है, वक्त की पाबंदी कितनी है, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जागते हैं, कमी बेशी नहीं करते, शुरू में अच्छी चीज दिखाएं बाद में खराब नहीं ले आते, हॉस्पिटल बनाते, क्या कुछ नहीं करते। तो क्या फिर मैं आप ये नहीं कर सकते? हम उनकी अच्छी बातें तो कम से कम ले सकते हैं ना। इसलिए जरूरत है इस बात की कि आप और मैं अपने आप को बदलें। ये बातों से नहीं होगा, ये यहाँ इस हॉल में बैठकर कुरान पूरा पढ़ भी जाएंगे, आखिर में दुआ भी लंबी सी कर लेंगे ना, नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए जो वक्त लगाना पड़ेगा। मैं एक रिपोर्ट सुन रही थी कि उन्होंने लिखा कि साउथ अमेरिकन, आपने अच्छा जानते भी नहीं होंगे अमेरिका की हिस्ट्री को, जो अमेरिका में है वो मेरी थोड़ी सी बात को समझ सकते हैं, कि साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनकी हिस्ट्री लिखने के लिए एक शख्स ने 22 साल लगाए। पहले उनकी जुबान समझी, फिर उनकी रिसर्च की, फिर जाकर एक किताब लिखी। क्यों? कि ये मुर्दा होती भी तहजीब, इनका कल्चर दोबारा जिंदा किया जाए। और आज हम इस जिंदा किताब को 22 महीने नहीं लगा सकते। आप इमेजिन तो करें कि आज एक महीना लगाकर कुरान से आपको ये कुछ मिल रहा है, तो अगर आप 20-22 महीने लगा दें तो आप कितना चमक जाएंगे। ये है आज के दौर में करने का काम, लेकिन शर्त एक है, फुल डेडिकेशन, अहसन अमला, अक्सर अमला नहीं अल्लाह को चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आज हमारी जिंदगी में अगर ये काम ना भी हुआ तो हम तड़प कर जाएंगे, लोगों को ये सोच दे कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह फायदा होगा, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाते हैं, इसी को पुकारना बरहक है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की जात सबसे खूबसूरत है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो इनकी दुआओं का को कोई जवाब नहीं दे सकती। इन्हें पुकारना तो ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इसे दरख्वास्त करे कि तुम मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस वक्त पानी उस तक नहीं पहुंचने वाला। सच बताइए, जब पानी मुंह तक नहीं पहुंचता तो क्या उम्मत मुस्लिमा की हालत सिर्फ बातों से संवरेगी? हरगिज नहीं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा। कोशिश तो करना हमारा फर्ज है, आगे उसमें बरकत देना अल्लाह ताला का मामला है। इसलिए फरमाया, काम करो काम करो। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं मगर एक तीर बेहदफ, यानी ऐसा तीर जो अपने निशाने से चूक गया। वो तो अल्लाह ही है जिसने जमीनों आसमान को, जिसको जमीनों आसमान की हर चीज सजदा कर रही है, चाहे खुशी से करे या ना खुशी से। और सब चीजों के साए सुबह शाम इसके आगे छुपते हैं। इनसे पूछो, जमीन और आसमान का रब कौन है? कौन है, जवाब दें। कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो, जब हकीकत ये है तो क्या तुम इसको छोड़कर अपने ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहराते हो जो खुद अपने लिए भी किसी नफे नुकसान का अख्तियार नहीं रखते? कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? नहीं। क्या रोशनी और तारीकियां बराबर हो सकती हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया? कहो, हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है और सब गालिब है। क्या बताया कि अल्लाह को मानने वाला और ना मानने वाला बराबर नहीं? इसके बाद वो आयत है जो इस बारे की वाकई आयत तदब्बुर भी है और आज के मुसलमानों को जोश दिलाती है। पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अनजल मिनस समा ईमान, बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा क्योंकि इसमें मिसाल है। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने जर्फ के मुताबिक इसे लेकर चल निकला। पानी कौन सा बरस रहा है आसमान से? वही का कुरान। नदी नाले कौन है? आप सब। जर्फ क्या है? आपकी डेडिकेशन, आपकी सोच, आपकी तवज्जो, आपका बर्तन। आप में से हर एक ने एक एक बर्तन उठाया हुआ है जिसमें इस वही को कंटेन करना चाह रहे हैं। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गई। ये सैलाब कौन सा है? पहली दफा का कुरान। नया नया ईमान जोश लाता है। जब इंसान कुरान सुनता है तो उसके अंदर एक जोश पैदा होता है। जब अंदर कुरान का पानी जाए और उस वक्त दिल में जोश पैदा होना, उस वक्त को गनीमत जानना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर उसको उस वक्त ना पकड़ा तो बाद में क्या होगा। इसको आगे जाके देखते हैं। अब झाग आ गई, जोश है, कुछ करने को दिल चाह रहा है, हलचल है, मकसद चाहिए। ऐसे ही झाग इन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाग है वो उड़ जाता है और जो चीज इंसानों के लिए नफामंद है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात को समझाता है। करो क्या? लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसको कबूल न किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के मालिक भी हों और इतनी ही और फराहम कर लें तो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इसको फिदिये में दे डालने पर तैयार होंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नुम है जो बहुत बुरा ठिकाना है। क्या बताया इस आयत ने? बहुत यूनिक और आप कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की आयत है। अब देखिए कि दुनिया में हमें जाहिर बातिल फैला हुआ लगता है। हम कहते हैं हर तरफ करप्शन है, खराबी है, बुराई है, बेदीनी है। नहीं, वो झाग है, सिर्फ ऊपर ऊपर एक वनीर है। जरा से एक हाथ मारे ना झाग खत्म होता है। अल्लाह ताला मुझे आपको मिसाल से समझा रहे हैं कि तुम कुरान सुन रहे हो ना, तुम अपने अंदर ईमान लाओ, तुम्हारे अंदर जो जोश आ रहा है ना, बस इसको फौरन प्रिजर्व कर दो, इसको स्टोर कर लो। क्यों? कि जब तुम इसको लेकर दुनिया में निकलोगे तो तुम हक का पैगाम लेकर आओगे। अल्लाह ताला आपको मुझे करेक्टर बिल्डिंग की दावत भी दे रहे हैं। आप देखिए, किसी को कोई काम दिया जाए उसके बाद दो रवैये हैं, एक यह कि एक ने काम कर दिया, दूसरा उसने नहीं किया। जिसने नहीं किया, क्या दोबारा उसको आप काम देंगे? तंबीह करेंगे, समझाएंगे, एक दो बार मौका देंगे, फिर छोड़ देंगे उसको उस ख्याल पे कि सीरियस नहीं है, इसको आता तो है लेकिन इसको करना नहीं है। दूसरी तरफ जो काम करते हैं ना, उनकी फिर दो किस्में हैं। एक बस वो करते हैं जो करना होता है, कहा कर दिया, कह दिया तो कर लिया। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे इस जॉब से नहीं हटना, मुझे कुछ और करना। वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, थोड़ा दिया होता है ज्यादा करते हैं, अक्ल से लाते हैं, आइडियाज लाते हैं, काम देने वाला खुश हो जाता है, कहता है वाह इसने तो वो भी कर दिया जो मेरे विजन में नहीं था, नेक्स्ट टाइम आप उसी को काम देते हैं। ये जोश और ये जज्बा इस वक्त इस सूरत में हमें दिखाया जा रहा है कि तुम मुसलमानों नीड ऑफ द आवर को समझो। सबसे पहले जो बात है ना, वो क्या है कि हम सब अपने आप को एक कौम समझे। जब हम इंडिविजुअलिज्म पे आते हैं ना, मैं मेरी जात, मेरा घर, मेरे बच्चे, बच्चियों की शादी, बच्चों के रिश्ते, मियाँ की जॉब, दिस, बस हमारा इतना सा छोटा सा सर्कल रहता है। नहीं, आप आज से अपने आप को एक उम्मत का फर्ज समझें, ये फर्स्ट थिंग होगी। इसके बाद फिर आप सोचिए कि आज के दौर में मुझे क्या करना है। आप सोचेंगे ना तो कोशिशें करते करते आपके जहन में आएगी, मुश्किलें तो आएंगी। आप देखिए कि कभी डायमंड ना बने अगर कार्बन को प्रेशर में ना डाला जाए। जिनको डायमंड का शौक है वो हिस्ट्री भी जानते होंगे कि कार्बन होता है, कोयला है, बहुत सालों तक पहाड़ों के अंदर प्रेशर में जाता है। जितना प्रेशर आता है ना उसके ऊपर, उतना ज्यादा खूबसूरत डायमंड बनता है। फिर किसी जौहरी के हाथ में देते हैं, उसको कट लगाता है, इधर से काट, इधर से काट, एक रे उसमें लाइट की जाती है ना, वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है। डायमंड अंधेरे में कभी नहीं चमकता, सिर्फ रोशनी में चमकेगा। क्यों? कि उसके अंदर एक लाइट गई और वो उसके अंदर घूमती है। जितने कट ज्यादा होंगे ना उतना डायमंड खूबसूरत होगा। आप मैं अल्लाह के दीन के रास्ते में जितनी मुश्किलात सहेंगे, जितनी कुर्बानियां देंगे, अपने जॉब्स को छोड़ेंगे, अपने घर को सेटल डाउन करेंगे, वक्त लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही चमकेंगे। और वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। शुरू से हमें हर एक को काम नहीं करना आता। आप देखिए कि इदारा जो बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, या एक मस्जिद एक दिन में नहीं बनती, एक मुल्क भी एक दिन में नहीं बनता। हम अपने मुल्क की मिसाल लेते हैं, 60 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए। 1947 का पाकिस्तान, उसमें और 57 के पाकिस्तान में फर्क होना चाहिए था। फिर 67, 87, 97, 107, और अब अगला साल आ जाएगा तो 2017। फर्क हो, हर दिन आपका मेरा मुल्क बेहतर हो, उसके लिए आपको मुझे काम करना पड़ेगा। और जब काम सेटल डाउन कर दे उसके बाद ज्यादा नहीं करना पड़ता, ऑटोमेशन पे लग जाती है चीज, खुद ही मोमेंटम सेट होता है, चीजें चलती रहती हैं। आज की सदी में मैं और आप वो मुसलमान हैं जिनको दोबारा वो काम करने का मौका मिला जो सहाबा को मिला था। आपको अभी भी अपनी वैल्यू का ना पता लगे तो और फिर आसानी से क्या समझाई जाए। आज के दौर में मुझे आपको इस्लाम के खिलाफ उठने वाली कोशिशों का जवाब देने के लिए इस्लाम को सीखना पड़ेगा, इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, इसको इज्जत देनी पड़ेगी, लोगों की नजरों में इसको ऊंचा कीजिए। आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। अपने मुस्लिम हाल खुलिए पे फख्र कीजिए, अपने इस्लाम को दिखाइए। अल्लाह के भी बंदे बने और बंदों के साथ भी अच्छे रहे। आप देखिएगा 50-60 साल, ये सदी के एंड तक उम्मीद है कि इस्लाम दोबारा उभरना लगे लोगों की नजरों में। आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन याद रखिए आजमाइश मोमिनों को कमजोरियों से पाक करने आती हैं। इस्लाह करते जाते हैं ठीक हो जाते हैं, और इस्लाम को कमजोर लोगों से पाक कर देती है। तो जरूरत इस बात की है कि मैं आप अपनी इस कोशिश से हक को मेन स्ट्रीम पे ले आए, मीडिया पे, स्क्रीनों पे, इधर उधर इस्लाम दिखे, इस्लाम इस्लामिक चैनल बने, लोगों को इस्लाम का रंग रूप दिखे। बातिल दबता दे दबता दे, वो कहते हैं ना दुम दबा के भाग गए। मीडिया मुस्लिम हो गया, बातिल इधर उधर निकल गया, नेट मुस्लिम हो गया, बातिल चला गया, इस्लाम फैल रहा है। आप देखिए नेट से तो इतना दीन फैल रहा है, यहां से बातिल भी फैल रहा है। तो सबको करना क्या है? अब इंस्पायर तो हम हो गए, बातें तो सुनते हैं इंस्पायर होते हैं, अब क्या करें? मेहनत करें, मुशक्कत करनी पड़ेगी, घर वालों की बातें सुनना पड़ेंगी, वक्त लगाना पड़ेगा, माल और स्किल चाहिए, बातों से तो कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए आज मुझे आपको इस्लाम के लिए अपनी हर चीज को पेश करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप देखिए फिर अल्लाह हमारी कदर जो करेगा। आपका नाम क्यामत के दिन लिखा होगा। ये 2016 के मुस्लिम और मुस्लिमात थी जिन्होंने इस्लाम की इस इमारत को बनाने में काम दिया, वरना होगा क्या? काम तो हो जाएगा। अल्लाह के नबी की हदीसों से पता चल रहा है कि आखिरी दौर में इस्लाम को फिर गलबा होगा, सारी दुनिया में इस्लाम होगा, लेकिन मैं आप रूल खुल जाएंगे। जैसे घर बनता है ना, तो जो ईंटें बच जाती है ना, आप देखें वो इधर बैठ उधर बैठ, कभी कोई उसकी विकेट बना के क्रिकेट खेलते हैं, जाए मजदूर बेचारे चाय बनाने के लिए चूल्हा बना लेते हैं, उसका जाया हो जाती है। और जो ईंटें इस बिल्डिंग में लग गई उनका नाम क्या? अबू बकर लग गए, उमर लग गए, उस्मान लग गए, मुझे आपको लगना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको बचाए, क्योंकि आगे इंजाम कितना प्यारा है। लजीन अस्तजाबू, अल्लाह उनको हुस्ना देगा। इस वक्त अपने लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह मुझे कहीं लगा दे, मैं कहीं बची खुची ईंट की तरह इधर उधर रुल खुल के ना चली जाऊं। हाँ, बड़े कामों के लिए बड़े हौसले चाहिए, घर बार दुनिया पाँव, ये पाँव की बेड़ियां बनती हैं, इसको हटाइए, अल्लाह ताला आसान करेगा, वरना आगे सोल हिसाब की बात है। और आप देखिए कि अगर अल्लाह ने किसी एक बात पे पूछ लिया, कल क्या जवाब देंगे? एक नेमत रखी रहेगी, इस्लाम को जरूरत थी, हमने उसको यूज नहीं किया, पूछेगा अल्लाह। एक बंदा मेरी कोशिश से हिदायत पे आ सकता था, मैंने कोशिश नहीं की, अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? हम कहते दुआ करते हैं, खुद से वादे करते हैं, नहीं, प्रेयर्स एंड प्रोमिसेस नहीं, परस्पिरेशन, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। हदीस में आता खुफ्फतिल जन्नत बिल मकारे, जन्नत को मुश्किलात में ढाल दिया गया। 3 सेकंड आपको भी देती हूँ, खुद को भी देती हूँ, अपने लिए कोई अच्छी सी दुआ करें। अल्लाह, अब आगे अल्लाह ताला हमारे लिए एक तकाबुल पेश करते हैं। अफ मई आलम अन्नमिला रबिकल हक कमन हुआ आमा, ऐसे लगता है जैसे हमारी बात ही सुन ली अल्लाह ने कि हक की बातें कर रहे हो, बताओ जरा क्या, भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब किस किताब को जिसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जिस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए, दोनों इसी कुरान को पढ़ के गुजर जाए, किसी को इस आयत पर गौर की तौफीक ही ना मिले और किसी को ये आयत पकड़ ले वो कि आज के बाद मैं अपनी इसलाह करूंगा, फर्क होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तब्दीली वाला कुरान पढ़ने वाला बना दे। कुरान को नहीं बदलना, पढ़ के खुद को बदलना है। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं। इनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, ये करने के काम है। थिंग्स टू डू बना लीजिए अपने लिए, इसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। इनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया होता है इनको बरकरार रखते हैं। चलिए दुआ करें कि हमारी रिश्तेदारियां बरकरार रहें। किसी रिश्तेदार को जो नाराज है उसको मना लीजिए, इस आयत पे अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्या करते हैं, वयख्शौन रब्बहुम वयखाफून सूअल हिसाब, ये सब काम है 1 2 3 लगा ले तो यही आज के दौर में हम मुसलमानों की इस्लाह के लिए जरूरी है। फरमाए अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। इनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र करते हैं। कोई बात लग गई बुरी, किसी ने इनकी अना पे चोट लगा दी, कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, करके देखिए कितनी खुशी मिलेगी। नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं के लिए है, कौन सा, जन्नत अदनी यदखुलूनहा, वो जन्नतें जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वो उसमें दाखिल किए जाएंगे, और इनके अबाव अजदाद और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो सालेह हैं वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। दुआ करें अल्लाह हमारे बच्चों को भी हमारे साथ ले जाना, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनें, उनकी औलादें, अल्लाह इन सबको हम सबको साथ जन्नत में लेकर जाना। क्या वो जन्नत होगी जहाँ दोस्त ना हो, तो दोस्तों को साथ लेकर चले। मलाइका हर तरफ से इनके इस्तकबाल करने के लिए आएंगे और इनसे कहेंगे तुम पर सलामती है, तुमने जमीन में जिस तरह सब्र से काम लिया इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तक हो गए। ये कौन सा सब्र है, अल्लाह की रजा के साथ रहने वाला सब्र। बस क्या ही खूब है ये आखरत का घर, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ डालते हैं, और जो इन राब्तों को तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं वो लानत के मुस्तहक हैं, और इनके लिए आखरत में बुरा ठिकाना है। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराही बख्शता है, और जिसे चाहता है नपातुला रिस्क देता है। क्या फर्क पड़ता है इससे, खाते तो सब एक दो रोटी है, बल्कि जितना रिस्क ज्यादा होता है उतनी रोटियां कम हो जाती हैं, सैलड पे आ जाते हैं बेचारे डाइटिंग, क्योंकि मेहनत चली जाती है ना। आप देखिए कि मजदूर है वो 2 रोटियां खा के ऊपर देसी घी का पेड़ा और मक्खन का पेड़ा और साग है वो फिर भी स्लिम स्मार्ट है, और जो लोग मेहनत नहीं करते वो वैसे ही मोटे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रिस्क की कमी बेशी से किसी की इज्जत और बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फरीहु बिल हयात दुनिया, ये लोग दुनिया की जिंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ नहीं। सोचिए जरा इस पे, कितने दिन थे और अब कितने रह गए, इसी रमजान से ही सोच लें कितने दिन थे और कितने रह गए। अपनी मौत को सोचते हैं, पता नहीं मेरे पास कितने दिन है, महीने, साल। आज की डेट देखिए 12 जून है ना, शायद 12 जुलाई को मैं नहीं होंगी, शाम कल की 6 बजे तक मैं नहीं होंगी, मुमकिन है कि नहीं? तो किया क्या है, जवाब क्या देंगे, मताए कलील है ये, इसके धोखे में आखिरत को जाया नहीं करना। वयकूलु लज़ीना कफरू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतु मिन रब्बिही, ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, को अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो इसकी तरफ रुजू करे। आप अपने घर का रास्ता किसको बताते हैं? जो आपके घर आना चाहता है, डायरेक्शन लिखाते हैं ना फोन पे, या फिर आजकल तो वैसे ही भेज देते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वो नेविगेटर बता देता है। जिसने अल्लाह के घर का रास्ता पूछा अल्लाह उसको राहें जरूर सुझाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ चलें और अल्लाह के नहीं जी सॉरी पहले ही बहुत लोग आ गए अब आप पीछे रहे, ऐसा नहीं होता। अल्लज़ीना आमनू वतत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया और इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता है। याद रहो या खबरदार रहो, अल्लाह ही की याद है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। फिर जिन लोगों ने दावते हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा अंजाम है, तो अल्लाह की याद से सुकून है। काफिर को तकलीफ आती है ना, वो नशे में डूब घूम जाता है, कोई म्यूजिक में खुद को इंडल्ज कर लेता है। लोग कहते हैं म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल, अगर म्यूजिक सोल होता जर्नी फूड, जैसे आप कहें कि म्यूजिक रूह की गजा होती, तो बताइए फिर ये लोग तो बहुत खुश रहते। अब देखिए अमूमन जो लोग बहुत हंसते बोलते और दुनिया में इस नाम पे कि हम खुश कर रहे हैं लोगों को, अब देखिए खुदकुशी करते, घरेलू जिंदगी उनकी खराब होती, तलाकें उनकी चलती और अक्सर उनमें से बहुत गुमनामी की मौत मरते हैं। अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद में जिक्र है कैसे, आप देखिए मछली पानी में रहती है ना, पानी से निकालेंगे तो तड़पेगी, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह की याद आपको सुकून देती है। आप थक भी जाएंगे ना तो आपके अंदर सुकून होगा। आप जब यहां से उठ के जाते हैं मुझे नहीं पता आपकी क्या फीलिंग होती है। कल मेरे साथ कोई सिस्टर थी तो मैं उनको कह रही थी जब एंड होता है ना पारे का, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी हुई है और मैं अपने आप को चार्ज करती भी फील करती। मेरा दिल करता है इसके अगला पारा मैं पढ़ाऊं, और अगर मैं इकट्ठे दो पारे पढ़ाऊं तो यकीनन दूसरा पारा मैं पहले से अच्छा पढ़ा सकती हूँ। शुरू में तो आवाज ही ढीली होती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये इस कुरान से आती है। कभी कमजोरी हो, रोजा लग रहा है, बीमार है, दुखी है, आज पहला रोजा रखा, नींद आ रही है, परेशान हो, आप अपने दिल को इस दिल जीत में लगाकर देखिए, आपको मजा आएगा, क्योंकि अल्लाह की याद में दिलों को सुकून है और अल्लाह ताला हमें इसी में डाल दे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया, इस हाल में कि ये अपने नहायत मेहरबान रब के काफिर बने हुए। इस जुमले की खूबसूरती को नोट कीजिएगा, इंतहाई मेहरबान रब का इनकार करते हो। आज इंसानों की अक्सरियत क्या है, वही रब खाना देता है और उसी खाने में हम नमाज भूल जाते हैं। इफ्तारी के वक्त को याद कीजिए, जो नेमते हैं वो किसने दी, और मगरिब कैसी पड़ी जाती है, और खूब खाया तो तरावी पढ़ने के काबिल ना रहे, इतना मेहरबान रब और इतना ना शुक्र इंसान। इनसे कहो वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, इसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजाओ मावा है, कोई मुझे जगह नहीं देगा मेरे रब के सिवा। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार तो अल्लाह ही के इख्तियार में, सारा इख्तियार तो अल्लाह ही के हाथ में। कहते थे ये कुरान हमारे दिलों पर असर नहीं करता, अल्लाह कह रहे हैं कि कोई ऐसा कुरान भी ले आते ना कि पहाड़ फट जाते और मुर्दे कब्रों से निकलते, तुम्हारे दिल पे उसका भी कोई असर नहीं होना था। तो कहते कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, ये बातें तो हमें पहले से पता है, ये तो हम जानते हैं। जरा पूछिए जो लोग नहीं सुनते, वो कहते सब आते, सब जानते, हमारे घर में भी कुरान है, हम खुद भी पढ़ते हैं, हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, हम तो अमल कर रहे हैं, ये तो बस पढ़ते हैं, हम तो अमल करते हैं। सच बताइए क्या कुरान पढ़कर दिल में हलचल पैदा होती? यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये कुरान तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना, तो इससे स्ट्रॉन्ग वाला कुरान भी तुम्हें कोई नहीं था समझ आना। फिर कहले ईमान, अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे हैं, वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर का रवैया अख्तियार किया, इन पर इनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, या इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादान पूरा होगा। यानी ना इनको कुरान बदलता है, ना आसमानी आफतें बदलती हैं, ना जलजलों से इनके दिल तड़पते हैं, ना तूफानों से इनकी आंखें बहती हैं। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। आपसे पहले बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका, तसल्ली दे रहा अल्लाह ताला अपने नबी को, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। सोचिए नबियों पे कितनी सख्ती आई होगी। आज हम थोड़ी सी बात पे चीखने लगते हैं। अंबिया कराम की तो बहुत सख्त इम्तिहान होते थे उनके। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफस की कमाई पर नजर रखता है। सोचिए कौन है वो? अल्लाह। और मुतनफस कौन है? आई एम, मैं हूं। अल्लाह को मेरी हर कमाई का पता है, अल्लाह को मेरे हर गुड डीड और बैड डीड का पता है। इसके मुकाबले में ये जिसारतें की जा रही हैं, यानी सीआईडी से डरते हो, इमिग्रेशन वालों से डरते हो, मशीनों वालों से डरते हो, रब से नहीं डरते जो दिलों में डालकर तुम्हारे दिलों के अंदर के वसवसे भी देख सकता है। कि लोगों ने इसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ऐ नबी इनसे कहो, अगर वाकई वो अल्लाह के बनाए हुए अपने शरीक हैं, अगर वाकई वो अल्लाह के अपने बनाए हुए शरीक हैं, तो जरा इनके नाम लो, वो कौन है? क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो? बिमा ला यालमु फिल अर्दी, जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता? या तुम यूं ही बस जो मुंह में आता कह डालते हो? हकीकत यह कि जिन लोगों ने दावते हक को मानने से इनकार कर दिया, इनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गईं और वो राह रास्त से रोक दिए गए। फिर जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे, इसको फिर कौन हिदायत देगा? कौन है इसको राह देने दिखाने वाला? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे जमा दे। लहुम अज़ाबुन फिल हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है। यकीन करें अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अजीरन हो जाती है। और आखरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो इनको अल्लाह से बचाने वाला हो। अल्लाह से डरने वाले इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया, इसकी शान तो ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी हैं, इसका साया लाजवाल है। ये इंजाम है मुत्तकी लोगों का, और मुनकरीन हक का इंजाम ये है कि इनके लिए दोजख की आग है। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हमें दूर से भी जहन्नुम ना दिखाना। ए नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वो इस किताब से जो हमने आप पर नाजिल की है खुश हैं। और मुख्तलिफ गिरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन इसकी बास बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो, क्या कह दो? कि उमिर तो ना अबुद अल्लाह वला उश्रिक बिही, मुझको तो इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं। बस मैं इसी की तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरा रजू है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई हामी और मददगार है और ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। ख्वाहिशों की पैरवी अब नहीं, क्योंकि 13 पारे पूरे होने वाले हैं। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूलों को भेज चुके, हमने इनको भी बीवी बच्चों वाला ही तो बनाया था। और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई निशानी वो दिला कर दिखाता। ये बात क्यों कर दी कि नबियों के भी बीवी बच्चे थे? जी बता दिए कि वो कोई अकेले नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे कि दीन के काम करते। बहुत बड़ी बात है कि औलाद को और बीवियों को और शोहरों को अल्लाह के रास्ते की बैरियर ना बनाओ, ब्रिज बनाओ, रुकावट ना बनाओ। अब देखिए कि बीवी बच्चे होना, या आज अगर हम खवातीन है तो हमारे शोहर और बच्चे होना, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है ना। खुशी मिलती है। आप अपने बच्चों और अपने शोहर को अपना एनर्जी ड्रिंक बनाएं। आप देखिए, एक औरत है ना, जब वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती है, शोहर रात को घर आते हैं, बच्चे भी हैं, थक भी जाएगी ना, पुरसकून होके सोएगी। इसके बरक्स आप सिंगल मदर्स को सोचिए, डाइवोर्स सोचिए, विडोज को सोचिए, उनकी जिंदगी मायूसियों में होती है। बाज दफा फितरी जरूरतें नहीं पूरी होती ना, तो चिड़चिड़ापन भी आता है। अब अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, खुश हो। कभी बच्चे को देखा, खुशी मिली, एकदम जोश आ गया, शौहर ने तारीफ कर दी, खुश हुए। अब इन सब चीजों को जोश बनाकर अल्लाह के रास्तों में भागे। अल्लाह आपने इतना अच्छा शौहर दिया, आपका शुक्र है। इतने अच्छे बच्चे दिए, आपका शुक्र है। हम इन चीजों को जब बैरियर बनाते हैं ना, तो ये मुश्किल है। तो कभी ये ना कहें कि बच्चों के साथ दीन का काम नहीं हो सकता। अल्लाह ने नबियों का नाम लेके बता दिया, और ये ना कहें कि शोहरों के तकाजे इतने हैं कि दीन का काम नहीं होता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ आपके अंदर एनर्जी की जरूरत है, आप सुस्ती से काम करते हैं, आप जोश से करें, बच्चों को साथ लगाएं। लोग कहते हैं बच्चों के साथ काम, बच्चों के साथ दीन का काम नहीं होता। मैं कहती हूँ आपके साथ तो चार हाथ और, आप इनसे भी काम करवाएं। कहते बच्चे काम कहाँ करते हैं, ये तो बिगाड़ते हैं। कोई नहीं बिगाड़ते, आप इनकी ट्रेनिंग करें, आप उनको बच्चा बनाकर ना पालें, बड़ा बनाकर पालें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर भी जोश आएगा, उनके अंदर आएगा। आज आप भाग रहे हैं, कल बच्चे भी भागेंगे इंशाल्लाह। और अगर आज आप सुस्त हैं तो कल बच्चे भी सुस्त होंगे। इसीलिए फरमाया किसी रसूल की ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इज्जत के बगैर कोई निशानी ले आता, और हर दौर के लिए किताब है। अल्लाह ने हर एक दौर का एक लिखा हुआ है। क्या अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है, तकदीर की बातें। इस एक आयत पे तकदीर पे दर्स अक्सर होता है। हकीकत है कि अल्लाह ताला ने उम्मतों की भी तकदीर बनाई हुई है। दुआ कीजिए मैं और आप अपनी तकदीरों को अच्छा बनवा लें। अरे नबी, जिस ब्रेनजम की धमकी हम इनको दे रहे हैं, इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम आपके जीते जी दिखा दें, जिसके जहूर में आने से पहले हम आपको उठा लें। बहरहाल आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और हिसाब लेना हमारा काम है। इसको भी हाईलाइट करें, अलैन अल हिसाब। आप और मैं इस बात का हक नहीं रखते कि लोगों का हिसाब लें। हम क्या करते हैं, लोगों के हिसाब लेते हैं, कमेंट्स छांटते हैं। चेहरे पे बड़ा नूर था, जन्नत में जाएंगी, और वो देखा मैयत का रंग काला हो गया, जन्मी है, और ये है, और वो मुनाफा कर, वो पक्की और वो झूठी, और तुम्हें पता है इसकी बेटी कहाँ जाती है, और उसका मियाँ किधर है, और क्या है वो है। ऊपर बैठे लोगों पे कमेंट देते रहते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ऐसे लगता है हम जन्नत की खिड़की से बैठे सबको जहन्नुम में देख रहे हैं। हिसाब अल्लाह लेगा, मैं आप नहीं ले सकते। कभी किसी को जहन्नुमी ना कहें, कभी किसी को मुनाफिक ना कहें। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस जमीन पर चले आ रहे हैं, और इसका दायरेकार हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं। यदि इस्लाम फैल रहा है और कुफर घट रहा है, अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई इसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला भी नहीं। वहुवा सरीउल हिसाब, और इसे हिसाब लेते हुए कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कमाई करता है, और अन करीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि इंजाम किसका बखैर होता। हक और बातिल की बात थी ना, तो सूरत के आखिर में बता दिया कि बाहर तुम्हें लग रहा है दुनिया में कुफर है, ये नहीं, ये सिर्फ झाग है, नीचे से प्योर पानी निकलेगा हक का। शर्त एक है कि बस तुम अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो। ये मुनकरीन कहते हैं तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, फिर हर शख्स की गवाही जो कुतुब आसमानी का इल्म रखता हो। या फिर देखिए इल्म की बात आ गई, तो सारी सूरत का खुलासा क्या था, वही मेन आयत अनजल में नस्तमाईवान। अपने अंदर जोश लाना है मैंने आपने, और अपने आप को अल्लाह के रास्तों में निकालना है। और याद रखिए यूथ का तो एक अपना ही कॉन्फिडेंस होता है। गाड़ी से समझिएगा, गाड़ी है ना तो उसका हैंडल यानी स्टेयरिंग स्ट्रांग हाथों में होना चाहिए, और सीटें जो है वो नरम होनी चाहिए। एक सिंपल सी बात है, किसी भी सोसाइटी की जो यूथ है ना वो वहां के स्टेयरिंग होने चाहिए, और जो बड़े बूढ़े होते हैं ना वो कंफर्ट देने वाले, उनको जरा ठंडा रखने वाले, रिलैक्स करने वाले। जब हम स्टेयरिंग बूढ़ों के हाथ में दे देते हैं ना तो दीन नहीं फैलता। किस तरह, वो खुद भी कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, दूसरों को भी कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन आयतों की तफसीर चाहे सीरुल जन्ना में या किसी सर से आपको भेजें। हक नहीं अदावा इसलिए चाह रही हूँ कि आप इसकी तफसीर चलते फिरते उठते बैठते जरूर सुने, ताकि आप इसका हक अदा कर सकें। थोड़ी सी तिलावत के बाद सूरत इब्राहिम का खुलासा है तैयार जी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इंशाल्लाह बाद में सुनेंगे, और दिल तो चाहता है और सुने, लेकिन इतना वक्त नहीं। थोड़ा सा सूरत इब्राहिम के मज़ामीन पे गौर व फिक्र कीजिएगा। देखिए, अल्लाह के नबियों के नामों पर ये सूरतें आ रही हैं, तो इनके अंदर पैगाम भी बड़े खूबसूरत हैं। सूरत इब्राहिम के अंदर शुक्र और कुफर का फ़र्क, और इसी तरह से अंधेरे और रोशनी, इसका बहुत जिक्र मिलेगा इस पूरी सूरत में। अगर आप नाम को देख लें तो हज़रत इब्राहिम का किरदार भी झलकता है। बी फोकस्ड, सोसाइटी का, वक्त का रिवाज जो भी, उसको छोड़ दो, उसकी फिक्र नहीं करो, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में चलते जाओ, जैसे यूसुफ अपने, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। और इसी में फिर आपको इंशाल्लाह उन कुर्बानियों का भी जिक्र मिलेगा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में दी थी। इसमें चंद आयात इतनी खूबसूरत है कि अगर सिर्फ उन दो तीन आयात पे आज की उम्मत मुस्लिमा अमल करने लग जाएगी तो यकीनन तब्दीली आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाशुक्रियों को छोड़कर शुक्रगुजारियां पैदा करो अपने अंदर, पॉजिटिव सोच लाओ, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकाल दो, और इसी तरह से फिर अपने आप को अल्लाह के रास्तों में एक मजबूत दरख्त की तरह खड़े करो। इसमें एक आयत है जिसमें पूरे इस्लाम का खुलासा दिखता है कि इस्लाम एक मजबूत दरख्त की तरह फैलता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इस सूरत को पढ़ने के दौरान आप जिन चीजों को आयतों के साथ देखेंगे तो वो टोटल 8 टॉपिक है। टोटल 52 आयतें हैं, मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 से 4 में कुरान का मकसद और तारुफ है। आयत नंबर 5 से 8 में तारीख से सबक दिया गया कि शुक्र और कुफर करने वाली कौमों का क्या हाल हुआ। आयत 9 to 17 में शुक्र और कुफर के दरमियान की कश्मकश है कि कैसे हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर इसके बाद आयत नंबर 18 से 23 काफरों के अमाल की मिसाल दी जा रही है और आखरत का एक मुकालमा। आयत नंबर 24 से 27 में कलमा तैयबा को एक खूबसूरत मिसाल से पेश किया गया। आयत 28 से 34 में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म है वरना अजाब होगा। और आयत 35 से 41 में तारीख इब्राहिम से शुक्र और तौहीद की दलील है। और आखिर में फिर आयत 42 से 52 में अक्लमंदों को क्यामत के कुछ मनाजर दिखाए जा रहे हैं। पूरी सूरत का टॉपिक इंतजार और अय्यामिल्ला, नाशुक्री का नुकसान, और इसी में वो मुकालमा है जो क्यामत के दिन शैतान करेगा। आइए सुनते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान के फंदों से आजाद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नास मिनज़ुलुमाति इलन नूर। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाएं। हाईलाइट करें, ये किताब आपको रोशन ख्याल बनाती है, ये किताब आपको बैकवर्ड नहीं बनाती, इल्यूमिनेट भी करती है और एनलाइटन भी करती है। आज इसी किताब को हमने ओल्ड डेटेड बुक कहकर छोड़ दिया, और आप फील करेंगे जब आप ये पूरा कुरान कर लेंगे, पूरा कुरान जब हो जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपकी सोच निखर गई, इस्लाम से खौफ दूर हो गया, और आपको लगेगा कि वाकई मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस दुनिया में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखेगी, खौफ तो कम से कम आपके दिल से निकल ही जाएगा। और ये पूरे कुरान का मकसद भी बताती है, जो हमारा मोटो है जिस पे हम वर्किंग मेथोडोलॉजी अपनी सेट करते हैं वो यही आयत है कि हमने लोगों को अंधेरों से निकालना है। एनलाइटन योर हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, यही स्लोगन है, आपने अगर बैनर पे कभी देखा हो, कि असल में ये अंधेरों से रोशनियों की तरफ लाने वाली किताब है। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पे ले आए। याद रखिए, इस किताब को छोड़ने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये एक अंधेरा है। किधर बुलाती है ये किताब? इनके रब की तौफीक से उस रब के रास्ते की तरफ जो जबरदस्त और अपनी तारीफ में आप महमूद है और जमीन और आसमान की सारी मौजूद चीजों का मालिक है। वबैलुल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और तबाही है, तबाहकुन सजा है हक को कबूल करने का इनकार करने वालों के लिए। कौन होता है काफिर? आपका मेरा तो एक ही गुमान है ना, अल्लाह को ना मानने वाला। नहीं, अगले आयत को देख लीजिए, काफिर की एक नई तारीफ आपके सामने आ रही है। अल्लज़ीन यस्तहिब्बून अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरा। कौन है काफिर? जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देता है। कुफर के दर्जे होते हैं, तो आप मैं अपने अमल को चेक कर सकते हैं कि मैं किसको तरजीह देती हूँ, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज है, दुनिया या आखिरत। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ते इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए। अल्लाह हम सबको गुमराहियों से बचा ले। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कभी कोई रसूल भेजा तो इसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें खोल कर अच्छी तरह से बयान करे। तो गोया के कुरान का तर्जमा अपनी जुबान में समझना लाजिम है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हर नबी ने अपने कौम की जुबान में बात की थी। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब भी है और वो हिकमत वाला भी है। आज आप देखिए इंग्लिश फरफर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारी तो मासियां तक इंग्लिश मान लेती हैं, बोल लेती हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, संडे मंडे छुट्टी और ग्लास क्या कुछ कहती हैं। तो क्या मैं और आप कुरान के अर्थ नहीं सीखेंगे? हमारा भी तो मालिक है ना, हमें भी तो वो ये जुबान सिखाकर हमारी तरबियत करता है। यकीन करे जो अरबी जुबान में हुसन है, मैं खुद इकरार करती हूँ कि मैं तर्जमा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी यूं चली गई। कभी मैं आपके सामने सिर्फ अरबी पढ़ूं और उसको महसूस करवा सकूं, तो वो अल्लाह के कुरान के अल्फाज का जो रूप होगा ना, वो हमारे तर्जुमों में बात नहीं आती, बस तर्जुमानी हो जाती है, जस्ट लाइक बात हम समझ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इतना वक्त लगाने वाला बनाए कि हम इसको बेहतरीन तरीके से समझें। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, इसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। देख लें, बार बार तारीकी से रोशनी का तस्करा है, और इन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज वाक्यात सुनाकर नसीहत करो। हिस्ट्री पढ़ो लेकिन इबरत के लिए, सिर्फ फिक्शन के तौर पर नहीं। और इन आयतों में निशानी है हर बहुत सब्र और शुक्र करने वाले के लिए। अल्लाह में सब्बार भी बना दे और शक्कूर भी बना दे। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह किस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया। इसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा बचा लेते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया, लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं तुमको ज्यादा दूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। आप अपनी दोस्त का शुक्रिया बोलती हैं और कहती हैं दाल बड़ी मजे की थी, अगली दफा क्या होगा? जब दाल पकाएगी आपको भेज देगी। और आपको खाना भेजा, किस नौ कैसा था, कहते मैं नहीं खाती, हमारे घर खाता नहीं कोई किसी का, अगली दफा भेजेगी। यही है लाइन शकर तुम लाजी तन्ना को, खुश रहा करें, स्माइली, पुरजोश। अल्लाह ने जो आपको दिए शुक्र करें, अल्लाह आपको नेमते और देगा। और अगर रोए धोएंगे, जले कुड़े रहेंगे, तो फिर रोना धोना ही पड़ता रहेगा। वकाला मूसा इन तक पुरान तुम, और मूसा ने कहा अगर तुम कुफर करो और जमीन के रहने वाले सब कुफर कर लें, तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है। क्या पता चला, अल्लाह ताला किसी के वोटों से इलेक्ट नहीं होते, उसके लिए तो ये बात कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह ताला अपनी शान से आला है, कोई इसको माने या ना माने। अलम यातिकुम नबउल लजीना मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हें इन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं? कौम नूह, आद, समूद और इनके बाद आने वाली कौमें, जिनका शुमार अल्लाह को मालूम है, इनके रसूल जब इनके पास साफ साफ बातें और रोशन निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने अपने मुंह हाथ में दबा लिए। हर दौर में लोगों को नबियों का पैगाम अजीब लगा, और कहा जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हम इसको नहीं मानते, और जिस चीज की तुम हमें दावत देते हो हम उसकी तरफ से बहुत बड़े शक में पड़े हुए हैं। इनके रसूलों ने कहा अफिल्लाह शक्किन, हाईलाइट कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है ऐसे लोगों को बोलने वाला। कहा क्या तुम अल्लाह की जात के बारे में शक करते हो जो आसमान और जमीन का खालिक है? वो तुमको बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुमको एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया तुम कुछ नहीं मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। अल्लाह अकबर, नबियों के मुंह लगते थे। तुम हमें इन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आई। ये है वजह जिस पे नबी अच्छे नहीं लगते थे कि खानदान के तरीकों से हमें ना रोको। अच्छा तो लाओ कोई शरीफ सनद। इनके रसूलों ने कहा इन्नहु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तुम जैसे बशर ही तो हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि हम तुम्हें कोई सनद ला दें। सनद तो अल्लाह के हुक्म से आ सकती है, और अल्लाह पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगी की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की। इसको सोचिए जरा, दिल से शुक्र का चश्मा फूटता है इस बात पे कि अल्लाह ने हमारा रास्ता खोल दिया, अल्लाह ने हमें गाइड कर दिया। रह गई तकलीफें आजमाइशें, तो जो अजियतें तुम लोग हमें दे रहे हो हम इस पर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो हमें तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, ये है थ्रेट, बहुत सारे लोगों को मिलता है, सोसाइटी से, दोस्तों से, वापिस आओ जैसी पहले थी वैसी हो जाओ। हमें नहीं तुम ऐसी अच्छी लगती, नसीहतें करने वाली और हर वक्त टोकने वाली। हाँ तो लोग बुलाते हैं वापिस, वरना दूसरी तरफ क्या होगा, वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, यानी फिर हम तुम्हें अपनी दोस्ती से निकाल देंगे। तब इनके रब ने इन पर वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और इसके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे। यही नाम है इसका जो मेरे हजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो, दुआ कीजिए अल्लाह में खौफ दे दे, और मेरी वईद से डरता हो। इन्होंने फैसला चाहा तो जो इनका फैसला हुआ, और हर जब बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई, फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नुम है, वहां इसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, जख्मों की धोवन। अल्लाह अकबर, जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन करीब नहीं कि उसको निगल सके, और उसको मौत हर तरफ से आती भी दिखेगी मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे उसके लिए एक सख्त अजाब इसकी जान का लागू रहेगा। कहते हैं ना, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, इनकी आमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया। कुछ लोग कहते हैं जो नॉन मुस्लिम नेकियां कर रहे हैं आज दुनिया में, उसका क्या होगा? उसका जवाब है इसमें, दुनिया में इनको अल्लाह उसका बदला दे रहा है, इज्जत, दौलत, बेहतरी, खूबसूरती, सब कुछ है, लेकिन आखिरत के लिए किया नहीं तो उस दिन के लिए कबूलियत क्यों होगी? वो अपने किए का कुछ फल न पा सकेंगे, यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमान की तखलीक को हक पर कायम किया, यानी एक मकसद दिया? वो चाहे तो तुम सबको ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। हम कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, वमा ज़ालिका अल्लाह भी अजीज, अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं। अब क्यामत का दिन जरा सोचिएगा, बहुत स्ट्रांग आयते हैं वल्लाही, एक लफ्ज़ भी ना बोलूँ ना तो तर्जमा भी दिल खोलने के लिए काफी है। वह बरज़ुलिल्लाहि जमीया, और जब ये सब लोग इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमजोर थे, वो इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, यानी ट्रेंड सेटर्स तुम थे, हम तो आंखें बंद करके तुम्हारे ट्रेंड्स लेते थे, अब क्या तुम अल्लाह के हिसाब से हमको बचाने के लिए कुछ कर सकते हो? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुमको दिखा देते, अब तो यकसा है हम ख्वाह जज़ा फ़ज़ा करें या सबर, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। अब जरा तसव्वुर में लाइए क़यामत का मैदान, और शैतान एक तकरीर करने लगा है, सुनिएगा। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे। हैं, शैतान जी क्या कह रहे, सच बोल रहा है, और मैंने जितने वादे किए थे इनमें से एक भी पूरा नहीं किया। आपका कोई प्यारा आपको कह दे जो वादे कर रही हूँ पूरे नहीं करूंगी, तो गुस्सा आएगा ना, शैतान वहां जाके बताएगा मैंने तो वादे पूरे नहीं करने थे, और सच्ची बात है मेरा तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो था भी नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं कि अपने रास्ते की तरह तुम्हें दावत दी। हाँ, तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, यानी आई जस्ट इनवाइट यू, आई गेव यू इनविटेशन लेटर, आई डिडंट फोर्स यू। शैतान क़यामत के दिन कहेगा, मैंने मजबूर तो नहीं किया था, पर तुम तो पहले ही तैयार थे गुनाह की दावत पे लब्बैक कहने के लिए, नेकी की दावत पे सोचते थे, देखते हैं, लेट मी थिंक, लेट सी, और मेरी दावत का कार फॉरम पकड़ते थे, एक और कार्ड नहीं है, किसी और को भी दे दूं, मेरी दोस्त का भी ये फेवरेट सिंगर है, मैं उसको भी साथ ले आऊं, तुम्हारा तो ये हाल था। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता और ना तुम मेरी, इससे पहले तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा। ये कौन सी शराकत है, इसको नोट कीजिएगा, जल्दी में रह ना जाए हुक्म में। शैतान को सजदा कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म छोड़ के जब हम शैतान का मानते हैं ना, तो शैतान को शरीक बना लेते हैं अल्लाह का, और मैं इससे बरी उज़िमा हूँ। अल्लाह अकबर, इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और ज़ालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। इसके बरक्स उदखिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, इसके खिलाफ वो लोग जो दुनिया में ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें नहरें बहती होंगी, वहां वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे। सोचिए लफ्ज़ हमेशा को, ये वक्त गुजर जाएगा, तकलीफ, थकन, बीमारी, परेशानी, वहां जाकर चैन ना आए तो क्या बनेगा? और वह इनके इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो? क्या देखना है, गौर करो कि अल्लाह ने एक मिसाल दी है, ये है वो आयत जिसको आप इंशाल्लाह अलग से भी सुनेंगे, کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی زمین میں جڑیں گہری جمی ہوئی اور شاخیں آسمان تک پہنچ چکی، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. کیا پتہ چلا مومن ایک درخت کی طرح. اب دیکھیں درخت سایہ دیتا ہے نا، آکسیجن دیتا ہے، کاربن لیتا ہے، دکھی آنکھوں دکھی دلوں کے لیے ایک سکون کا زمین ذریعہ ہوتا ہے. مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کی برائی کو دور کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ درخت کو پر پھل ہوتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، مومن میں خیر ہوتی ہے، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے دے لو مجھے کیا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال اس سے اپوزٹ ہے بالکل. کا شجرت خبیصہ، ایک بدزاد درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اوپر اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. کبھی آپ نے اندرائن کا درخت دیکھا؟ اس کی طرف اشارہ ہے، اوپر بہت پھیلتا ہے لیکن جڑ نہیں ہوتی، ایک جڑ کاٹ دے سب خشک ہو گیا. یعنی کفر ایسے ہی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. قبر کی بات ہے اس میں، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک ثابت قول کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوطی یا ثبات دیتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر پاؤں جم جاتے ہیں، مشکلات میں نہیں ٹلتا، اور اللہ ظالموں کو بھٹکاتا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جو وہ چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں نا تو دل ڈر جاتا ہے. یہ آیت بہت خوبصورت طرح سے اس کو واضح کرتی ہے. اگر آپ اس کی تفسیر سنیں، کیسے منکر نکیر کے آنے کے وقت بندے کا دل جم جاتا ہے کلمے کی وجہ سے، اور جو کافر ہیں وہ ڈرتا ہے. لا دری لا دری، حدیث میں آتا ہے کافر منکر نکیر کو آگتا دے کر اور من ربو کا ما دینو کا مر رسولو کا کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ لا دری، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو. صرف لفظ اللہ اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، محمد کا نام نہیں آئے گا، اسلام کا لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ زندگی میں جو ثابت قدم نہیں تھا. بلکہ ایک روایت میں تو وہ کہتا ہے کاش میں کچھ پڑھتا اور لکھتا اور تمہارے ان سوالوں کا جواب دیتا. اللہ تعالیٰ میں وہ ہم ثابت قدم کر دے. کیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، کس نے پائی؟ آج میں نے اور آپ نے پائی ہے، 13واں پارہ پورا کر رہے ہیں. اسلام کی نعمت پائی، نبی کے امتی ہونے کی نعمت پائی، اور اسے کفرانِ نعمت سے بدل دیا، ناشکری کر دی، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ میں جانا ہے. اللہ ہمیں بچائے. اب سورت کے خاتمے کی طرف آیتیں آتی ہیں. اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہو نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خیر کی راہ میں خرچ کریں. بار بار ہر پارے کے اندر کوئی نہ کوئی خرچ کی بات آتی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی، بہت ہی اچھی لگی، پہلی دفعہ پڑھی، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. صدقہ دیتے ہیں نا تمہاری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کوئی ایک دو چار پانچ کی دعا کر لیں کہ باکس میں ڈال جائیں، تاکہ آپ کو مجھے شاید کسی آنے والے صدمے اور فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے، قبل اس کے کہ وہ دینا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی. اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا. فخرت بھی من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے تم کو رزق عطا کیا، طرح طرح کے پھل دیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں. ہائی لائٹ کریے گا، ہم تو بریک چاہتے ہیں نا، ہم تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو تھکتے بھی نہیں، وہ تو مسلسل چلتے ہیں. اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ تم کو دیا جو تم نے مانگا. بڑا دل چاہ رہا ہے اس آیت پہ غور کرواؤں. اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُكُمْ، تم نے جو مانگا ملا. سچ ہے کہ نہیں؟ جو مانگتے مل نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر والا بنا دے. اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنے لگو تو نہیں کر سکتے. دیکھیے نعمتیں نہیں، ایک نعمت صرف سانس کا نعمت، سانس کی نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے. میدے جسم کے جتنے آرگنز ہیں نا، سٹمک اور اسی طرح سے لنگز، برین، ایک ایک کو نعمت سمجھیں تو ایک کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. حقیقت ایک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے. اب دعاؤں سے بھرا ہوا آخری رکوع، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. ہم بھی دعا کریں اپنے ملکوں کے لیے، اللہ امن دے دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچا. परवरदिगार इन बुतों ने बहुत सारों को गुमराही में डाला, मुमकिन है मेरी औलाद को भी गुमराह कर दे। लिहाजा इनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और मेरे खिलाफ जो तरीके अख्तियार करे यकीनन तू दरगुजर करने वाला मेहरबान है। परवरदिगार मैंने एक बेआब हो गया वादी में, यानी जहां ना पानी है ना सब्जा। गैरी जी जर निंद बैतिकल मुहर्रम, इसको सुनते हम भी सोचे हमने दीन के लिए आज तक क्या कुर्बानी दी है, हमें थोड़ा सा बैठना बोलना ही मुश्किल है। अल्लाह कहते हैं देखो इब्राहिम ने अपनी औलाद के एक हिस्से को मेरे घर छोड़ दिया। कैसे? इशारा है वही हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा को छोड़ने वाला। अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया, परवरदिगार ने मैंने इसलिए किया कि ये लोग नमाज कायम करें, यानी अपना घर वीरान कर लिया तेरा घर आबाद करने के लिए। अल्लाह हमसे भी ये खिदमत ले ले, हमारे भी घर तू आबाद करना, हमें तेरे घर आबाद करने की फिक्र लगा दे। पस्त लोगों के दिलों को इनका शौक दे दे और इनको खाने के फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, न जमीन में न आसमानों में। शुक्र है इस जात का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह कि मेरा रब जरूर दुआओं को सुनता है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये दुआ आप भी अपने बच्चों की नीयत रख करके और अपने माँ बाप के लिए मांगिएगा। रब्बी जालनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। दुआ करें बच्चों की नमाजों के लिए। फतकब्बल दुआ, और ऐ मेरे रब दुआओं को कबूल कर ले। परवरदिगार मुझे और मेरे वालदैन को और सब ईमान लाने वालों को इस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। आमीन। दुआ करें अपनों के लिए। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना पाओ, अब जो जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो इनको टाल रहा है, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा। अब जरा क्यामत का मंजर आंखों से देखिएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कब आंखें फटती हैं? खौफ और हैरत से। सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जा रहे हैं। खौफ का कोई वक्त याद कीजिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से तुम इन्हें डराओ जबकि अजाब इनको आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत तो दे दो, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे। अब क्या फायदा, वक्त तो खत्म हो गया। और रसूलों की पैरवी करेंगे मगर इनको साफ साफ जवाब दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे हम पर तो कभी जवाल आना ही कोई नहीं। आज भी लोग यही सोचते हैं हमने कहा मरना है, हमने बूढ़े नहीं होना। हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह चुके हो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने इनसे क्या सलूक किया, और इनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा चुके। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी मगर इनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगर इनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ इनसे टल जाए। अल्लाह हमें ऐसी चालों से बचा दे। पस नबी हरगिज़ ये गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि आसमान और जमीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे। इतना खूबसूरत आसमान नहीं रहेगा और इतनी सरसब्ज जमीन नहीं रहेगी। जब यहाँ से निकलते हैं तो आपको सब्जा देख के प्यार आता है अल्लाह पे, ऐसे लगता है अल्लाह ने हमें बीच में रख के ना एक प्याली में चारों तरफ सब्ज बाग रख दिए। जो वॉक कर रहे होते हैं लोग इतने प्यारे लगते हैं, मैं आते जाते देखती हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनका आना कबूल कर ले। अल्लाह अपने रास्तों पे हमें ले आता है और इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इनको उस दिन से जबकि आसमान और जमीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे, और सब के सब अल्लाह वाहिदे कहार के सामने बेनकाब होंगे। अब आगे जानना के बड़े जबरदस्त मंजर है। वतरल मुजरिमीन यौमइज़ मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद, और उस रोज तुम मुजरमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने होंगे। क्या होती है तारकोल? सड़कों पे लुक डालते हैं ना, जरा सी चिपक जाए ना तो वहीं से जल जाए इंसान की स्किन। और आग के शोले इनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। देखिए कुरान है, तर्जुमा है, मेरी बात नहीं है, सच है, मानिए ये सच है। ये ना के कंट्रोवर्सी, ये नहीं एक्चुअली एक्चुअली नहीं, इट विल हैपन, उस मालिक की बात है, मुझे आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो आज फिक्र कर ले हम सब अपने और दूसरों के लिए कि आग का ईंधन न बने। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को इसके किए का बदला दे और अल्लाह को हिसाब लेते हुए कुछ देर नहीं लगती। और आखिरी आयत जो मुझे आपको दावत देती है, कल फिर अपने साथ औरों को लेकर आए। कुरान की बात है, हाज़ बलाग़ुल लिन्नास, ये एक पैगाम है, बलाग पहुंचाओ, वली युनज़रू बिही, इसलिए भेजा गया कि इनको इसके जरिए से खबरदार किया जाए, पूरा नहीं करना, खबरदार करना है। वली आलम अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, और वो ये जान ले कि हकीकत में अल्लाह बस एक है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाए। ये किताब सब की अमानत है, सब तक ये अमानत पहुंचानी है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये जितना एक्स्ट्रा वक्त होता है ये अल्लाह आपके लिए सबका करे। असल में आजकल ये जो पारे चल रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज तक ने सवा पारा किया, पिछला भी था। अब अगर सूरह यूसुफ आपको डिटेल से ना पढ़ाती तो आपको मज़ा भी नहीं आना था। तो लेकिन ये कि हर पारा ऐसा नहीं है, अगले पारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ही होंगे। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है अल्लाह आपके लिए सदका करे, जो जल्दी में वो खामोशी से निकल जाए। और जल्दी किस बात की है, बड़ी खूबसूरत तिलावत है जो हम इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं। थोड़ी सी लाइट कम कर दें, निकलना चाहे जा सकते हैं लेकिन बातें ना कीजिए जी। गेट मीटिंग भी तो होती है ना जी। कोई भी चला दे, आपको दावत दूंगी कि इस पूरी सूरत इब्राहिम इसको, क्योंकि हमने एंड में डिटेल से नहीं कर सके ना, तो किसी भी तरह लिख लें बस अपने कामों में कि मैंने इसकी तफसीर सुननी है। एक एक आयत इसमें ऐसी है कि जिसके ऊपर वाकई गौर व फिक्र किया जा सकता है जी। फिर
قل لعبادي
अगर वक्त हो तो हम यहाँ बैठ के पूरा कुरान सुने कर लें बात इनसे पाक रातों में कुरान सुनने की एक माहौल का असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अल्लाह ताला आसानी करे। कल मिलते हैं अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा साहब जी, इतनी खूबसूरत सूरतें, इतनी खूबसूरत ज्ञान। कुछ बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा, दिल चाहता है कि इसको ही देखते जाए और सुनते जाए कि रब क्या कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का तआला का एहसान है कि वो हमारा हमें घर बैठे अपना पैगाम पहुँचा रहा है ना, घर बैठे इतने खूबसूरत माहौल में। और वैसे भी रमज़ान और वैसे भी कुरान, आप सोचें किस तरह दिल पर असर कर रहे हैं ना, है ना। और इतनी खूबसूरत सूरतें, क्योंकि माशाल्लाह टाइम आगे बहुत हो गया, सिर्फ एक एक बात में एक एक सूरत से आपसे पूछूंगी कि सूरत यूसुफ से आपने क्या सीखा, क्या लिया, हमें क्या करना है, बस इतनी बात। फिर मैं दूसरी, क्योंकि बातें तो इतनी ज्यादा है और साजा ने जितनी बताई है बहुत कम बताई है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। अब यकीन माने जब आप किसी तफसीर सुनते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये क्या चीज है। तो जरूर जिसको भी मौका मिले सबीरुल जन्ना के जो कोर्सेज हैं उनमें से जाके इनको सुने तफसीर, और आप अगर बकायदा स्टूडेंट बनेंगे तो यू विल एंजॉय अलॉट रियली। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन बनना है, एक ही बात। मोहसिन, मोहसिन होता कौन है एक्चुअली? मोहसिन कौन होता है? मोहसिन विका में मुस्लिम तो कहते ना, पैदाइशी मुसलमान तो है ही ना, कहते भी हैं कुरान से लोगों को जोड़ना। जी जो अल्लाह के एहसान को मानता है, ठीक है ना, और हर बात पे अल्लाह का एहसान याद रखता है। आपको पता है कि हजरत ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, भाइयों के एटीट्यूड के जवाब में उनका एटीट्यूड क्या था, यानी कि अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो उनका एहसान के साथ हर चीज में वो अल्लाह ताला का एहसान याद रखते हैं। जब आपको पता है कि बाप माँ बाप की इज्जत करते हैं वो भी एहसान के दर्जे में करते हैं, भाइयों के भाइयों ने उन्हें जिस हालत में, इवन भाई उनके पास आ गए सजदा कर रहे हैं उस हालत में उनको याद दहानी नहीं कराई, उनको क्या कहते हैं, शैतान ने वसवसा डाला था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ये कैद खाने से निकले तो क्या कहते हैं, अल्लाह का एहसान है। फिर तरक्की की मंजिलें तय करते करते जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो कहते हैं मेरी कोई कमाल ही नहीं है, सब अल्लाह का एहसान है। तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहसिन बनने की तौफीक दे, क्योंकि जो मोहसिन बनता है वही अल्लाह के करीब होता है। और कितनी खूबसूरत दुआ है जो हम सबको भी मांगनी चाहिए, अल्लाह फातिर समावाती वल अर्ध अंत वलीशी फिर दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिम वल्हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह ताला हम सबको सालिह में शामिल कर दे, आमीन। अच्छा जी इस पॉइंट में तो हमें, क्योंकि बातें बहुत है इसलिए मैं ज्यादा सो यूसुफ को नहीं करवाऊंगी, एक एक बात मैंने कहा। सो इब्राहिम में कौन सी बात आपको लगी? नहीं सूरत इब्राहिम से पहले सुरवाद है, सो रात में जो आपको अहम एक पॉइंट और जो आप लेके उठेंगे वो क्या है, एक पॉइंट सूरत रात का, क्योंकि इतनी खूबसूरत सूरतें हैं, इतना मैं इन सूरतों को पता है मुझे सामने पेंट होके चीजें आ जाती, पेंटिंग ऑब्वियसली आपके भी होगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग मेरे सामने और मैं पिक्चर्स देख रही हूँ, आई कैन सी द पिक्चर्स। तो इतनी ज्यादा इसमें डिटेल में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मंजर कशी की है, खास तौर पर क्यामत की और आखिरत की तो बहुत ही ज्यादा की है। लेकिन इस वक्त रात की जो अहम बात है जो हमने लेके उठनी वो क्या है, कोई बताएगा? आय 28 है, चले तो आय 28 है, अल्लाह की ना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, हमने किस तरफ रुजू करना है? कुरान की तरफ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु ने क्या कहा खुद में, क्या कि इत्मीनान किसके में, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह। इसको हाईलाइट कर ले, कभी भी कोई मसला पेश आए, कोई प्रॉब्लम समझ ना आए, कुरान खुले पढ़ने बैठ जाए तो इनशाला आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको सुकून आए, क्योंकि अल्लाह की बात हक और सच है, ठीक है ना। फिर इसी में एक 39 आयत में जो अल्लाह सुब्हानहु कहता है यमुखुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, और वही बताता है यानी तकदीर के फैसले भी वो चेंज कर सकता है अगर हम दुआ करें। दो बातें कितनी अहम थी, और हमें ये महीना दुआओं का महीना है हु? और दूसरी बात है कि कुरान का महीना है, और दोनों चीजें हम साथ साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा, राइट। सूरत इब्राहिम, सूरत इब्राहिम में हमने कौन सी बात लेके उठाए, सूरत इब्राहिम की भी एक बात लेके उठ रहे हैं ना, बहुत बहुत ही प्यारी है और सबको पता भी, अभी हमने पढ़ी है। आयत 7, चलिए आयत 7 में क्या है, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला सुब्हानहु तआला कहते हैं मेरी तुम एक नेमत भी गिनना चाहो ना तो गिन नहीं सकते, हम अल्लाह की नियमतों का शुमार कर ही नहीं सकते। हम किन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास हैं उनको हम देखते नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमें अल्लाह ताला ने ज्यादा दी है दूसरे को नहीं दी, और दूसरे को दी है तीसरे को नहीं दी, अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखा और हर एक को दी है, हर एक को दी है। कोई कहे ना मुझे कुछ नहीं तो उसके अपने अजाय उसका शुक्र अदा करने के लिए काफी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना और मिलेगा। या दूसरे लफ्जों में हम यूं कहें कि हमारे पास जितनी नेमतें हैं ना उन नेमतों की हिफाजत किस तरह होगी? शुक्र से, वरना जो ऑलरेडी हमारे पास नेमते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ये अल्लाह ताला। फिर दूसरी अल्लाह सुब्हान अल्लाह इसमें हजरत मूसा ने अगली आयत 8 में क्या कहते हैं ना कि अगर तुम और तमाम जमीन वाले भी अल्लाह की नाशुक्री करें, अल्लाह को हमारे शुक्र की जरूरत है? फइन्ना अल्लाह लगनीयुन हमीद, अल्लाह को हमारे शुक्र की जरूरत नहीं, ये हमें जरूरत है, उसने हमें इतना कुछ दिया है, हम फिर भी अंधे बहरे बने। सबसे बड़ी बात देखे कुरान की दौलत, सबसे बड़ी बात आपको घरों में बैठे कुरान पहुंच रहा है, इससे बढ़कर कौन शुक्र अदा कर सकता है? सोचिए तो सही, दिल भर आता है कि या अल्लाह, वाकई आंखों से आंसू बह पड़ते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं घर में बैठे और मुझे साजा के पढ़ने की तौफीक हो रही है। ये भी इससे, क्योंकि शुक्र करेंगे तो अल्लाह इस इल्म को आपके अमल का हिस्सा भी बनाएगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं इसमें हम अपने अमल के लिए भी बातें लें और हम उसका अमल भी कर सकें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारी ना तदब्बर की आंख खोल दे, हमें तदब्बर करना आ जाए, हमें इन आयतों को साथ देखना आ जाए, तो इंशाल्लाह इसके अंदर खजाने जो है ना बहुत ज्यादा गहरे खजाने भरे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उन्हें निकालने वाला बनाए, ठीक है ना? तो जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा, क्योंकि टाइम आगे बहुत हो गया। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस मैसेज को हमारी औलादों और हमारे आगे लोगों तक भी पहुंचाए। रब्बी यौतीनी या नशकुर नियमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वन आमला सालिहन तरदाहु वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालदेन पर अता की, क्या की? हमें मुसलमान बना दिया, देखो हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दी, और ये क्या हम ऐसा नेक अमल करें जिससे तू राजी हो जाए, और अल्लाह मेरी औलाद की भी सलाह फरमा दे, और बेशक मैं तेरी तरफ तौबा करती हूँ और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। कितनी बड़ी बात है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, क्या अल्लाह ने खुद शुक्र अदा करना हमें बता दिया कि कैसे अदा करें। अल्लाह मस्जिद ना वला तनकुसना व करिमना वला तुहिन्ना व आतीना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना व अर्दीना वर्द अना अन्ना। ऐ अल्लाह हमें ज्यादा दे और हमें कम ना कर, अल्लाह हमें इज्जत दे हमें जलील ना कर, ऐ अल्लाह हमें अता कर और महरूम ना कर, हमें दूसरों पर मुकदम कर हम पर किसी को मुकदम ना कर, और सबसे आखिर में अल्लाह हमसे हमें राजी कर ले, हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे राजी हो जा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। चलें सिस्टर, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ये टाइम आपका सत्ता बनाएगा, और वैसे भी रमजान में हर टाइम हमारे लिए मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बहुत मल्टीप्लाई होगा। जिंदगी रही, कल इंशाल्लाह फिर नए पारे के साथ मिलेंगे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أنت السميع العليم ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن